نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دور قرآن 2020 اس میں ہم آج کریں گے پارہ نمبر 14 سورۃ ہجر کی آیت نمبر 2 سے یہ پارہ شروع ہوگا پھر اس میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ نحل کو اینڈ تک کریں گے یعنی دو بہت ہی خوبصورت صورتوں پہ مبنی یہ پارہ آج ہم اس کو جس ٹاپک کے اندر لیں گے وہ ہے ناشکری حقیقت کیا ہے کہ ناشکری دکھی رہنے کا نام ہے قرآن پاک کا آغاز ہوتا ہے الحمد للہ رب العالمین سے اللہ تعالیٰ جو چیز ہم سے چاہتے ہیں وہ شکر ہے کیونکہ شکر سے ہی تو پھر شرک کا خاتمہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدر نہ کرنے والا ہی تو منکر اور کافر ہے اس کے برعکس اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہے شرک ہے اگر آپ یہ پوچھ لیجئے کہ ناشکری مگر کس کی تو سب سے پہلے تو لوگ اللہ کی ناشکری کرتے ہیں وما قدر اللہ حق قدری اور اوباما سے یہ پارہ شروع ہو رہا ہے اسی سے ہی آپ دیکھیں گے کیسے لوگ کل قیامت کے دن کس حسرت کا شکار ہوں گے کہ جنہوں نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی ناشکری اس وقت فتنہ بن جاتی ہے جب انسان کو اس کی عادت ہو جاتی ہے انسان جب ایک بار ناشکری کا رویہ اختیار کر لیتا ہے تو آپ اپنی زبان میں کہہ لیجئے کہ پھر اس کو رونے کی عادت پڑ جاتی ہے افسوس کی بات ہے کہ آپ اس دنیا میں رہتے ہوئے انسانوں میں سے اور خاص طور پہ وہ بھی پھر ہمارے اپنے ہی ملکوں میں اپنے ہی ارد گرد کے لوگوں میں سے اکثر کو رونے کی عادت پڑ چکی ہے شاید مزدور اتنی بڑی آہ نہ بھرے جتنا 15 سے 20 لاکھ روپے مہینے میں کمانے والا ہو آپ بڑے آرام سے کسی سے بھی پوچھئے راہ جاتے سناؤ بھائی کیا حال ہے شکر ایسا انداز کہ جس کے اندر ناشکری بھری ہو ناشکریوں میں ڈوبے ہوئے شکر شکر نہیں ہوتے اور حقیقت یہ کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے تو آپ کبھی خوش نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ کے دیے پہ راضی رہیں اور جب اللہ تعالیٰ کی مرضی اور بندے کی مرضی الگ ہوتی ہے نا تو اس کا نام غم ہے یہی ناشکری ہے آپ کو اللہ تعالیٰ کی کوئی چیز پسند ہی نہیں آ رہی جو اس نے آپ کو دیا آپ اس سے اوپر دیکھ رہے ہیں گھر آپ کو اپنا اچھا نہیں لگتا شوہر آپ کے کچھ زیادہ اچھے نہ نکلے جاب بھی جو کرتے ہیں وہ بھی ایسی ہے تنہا پہ گزارا نہیں پھر کیوں کریں کیا کریں مجبوری ہے کرنا کیا ہے یعنی نہ چھوڑنا اور نہ رونا چھوڑنا تو حقیقت یہ ہے کہ جب بندے کو رونے کی عادت پڑ جاتی ہے تو انسان ناشکرا بن جاتا ہے آپ کڑوی چائے پئیں گے آپ کا حلق چھلے گا اسی کے اندر ایک چمچ شکر کی ڈال لیجئے تو چائے میٹھی ہوگی تو ایک جملہ لکھ لیجئے کہ جس طرح شکر یا شوگر یا چینی کڑوی چائے کو میٹھا کر دیتی ہے اسی طرح ناشکری زندگی میں شکر کو ڈال دیجئے آپ کی زندگی میٹھی ہو جائے گی شکر گزار انسان ایک نارمل انسان ہوتا ہے اس کے برعکس ناشکرا انسان ایک اب نارمل انسان ہے ہو سکتا ہے ہم اب نارمل اس کو کہیں کہ جو دیوانوں والی حرکتیں کرے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ناشکرا پن بھی تو ایسا ہے اس کی تو اندر کی بھی آنکھ بند ہے اس کی تو باہر کی بھی بند ہے اور جب آپ خاص طور پہ پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح کی ناشکریوں میں آتے ہیں تو بس کہہ دیجئے کہ آپ خود اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ اب ہمارے ساتھ جو کر پچھلے ہی بارے میں ہم نے سورۃ ابراہیم میں بڑی خوبصورت آیت دیکھی وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ شکر کرو گے تو نعمتیں زیادہ ملے گی وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ نوٹ کیجئے کہ وہاں ناشکری کو کفر کہا گیا ہے ناشکری کفر کیسے ہے کہ حقیقت میں کہ اس کے بعد زندگی گھٹن کا شکار ہو جاتی ہے لوگوں کا برا ہی دیکھنا معاشرے میں برے حکمران برے ہیں سارے کھا گئے سارے پی گئے اب اس ملک میں خیر نہیں اب مسلمان بیکار ہو گئے نہیں تو کیا کرنا ہے جو مل گیا اس پہ راضی رہنا سیکھیے جو ہے اس پر خوش رہیں جو بدلہ نہیں جا سکتا اس کو قبول کیجئے اور اللہ کی مرضی کو اپنی مرضی بنا لیجئے گلہ نہیں کرنا اس کی دی ہوئی نعمتوں کو ہم جب حق سمجھ لیتے ہیں نا تو پھر ہم دکھی ہونا شروع کر دیتے ہیں تو ناشکرا انسان کون ہے جو نعمتوں کو نعمت نہیں بلکہ حق سمجھ کر لیتا ہے اور یاد رکھیے کہ ناشکری اللہ کی پکڑ کا بھی سبب بنتی ہے نعمت کا ملنا آزمائش ہے کہ تم نے شکر ادا کیا کہ نہ کیا اور انسان کے لالچ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا کیونکہ اس میں لالچ کے سوراخ ہوتے ہیں جس بندے کو اللہ سے راضی رہنا آ گیا وہ کبھی ناشکری نہیں کرے گا ایک غریب شاید ہی ناشکری کرتا ہو وہ اگر 200-300 روپے کما کے آ جاتا ہے تو کہتا ہے آج بڑی اچھی دہاڑی لگ گئی और हो सकता है 2 लाख कमाने वाला भी कहे कि देखो 5 लाख का सौदा हाथ से निकल गया। तो शुक्र नेमते हसूल है और नाशुक्री हसूले जहमत है। अपने अंदर ये झांक कर देखिए, आप देखिए कि बीमारी का पता ना लगे ना तो बहुत खतरनाक होती है। नाशुक्री की बीमारी इतनी खतरनाक है कि हम हर वक्त दूसरों को देखते रहते हैं और अपने उन रवैयों को नहीं देखते। तो जब आपको पता लग जाए तो फिर इसकी फिक्र कीजिए। थोड़ा जो बरकत के साथ मिले वो बहुत बेहतर है ज्यादा बेबरकती से, वरना नाशुक्रापन तो उस मक्खी का भी है कि जिसको आंखें तो शायद 86 मिली लेकिन बैठती फिर गंदगी पे है। तो कुछ लोगों के पास नेगेटिविटी होती है, नाशुक्री को आप नेगेटिविटी भी लिख सकते हैं। हर वक्त ही गलत चीज पे रहना, और जब ये होती है तो फिर हम अल्लाह के साथ शिर्क करने लगते हैं। इस बारे में शिर्क की बहुत सी बातें आएंगी और बिल्कुल सूरत नाहल में एंड पे हम जाकर देखेंगे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खूबी शाकिरल्लियन उमीही। तो इंशाल्लाह इस पूरे पारे में से हम नाशुक्री और शुक्र को टच करते रहेंगे और शुक्र क्या होता है इसको दोहराएंगे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह निसफ के करीब हो रहा है कुरान पाक। तो ऐसा ना हो कि सूरत फातिहा में पढ़ा और सीखा व सबक अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के सारा शुक्र अल्लाह का हम उसको भूल ना गए हों। तो इंशाल्लाह ताला आज हम इसके ऊपर गौर करेंगे। फिर आप देखिए कि जब अल्लाह ताला के साथ इंसान ना शुक्रापन करता है ना तो उससे शिर्क पैदा होता है। इसके बाद अमूमन बींग अ मुस्लिम, और ये पहला जो शिर्क है ना, यानी ये जो पहली ना शुक्रिया, ये हर इंसान कर सकता है। या यूहन्नास, जिसको अल्लाह ने बड़े प्यार से पैदा किया, जिसको इज्जत दी, जिसको बहुत ज्यादा खूबियां देकर पैदा किया, लेकिन इसके बाद फिर मुसलमानों की भी कुछ ना शुक्रिया है। और वो क्या है, सबसे पहले लोग मुसलमान होने के बाद जिस हस्ती की ना शुक्री करते हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। क्या कुछ उन्होंने किया, कैसे उन्होंने जिंदगी हमारे लिए लगाई, ये आपको कुछ अंदाजा तो कुरान पाक से भी होता ही जा रहा होगा। और इंशाल्लाह रमजान के बाद आप सीरा कोर्स करेंगे तो आप देखेंगे कि अल्लाह के नबी ने ये दीन कितनी मुश्किलों से हमारे तक रखा। आज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाशुक्री करने के नतीजे आपको चारों तरफ फैली हुई बिदात की सूरत में दिखेंगे। आज सुबह मुझे किसी एक ने एक सवाल पूछा, और ये आज शायद 11 और 12 रोजे के इन बिटवीन डे है ना, किसी मुल्क में आज 11वां किसी में 12वां, तो कुछ इसी किस्म का सवाल किसी ने पूछा हुआ था। बहुत ही मासूम और भोली बहन है, अल्लाह ताला उनको जजाय खैर दे, और मैं उन्हीं के खातिर आप सबको इसका जवाब दे दूँ कि उसमें लिखा था कि रमज़ान की 11 और 12 के बीच में फुलाम वक्त पे शायद 12 नफिल पढ़िए, हर नफिल में ये कीजिए तो रिश्ते हो जाएंगे। अब मैं पूरी डिटेल नहीं बताती, कहीं आप भी करने ना लग जाएं। ये रसूल की नाशुक्री है। 23 साल जिस शख्स ने आपके लिए रात दिन तज कर दिया, क़यामुल लैल किया, रातों को रो रो के दुआएं की उम्मत के लिए, और दिन को कौम फानज़िर का हक अदा करने वाली हस्ती, जिसने हिजरत भी की, जिसने कुर्बानियां भी दीं, जिसने जिहाद भी किए, जिसकी ज़ाती ज़िंदगी तो कह लीजिए कि इस इज्तमाही काम के अंदर आ गई कि जो दीन का तकाजा होता वही उनकी ज़ात का तकाजा बनता, आज हमने वही हक किसी और को दे दिया। मुझे पूछा किसी ने कि इसका क्या जवाब दूं, मैंने कहा उसका सिर्फ एक जुमले में जवाब पूछिए, इसका रेफरेंस क्या है। दुनिया में नीचे किसी इमाम काबा का ही नाम क्यों ना लिखा हो, लेकिन अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, आपकी बात, कुरान की आयत या नबी की हदीस ना हो तो वो याद रखे कि वो फिर आपके मेरे लिए तो हुज्जत नहीं, ये तो सिर्फ एक रिजेक्टेड है। कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। इस बारे में हम देखेंगे इंशाल्लाह खास तौर पर सूरत नहल में दोबारा कि मुशरिकीने मक्का की बहुत सारी बिदात का जिक्र आएगा। तो गोया कि फिर ये रसूल की न कदरी वाली बात है न शुक्री वाली बात है। आज से एक नीयत कर लीजिए, ज्यादा ना करूं कोई बात नहीं, अल्लाह नहीं पूछेगा, सही करूंगी। जब तक मुझे किसी खाने की चीज के ऊपर इंग्रेडिएंट्स यकीन ना आ जाए मैं नहीं खाती ना, दीन के साथ भी मैंने ऐसे ही करना है। अफसोस की बात है कि हम लोग मजहब के ठेकेदार बन जाते हैं और लोग फिर वही बात है जो सूरह तौबा में पढ़ चुके कि इत्तखज़ु अहबारहुम रुहबानहुम, कि उन्होंने तो अपने रहबान और अहबार को ही खुदाई के दर्जे पे रखा, तो दलील का दीन है, पीछे भी हम पढ़ चुके। तो बहरहाल इसके बाद देखिए कि फिर इसके बाद हम जो एक और नाशुक्री करते हैं ना वो आखरत की करते हैं। अल्लाह ताला आपको एक के बदले में 70,000 देने वाला है, आप आज एक दीजिए कल 70,000 और उससे भी कम ज्यादा। एक बाली जमीन में डालते हैं 100 और 700 तो दुनिया में दिखती है, यानी फमैयाम अलमिसकाल अज़र्रतिन खैरिन यरा। और आज हम उस आखरत को छोड़कर क्या हो गया नतीजा, दुनिया हवासों पे छाई हुई है, यहाँ के प्लस माइनस में ही रहते हैं, जहाँ की जमा तफरीक पे एक एक आने पाई का हिसाब करते हैं। बाज़ दफ़ा लोग सगे खून के रिश्तों में, शौहर बीवी में हर वक्त दुनिया छाई रहती है। तो याद रखिए आपकी मेरी नेकियां आखरत में जाकर मोल पा जाए, कदर हो जाए, ये आपके मेरे लिए इस दुनिया में सब कुछ मिल जाने से भी बेहतर है। ساری دنیا آپ کی میری اس چیز کی تعریف کرنے لگے، لیکن اگر وہاں اللہ نے اس کو نہ قبول کیا تو پھر کیا ہوگا کہ ربنا تقبل منا، یعنی اصل چیز قابلیت نہیں قبولیت ہے. اور آپ یہاں خود سے بھی سوچئے گا، اس بارے میں یہ پوائنٹ بھی بہت سارا آئے گا. میں اب سارے ریفرنس نہیں دینا چاہتی کیونکہ بات بوجھل ہوتی ہے، لیکن یقین کیجیے اتنا خوبصورت پارا ہے آج آپ کو ایسے لگے گا پڑھنے سننے کے بعد کہ میں نا شکرا ہوں، میرے سے زیادہ نہیں. اور شکر کا جذبہ بھی پیدا ہوگا. اتنی قیمتی زندگی، اتنی پیاری زندگی کہ جس کے لیے اللہ نے کیا کیا پلان کیے، ایک قطرے سے لے کر ایک انسان کو ایک خوبصورت بچے کی شکل میں ڈھال کے دنیا میں بھیجا، ماں نے پیٹ میں رکھا، دردوں کے ساتھ سہا، 2 سال دودھ پلایا، 8-10 سال تک ماں ایسے گھل جاتی ہیں باپوں سمیت، کیسے بچوں کی تربیت کرتے ہیں باپ، رزق حلال کے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں. کیا میرے ماں باپ، لکھے اپنے ماں باپ کے لیے، کیونکہ ہم پھر اس کے بعد جو ناقدری کرتے ہیں نا وہ ماں باپ کی کرتے ہیں. تیسری ناقدری انسان ماں باپ کی کرتا ہے. اور آپ ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو دیکھیں گے آگے بھی جا کر، کیا میرے ماں باپ نے مجھے اس لیے پیدا کیا کہ میں صرف اس دنیا میں کھپ تپ کے چلی جاؤں، اسی کی خوشیاں اسی کے غم. یقین کریں آپ کو شرم آئے گی اپنے اوپر. صرف دنیا کے لیے کھپنا یا دنیا کے غموں پہ رونا اور صرف دنیا کی خوشیوں کو پانے کا انتظار کرتے کرتے آخرت کو چھوڑ دینا، آج کل کتنے پیارے دن ہیں. اور مجھے ایک جملہ بولنے دیجئے، درد کے ساتھ بولوں گی، اس وقت یہ قرآن کی بہار، یہ قرآن کی بارش برس رہی ہے اور آپ سو رہے ہیں، اس سے بڑی ناشکری کیا ہے؟ تو اگلی چیز یاد رکھیں، انسان اس قرآن کی ناشکری کرتا ہے. جب آپ قرآن پاک کی ناقدری کرتے ہیں نا، تو اس کی جگہ پھر آپ کے ہاتھوں میں، کل کے دور میں تو وہ فکشن تھا، ناول اور ڈائجسٹوں کی صورت میں، آج سارا دن چٹ چٹ، یہی فون ہوگا، دیکھیے گا یہی کمپیوٹر ہوگا، ذرا جب آپ 4-6 گھنٹے اور سو کے اٹھ جائیں گے پھر. اس وقت اگر آپ اس دورے قرآن کو سننے کے لیے نہیں اٹھ پا رہے، جبکہ آپ کو پتا ہے، میں ان کی بات تو کر ہی نہیں رہی نا، کہ جو بےچاروں کو نہیں پتا یا جو نہیں ہے، ساری دنیا تھوڑی جانتی ہے کسی چیز کو، یا اس وقت کہیں بھی کسی کے پاس کوئی نیکی کا موقع ہے اور وہ نہیں سیکھ رہا، میں اس کی بات نہیں کر رہی، میں آپ اسٹوڈنٹس اور آپ کے جاننے والوں کی بات کرتی ہوں، کہ اس وقت اگر ایون آپ بھی کچھ اور کر رہے ہیں اور اس کی بدلے میں، تو میرا خیال ہے کہ اس قرآن کی ناقدری ہے. اور یاد رکھیں، جب قرآن پاک کی ناقدری ہوتی ہے نا، تو اس کے جگہ پھر دنیا کی چیزیں آنے لگتی ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ ناقدری جس کی انسان کرتا ہے وہ شوہر ہے. اللہ تعالیٰ نے شوہروں کو ایک بہت پیاری ڈھارس بنا کر رکھا ہے، بیوی کے لیے ایک بہت بڑا قلعہ ہے شوہر. شوہر والی عورت کی طرف کوئی نظر نہیں ڈال سکتا، سوچ نہیں سکتا، والمحصنات میں ہم پڑھ چکے. لیکن جب شوہر کی ناقدری کرتی ہے بیوی، تو فحش میں پڑتی ہے. آج جا کر دیکھیں شادی شدہ خواتین اور مرد کس طرح فحاشی میں مبتلا ہیں. بیوی اپنی گھر میں ہے تو نظریں کہیں اور ہیں، اور شوہر گھر میں اور نظریں کہیں اور ہیں، تو اس سے پھر فحاشی پھیلی، پھر آپ ایسی نیوڈیٹی میں چلے جاتے ہیں، گندگی ہے. سیم تھنگ بیوی کی بھی ناقدری ہے. اچھی پاک دامن کہہ لیجئے کہ ماسی سے لے کے دھوبن اور پھر اسی طرح سے کک والی جیسی بیوی، مرد اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں. اور جب کسی مرد کو اپنی بیوی کے اندر کوئی کشش نہ محسوس ہوئی، تو نتیجہ لواطت ہے. اس بارے میں آپ دیکھیں گے، یعنی لواطت سے بری کہہ لیجئے کہ ناقدری کوئی نہیں ہے اپوزٹ جینڈر کی، جس میں فطری طور پہ اللہ تعالیٰ نے کشش رکھی ہے. کل لڑکا لڑکی دوستی کے نام پہ معروف تھے یا بدنام تھے، آج لڑکا لڑکی کہتے چھوڑو اولڈ ڈیٹڈ، نہیں نہیں لڑکی لڑکی. آپ کے کلچر میں لوگ پڑھاتے ہیں، اتنی قسم کی فیملیز ہیں. یہ بات میں اپنی آنکھوں دیکھی آپ کو بتا سکتی ہوں. آپ لینگویج سیکھیے، آپ کو یہ چیزیں وہ سکھاتے ہیں. آپ اپنے بچوں کو جا کے دیکھیے، مجھے ایک ماں نے خود بتایا کہ جب بچہ ڈے کیئر میں گیا، تو اس کو سب یہ سکھایا جا رہا ہے کہ بیٹا فیملیز اتنی قسم کی ہوتی ہیں، اور میرے پاس اس کی دلیل بھی موجود ہے. ایک وہ فیملی ہوتی ہے جس میں ایک ماما اور ایک پاپا ہوتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ وہ دو نہیں ہوتے ہیں، بیبیز نہیں ہیں. پھر دوسری وہ ہوتی ہے جس میں ایک بچہ ہے، پھر تیسری وہ ہوتی ہے جس میں بہت سارے بچے ہیں، یعنی جو پاسبلٹیز آج بھی ممکن ہے. لیکن پھر وہ ایک فیملی آپ کو دکھاتے ہیں جس میں دو ماماہیں کھڑی ہیں، دو عورتیں، اور بس یہ جو ماما ماما فیملی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ لیزبینزم ہے. اور پھر آپ کو دکھائیں گے دو مرد کھڑے، کہتا ہے یہ بھی فیملی. واللہ ہی آج ہماری نسلوں کے سر پہ یہ فتنہ بلیک کی طرف ہلایا جا رہا ہے. آپ ان کی کتابیں کھول کر تو دیکھیے. اور پھر اسی طرح دو ماماؤں کے بیچ میں ایک بچہ بھی ہے، اس پہ تو بات کرنے کا دل نہیں کر رہا، ورنہ ایک ساتھی نے جو بات سنائی، ناممکن حد تک ناقابل یقین، لیکن یہ سچ ہے. کیونکہ ان کی شادی کو سیلیبریٹ بھی کیا گیا، کولیگس نے جا کر وہ شادی اٹینڈ کی، دو عورتوں کی شادی ہوئی، دونوں کو گفٹس دیے گئے، ایک مرد ہے تو ایک عورت ہے. کچھ عرصے کے بعد اب بچہ چاہیے، بچہ کہاں سے، وہ بچہ کیسے حاصل کیا گیا، لا حول ولا قوت الا بالله. سونے کا وقت نہیں ہے، رونے کا وقت ہے. جاگیے، جاگو اور جگاؤ. سو سو کے تو امت کا یہ حال ہو گیا. پھر اسی طرح سے دیکھیے، ایک اور ناقدری انسانی رشتوں میں جو کرتا ہے وہ اولاد کی کرتا ہے. آج کا ایک یہ بھی یوتھ کا پرابلم بن گیا، شادی کر لیے بھی بچے نہیں چاہیے. क्या खैरियत। हमारे कल्चर में आप देखिए, 3-4 माह के बाद पूछना शुरू हो जाते थे, कोई खुशखबरी है, कोई खुशखबरी है, फिर ढके छुपे उम्मीद है, नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, नेचुरल है। लेकिन आज नो नो, अभी नहीं, वो प्लान करेंगे, अभी वो बच्ची पढ़ रही है, अभी वो उसकी जॉब है, अभी दोनों ने घर लेना है, लाहौल अवला को। नतीजा क्या है कि अव्वल तो आप इसकी नौबत ही नहीं आने दें, और अगर अल्लाह कोई उम्मीद दे दे तो जाके अबॉर्ट करा दें। इस पारे में बॉर्शन की बहुत बात है, अगले पारे में भी आएगी इंशाल्लाह। और फिर औलाद तो चाहिए लेकिन बेटी नहीं चाहिए, ये भी ना शुक्रिया। हम या दुस्सु फितुराब, जहाँ पहुँचेंगे इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आज भी बेटियों की कैसे नाकदरी है, कि उनको जहेज में तोल तोल के भेजते हैं कि हमारा ये माल ले लो, हम इसका सोफा कुर्सी मेज तुम्हें सब देते हैं, बस हमारी इस बच्ची को तुम कबूल कर लो क्योंकि ये ऐसी है। और नतीजा क्या हुआ कि आज फिर घर और भी टूटे, और जिस तरह से होता है वो आप सभी जानते हैं कि बर्निंग ब्राइडर्स और इस तरह के आग लगना, ये सारा कुछ क्या है। आज अमीरों ने इस चीज को इतना ज्यादा बढ़ा दिया, हम कहते हैं गरीब ना देना जहेज क्योंकि नहीं अफोर्ड करते। नहीं, याद रखिए कि अमीर जब तक ट्रेंड्स नहीं बदलेंगे, गरीब बेचारे को तो देना, उसकी बेटी पहले कोई नहीं था ले रहा, बड़ी होने के करीब हुई, बूढ़ी हो रही है, अब अल्लाह अल्लाह करके रिश्ता भर आप डांट रहे हैं उसको जी कि आप ना दीजिए जहेज। नहीं, आपको नहीं देना पड़ेगा। मिसाल समझिएगा कि आप देखिए कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में अमूमन जमीन से पानी जब लिया जाता है तो मोटर इस्तेमाल की जाती है, एक नीचे टैंकी होती है, एक ऊपर होती है। अब नीचे से पानी ऊपर लेने के लिए जब आपको मोटर लगाने की जरूरत होती है तो जाहिर है बिजली नहीं है तो पानी नहीं यूज होगा। इसके बरक्स जब ऊपर की टंकी में पानी चला गया तो आपको नीचे लाने के लिए कोई मोटर नहीं चाहिए, एक वॉल्व खोल दीजिए, पानी बहेगा। बिल्कुल हर मुआशरे में एक नीचे के लोग होते हैं जो गरीब हैं, जो बेचारे दबे हुए किसी मुआशरे के लोग हैं, और इसके अपोजिट दूसरे लोग वो हैं जो माशाल्लाह हाई स्कैटी के लोग हैं, ट्रेंड सेटर्स हैं। ऊपर वाले जब तक ये रस्में ये चीजें नहीं छोड़ेंगे, नीचे वाले नहीं करेंगे। और गरीबों से इस्लाम नहीं फैला, सरदारों से फैला। क्यों? अल्लाह के नबी जो थे वो हमेशा बड़ी बस्तियों में आए, और उनके आगे सामने जो मुकाबला करने वाले वो मलाह थे। तो आज के मलास को ये छोड़ना पड़ेगा। और फिर देखे, आप किसी मेहमान को बुलाएं और कहें सर अपनी कुर्सी ले आइएगा, मेज भी ले आइएगा, अच्छा आपने स्लीप ओवर करना है प्लीज अपना ब्लैंकेट और अपनी ले आइए, इज्जत है। तो याद रखिए ये बेटियों की ना कदरी करते हैं हम जहेज दे दे के। जैसे वो कहते हैं ना कि गाय के गले में कंठा डाल दो, क्यों? कि गाय आप अच्छी चीज नहीं थी तो उसके गले में आप एक सोने का कंठा डाल दो। तो बेटियों को आप जहेज में तोल के भी दे दीजिए, सोने में रखे। और कहते हैं कि जहां से ये रस्म चली थी वहां एक पलड़े में लड़की को रखते थे और दूसरे पलड़े में चीजें डालनी शुरू हो जाते थे, सोना चांदी, जब लड़की के वजन के बराबर पे आता कहते इतना जहेज चाहिए। आज क्यों ये मसला बन चुका? अल्लाह ताला आपसे मुझसे राजी हो और हमें इस चीज से बचा के रहे। और ये चीज लड़की वाले नहीं खत्म करेंगे, ये खत्म होगी तो लड़के वालों से। लड़के की माँ को कहना पड़ेगा जी हम नहीं लेंगे, बड़े प्यार से आप कहते जी आपकी मर्जी है, आपकी बच्ची है, ये जुमले गलत हैं। तो बहरहाल इस पे तो क्या कहें, कुरान खुद देखें, यहां भी ये बात आएगी इस बारे में और आगे भी जाकर एक दफा ये मौजू आएगा, क्यों लोग बेटियों को पैदा होते ही दफनाना शुरू हो जाते हैं। फिर इसके बाद आप देखिए कि सितारे, कायनात की बहुत सारी चीजों की इंसान नाकदरी करता है, उसमें से सिर्फ आपके लिए यहाँ सितारों की मिसाल नोट की है क्योंकि इस बारे में उसका जिक्र है। अल्लाह ने क्यों बनाए थे और लोग उससे किस्मत मालूम करने लगे, पामिस्ट्री करने लगे मालूम। और इस बारे में हम सूरत फातिहा के बारे में खूबसूरत आयत भी पढ़ने वाले हैं कि अल्लाह ने कहा जब तुम्हें अल्लाह ने यह सबल मसानी दे दी, ला तमुद्दिन्नी ऐनिक, कि अपनी आंखों को तुम इधर उधर क्यों डालते हो, तो सारी बात का खुलासा ये है कि शुक्र करना चाहिए। सवाल पैदा होता है कि शुक्र कैसे कब, तो दोहरा लीजिए वो सबक जो सूरत फातिहा के दौरान भी कहा गया था, लेकिन उस दिन तो आप बिल्कुल बच्चे थे, अभी आप जहनी तौर पे पहले ही दिन में बैठे थे, तो हो सकता है कि फोकस ना कर सकें। तो क्विकली जरा नाशुक्री को समझने के लिए शुक्र को देख लेते हैं कि शुक्र क्या है। शुक्र के 3 दर्जे होते हैं, शुक्र बिल कल्ब, शुक्र बिल लिसान और शुक्र बिल जवारेह। दिल से शुक्र, जुबान से शुक्र, आजा से शुक्र। दिल में शुक्र क्या है कि नेमत देने वाले के लिए आप बिछे जाएं, जिसको आप कहते हैं बी हम्बल, दिल से आजीज है, अल्लाह जी आपने मुझे दिया, अल्लाह जी आपने दिया मुझे दिया, मैं तो डिजर्व नहीं करती थी। और हर मादी और गैर मादी नेमत पे यही सोचा करें, अल्लाह आपने मुझे कुरान पढ़ाने के लिए चुना, अल्लाह आपने मुझसे ये कुरान का सफर तय करवा लिया, अल्लाह ताला आपने इस साल मुझे बिल्कुल एक पारा छोड़े बगैर 13 पारे करने की तौफीक दे दी। इस तरीके से अपने आप को लेंगे तो इंशाल्लाह आपका दिल शुक्र वाला दिल है। फिर जुबान से भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सारी जिंदगी जो लफ्ज लोग आपसे ना छीन सके ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह सूरत यूसुफ में पढ़ के आया। लोग चाहेंगे आप ना शुक्रिया करें, जिसकी जुबान पे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह आ गया तो अल्हम्दुलिल्लाह हिल्लज़ी हदाना लिहाजा, सूरह अल-अराफ में पढ़ के आए हैं, जन्नतियों की पहली बात जन्नत में जाने के बाद जो कलाम होगा वो शुक्र का होगा, तो जुबान को शुक्र और प्यार से बुला अल्हम्दुलिल्लाह, आप कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है जिस हाल में रखे, इस टोन को चेंज करना है। फिर आज़ा से शुक्र कह के नेमत देने वाले के हुक्मों के मुताबिक उसको इस्तेमाल किया जाए। बस आंखों का शुक्र यह है कि आंखों से हर वो चीज़ देखी जाए जो कि देखने का अल्लाह ने हुक्म दिया, और ना शुक्री ले लीजिए तो ना शुक्री है आंखों को गंदी चीज़ें दिखाना, कानों को बुरी चीज़ें सुनवाना, दिल में बुरी चीज़ें लाना, यानी हर उज़्व का शुक्र और ना शुक्री अलग होती है। क्या फ़ायदा होगा अगर हम शुक्र करेंगे ना शुक्रिया छोड़कर, क्योंकि ये आज के पारे का गोल है। नोट कीजिएगा, मैंने इस पारे को पढ़ने के बाद शुक्र करना सीखना है, और मैं शुक्र क्यों करूं तो इसको हम देखेंगे इंशाल्लाह आयत 78-79 से, कि शुक्र निस्फ ईमान और इबादत है, यानी आधा ईमान शुक्र है और आधा सब्र है, और इसी तरह जो शुक्र करता है ना वो इबादत की हालत में होता है, और इसी तरह से याद रखिए कि शुक्र रज़ा इलाही का जरिया, अल्लाह की रज़ा को पाने का जरिया। और आप भी तो देखिए ना, आपका बच्चा हर वक्त शुक्र ही करता रहे, थैंक यू मामा, बहुत शुक्रिया मामा, आई एम हैप्पी, तो आपका दिल नहीं चाहेगा कि उसको गले से लगाएं? आप तो उसको उससे ज्यादा देंगे जिसको कभी खुशी ना हुई, वो कभी खुश ही नहीं हुआ आज तक आपसे। फिर इसी तरह देखिए, शुक्र करना अम्बिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और जन्नतियों की सिफात में से है। और एक जुमला लिख लीजिए कि शुक्र हाफिज है, मौजूदा नेमतों की हिफाजत करता है, क्योंकि पीछे पड़ा है लाइन, शकर तुम लाजीदन्नकुम, शुक्र एक मोहर है, स्टैंप लग जाती है उस नेमत पे, वो वापस नहीं जाती। आप चाहते हैं ना कोई चीज़ मिली अब ख़राब ना हो, मसलन गाड़ी मिल गई अल्लाह ने दी, आप कहते हैं इसका एक्सीडेंट ना हो, ये ख़राब ना हो, शुक्र कीजिए हर वक्त उसके ऊपर, शुक्र कीजिए। सेलफोन आ गया, गिर ना जाए, टूट ना जाए, खो ना जाए, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते रहें, अल्लाह ने आपको वो नेमत दी, और अगर गिर के टूट गया तो अल्लाह उससे अच्छा भी देगा इंशाल्लाह। और हकीकत है कि शुक्र जालिब है, जालिब किसको कहते हैं, खींचने वाला, गुमशुदा इनामात को खींच लाता है। आज अगर आपकी ज़िंदगी में कोई चीज़ चली गई हुई है ना तो आपसे शुक्र करना शुरू कर दें। बाज़ दफ़ा देखिए कि अल्लाह इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हमें देता है, हमारे अंदर कुछ रौनक भरी होती है। बड़ी अच्छी लड़की से शादी होगी एक लड़के की, अब अल्लाह ने उसको दे दी, बड़े आराम से मिल गई, वो कदर ही नहीं करता, कहता आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई डोंट लाइक हर, मुझे तो वो गोरी नीली पीली चाहिए थी, और मुझे तो वो फलां क्लासमेट से शादी करनी थी। अब वो लड़की को रुला धुला के दुखी कर दिया, वो रूठ के घर चली गई, जाइए उसको बना लीजिए। जहां तक हालात है, यही मामला एक लड़की के साथ भी हो सकता है, तो नेमतों को रिकॉल करने से नेमतें वापस आ जाती हैं। फिर एक और चीज़ देखिए कि नाशुक्री जो है, अल्लाह ताला की नेमतों की नाशुक्री, इसका एक छोटा सा और नाम देख लीजिए, और वो क्या है, अल्लाह के एहसान का इनकार और बातिल का इकरार। यानी हम नाशुक्री कब करते हैं, जब हम अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों को दूसरों के नाम लगा देते हैं। चीज़ किसी और की हो और आप नीचे अपना नाम लिख कर उसको पेश कर दें, और इसी तरह की दूसरी चीज़ें। आज देखिए ब्रांड कॉन्शियस लोग कितना केयर करते हैं इन चीज़ों की, तो क्या पता चला कि आपने मैंने अपनी ज़िंदगी से ये मामला निकालना है इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला की नेमतों की नाशुक्री क्या है कि मुसब्बुल असबाब को छोड़कर असबाब पे भरोसा करना, यानी जो असबाब पैदा करता है हम उसके पीछे नहीं भागते और सिर्फ चीज़ों के पीछे भागते हैं। आज का पूरा यंग कल्चर ही है, पढ़ो और पढ़ाओ, चूंकि हम डॉक्टर हैं तो कामयाब तो होंगे, लेकिन किसने ये अक्ल दी, समझ दी कि आप मेडिसिन में आ गए, ये नहीं जानते। इसके लिए आज के इस बारे में जो थीम आयत है वो है 112 नंबर सूरत नहल, वदरबल्लाहु मसलन करियतन कानत आमिना आमिनतम मुतमईनतन यातीहा रिज़्क़ुहा रग़दम मिन कुल्ली मकान फकफरत बियन उमिल्लाह फज़ाकहल्लाहु लिबास अलजूई वल खौफी बिमा कानू यस्नाउन। अल्लाह तआला एक बस्ती की मिसाल देता है, वो अमन और इत्मीनान की जिंदगी बसर कर रही थी, और हर तरफ से इसको बफरागत यानी बहुत प्लंटी, बहुत ज्यादा रिस्क पहुंच रहा था, कि इसने अल्लाह की नेमतों का कुफरान शुरू कर दिया। तब अल्लाह ने इसके बशिंदों को इनके करतूतों का ये मजा चखा दिया कि भूख और खौफ की मुसीबतें इन पर छा गईं। मक्का वाले नहीं थे सिर्फ ऐसे, वो उनकी तो बात है ही, अल्लाह ने अपना नबी भेजा, अल्लाह ने किताब उस शहर में नाजिल कराई, जिब्राइल उधर आते थे उस शहर में, सादिक और अमीन की जुबान से ये मोतियों जैसा कुरान लोग सुनते थे, लोगों को अच्छा नहीं लगा, इतना सताया कि हिजरत का वक्त आ गया और अल्लाह का नबी वहां से निकाल लिया गया। याद रखिए नबी जाते नहीं है, निकाले जाते हैं, ये अल्लाह के फैसले होते हैं कि उसने कहाँ से क्या करना है, और जो ही आप गए वहां से पीछे से मक्का में कहता आ गया, उसी की तरफ इशारा है। तो याद रखिए कि नेमतें छिन जाती हैं नाकदरी से, जब आप दीन दीनदार और दीन के किसी काम की नाकदरी करेंगे तो अल्लाह ना करे कि आपके साथ भी ऐसा ही हो। और आज देखिए पूरी दुनिया में बीसियों मिसालें तो सिर्फ मुसलमान मुल्कों की इस आयत के मिस्दाक दिखेंगी, कल तक क्या अच्छे हालात थे और आज लोग रो रोए हैं और वो सारी जगह इधर से उधर हो रही हैं, तो क्या पता चला कि हमने इस दफा इंशाल्लाह न शुक्रियों से बच के शुक्र करना सीखना है। तो इसके लिए फिर एक दुआ भी ले लीजिए, वो सूरत नमल आयत 19 में आने भी वाली है, लेकिन हम उसको इस पारे के साथ याद करेंगे। रब्बी औज़ेनी अनशकुर निअमतकल्लती अनअमत अलैया वअला वालिदैय वअना अमल सालिहन तरदाहू वअदखिलनी बिरहमतिका फी इबादिका सालिहीन। ए मेरे रब, मुझे तौफीक दे के मैं तेरी इस नेमत का शुक्र अदा करूं जो तूने मुझ पर और मेरे वालदैन पर अता फरमाई, और ये कैसा नेक अमल करूं जिससे तू राजी हो जाए और अपनी रहमत से मुझे अपने नेक बंदों में दाखिल कर ले। इस वक्त अपने इस कुरान पढ़ने और पढ़ाने को नेमत समझकर इस दुआ को समझिए कि ये आपके माँ बाप पर भी आपका एहसान है। क्या आप इस वक्त एक अच्छा काम करके जिंदा माँ बाप के लिए सेहत और आफियत का जरिया बन सकते हैं, उनके ऊपर आई हुई तकलीफों में कमी का जरिया बन सकते हैं, और इसी तरह जो दुनिया से चले के उनकी कब्रों में ठंडक का जरिया भी बन सकते हैं। और हकीकत यह है कि इंसान जब अल्लाह ताला का बन जाता है तो अल्लाह ताला फिर उसका बनता है। तो इंशाल्लाह इसको आहिस्ता आहिस्ता करके याद करेंगे। हदीस आज के पारे के साथ है अबू दाऊद की रिवायत 5086। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफर में होते और सहर में उठते, यानी रात के पड़ाव के बाद सुबह में उठते, याद रखिए रात को सोना सुन्नत है। वजालना नौमकुम सुबाता, एक छोटी सी बात जो मुझे लगता है कि जरूर करने की जरूरत है, ना शुक्री है, वो क्या कि जब भी रमजान आता है तो हम रातों को जागते हैं और दिन को सोते हैं, और स्पेशली आजकल के रोजे कि जिसमें फिर दिन लंबे और रातें छोटी हैं, तो याद रखिए पूरी रात जागना गैर मसनून है। एक रात की नींद पूरा हफ्ता सोने के बराबर भी नहीं बनती, किसी भी डॉक्टर से पूछ लीजिए। हमारी बॉडी से ऐसे ग्लैंड्स निकलते हैं कि जब हम रात के वक्त में खाते हैं पीते हैं तो वो ग्लैंड्स सो चुके होते हैं और उसकी वजह से खाना पीना हजम नहीं होता। खास तौर पे एक रफली स्पीकिंग रात 11 से लेकर 3 बजे के इन बिटवीन कुछ नहीं खाना चाहिए। अब जब आप रात में जागेंगे तो कभी आप चॉकलेट मिल्क बनाकर पियेंगे और कभी सो ऑन, और सुबह में सोते रहेंगे, और सुबह की नींद अल्लाह अकबर इबकारा, सहरियों की बरकतों की दुआएं चली जाती हैं। तो बहरहाल बहुत सारे लोग इस वक्त भी अपनी रूटीन को जब मैस्टअप करते हैं ना, अगला सारा दिन कसल मारते हुए, और मैं कह सकती हूँ कितने ही लोग ऐसे हैं जो सिर्फ इसलिए दौरे कुरान नहीं सुन पा रहे क्योंकि वहां सुबह होती है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें रात को सोने और दिन को जागने वाला बनाए, जैसे सूरज और चांद का काम है। तो बहरहाल आपकी दुआ क्या होती थी, समी असामी उम बिहम्दिल्लाही व नेमति ही व हुस्नी बलाईही अलैना अल्लाहुम्मा साहिबना फफदिल अलैना आइज़म बिल्लाही मिनन्नार। सुनने वाले ने अल्लाह की हम की, इसकी नेमतों की शुक्रगुजारी, और अपने इम्तिहान में हमारी हुस्ने कारकर्दगी को देखकर सुन लिया। ए अल्लाह, तू हमारे साथ रह और हमें अपने फजल से नवाज। और मैं जहन्नुम से अल्लाह की पनाह चाहता हूँ। सफर में बहुत खतरे होते हैं, तो ये दुआ वाकई जब ड्यूरिंग द ट्रेवल आप पढ़ें या सुने तो आपको अल्लाह के नबी पर बहुत प्यार आता है। अल्लाह ताला हमें ना शुक्रियों से बचाए। अब चलते हैं पारे के टेक्स्ट के साथ, चंद हाइलाइट्स को ले लेते हैं। पूरे पारे में जो कुछ हम सीखने की कोशिश करेंगे, पहली बात है कि कुरान हकीम को अपने सीने में महफूज करने की कोशिश करना, क्योंकि इसका जिक्र है इस पारे में। फिर अल्लाह ताला की ज़ात और सिफात में गौर व फिक्र करना, अल्लाह ताला के लिए खालिस होना, दूसरों के हालात से सबक लेना, रब की इबादत करना, गौर व फिक्र करना, अक्ल से काम लेना, सबक हासिल करना, अल्लाह ताला को अपना माबूद बनाना, और अल्लाह ताला से डर कर रहना सीखेंगे इंशाअल्लाह ताला। बोलिए, क्योंकि जब गोल नहीं सेट करेंगे तो फिर अचीव कैसे करेंगे, क्योंकि जो हमारे गोल्स होते हैं ना वही हमारे रोल्स होते हैं। फिर इसी तरह हम कुछ और चीजें सीखेंगे कि लोगों के लिए किताबुल्लाह को वाज़ह करना, ज़रा आज सीखेंगे तो तभी कल दूसरों को सिखा सकेंगे। अल्लाह ताला की निशानियों पे गौर व फिक्र करना, सीधे रास्ते पर चलना, शुक्र अदा करना, अल्लाह ताला की गवाही देना, अदल एहसान और सिला रहमी करना, सब्र करना, अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करना, अल्लाह ताला का फरमा बरदार बनना, और आखिरी आयत पारे की जो हमें सिखाएगी वो है उदु इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना। अल्लाह के रास्ते में खूबसूरत तरीके से दावत देना सीखना, इसके लिए आपको पारे के एंड तक चलना पड़ेगा। शुरू करते हैं। ये पारा सूरत हिजर की आयत नंबर 2 से शुरू होता है और तरतीब से ये 15 नंबर की सूरत है। टोटल इसमें 99 आयतें हैं। आयतें छोटी हैं क्योंकि एक रुक में पूरी 99 आयतें आएंगी। आइए शुरू करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم العمل فسوف يعلمون. حسرتوں سے یہ پارا شروع ہو رہا ہے کیونکہ ناشکرہ انسان بھی قیامت کے دن حسرتوں کا شکار ہوگا. وہ وقت بھی ہوگا کہ کافر اپنے مسلمان ہونے کی آرزو کریں گے. آپ انہیں کھاتا نفع اٹھاتا اور جھوٹی امیدوں میں مشغول ہوتا چھوڑ دیجئے. یہ خود ابھی جان لیں گے کسی بستی کو ہم نے ہلاک نہیں کیا مگر یہ کہ اس کے لیے مقرر نوشتہ تھا, یعنی لکھی ہوئی بات تھی. کوئی گروہ اپنی موت سے نہ آگے بڑھتا ہے نہ پیچھے رہتا ہے. انہوں نے کہا ہے وہ شخص, کس کو کہہ رہے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. ذرا جملہ دیکھیے گا کیا کہیں گے. نشکریوں میں ڈوبا ہوا جملہ, یہ ہے رسول کی ناقدری. اے وہ شخص جس پر قرآن اتارا گیا, یقیناً تو کوئی دیوانہ ہے. یہ ٹون تھی ان کی. ہم سیدھا پڑھ جائیں, انہوں نے یہ کہا شخص, یہ تو ترجمہ تو ہو گیا لیکن آپ کو سمجھ کوئی نہیں آئی. یقین کیجیے دورہ قرآن رسم نہیں ہے. پوچھئے خود سے کیا عادتاً سنتی ہوں کہ عبادتاً سنتی ہوں. جب تک قرآن کے ترجمے کو بھی اس کی اصل ٹون کے ساتھ نہ پڑھیں گے حق ادا نہیں ہوگا. تو اللہ کے نبی کو اس دین کو پہنچانے کے لیے دیوانہ کہلانا قبول تھا کیونکہ آپ کو اس دین کے کام کی قدر تھی. کیا آج تک آپ کو مجھے کسی نے دیوانہ پاگل کریزی کہا ہوتا تو ہم چھوڑ چکے ہوتے. اللہ ہماری اصلاح فرما دے. تو آپ دیکھیے پہلی ہی آیت میں ایک حسرت ہے اور کچھ آرزوؤں کی بات ہے. ذرہم یاکلوا, تو طول العمل نوٹ کریے گا. طول عمل کہتے ہیں جھوٹی آرزوئیں, یعنی کہہ لیجئے کہ وانٹس وانٹس اینڈ وانٹس. ایک خواہش پوری تو دوسری ختم. تو طول عمل نیکیوں کے راہ میں رکاوٹ ہے. لمبی دنیاوی خواہشیں, یہ کس چیز کی ناقدری ہوگی؟ آخرت کی ناقدری ہے کہ آپ دنیا میں ہی. وہ کہتے ہیں نا ہزاروں خواہش ایسی کہ دم نکلے. کیا ہمارا ہر خواہش پہ دم نہیں نکل جاتا؟ ایک ڈیزائنر کا جوڑا کے فیس بک پہ دیکھ لیا, دم نکل گیا, اب یہ لے کے چھوڑنا ہے. یہ ہے طول عمل. اور ایک لے آئے تو دو چھوڑا ہے وہاں دل کے اندر لٹکائے ہوئے. تو یاد رکھیے شیطان کا کارآمد ہتھیار ہے. ہمیں آج ناشکرہ بنانے میں طول عمل کی بہت بڑی جگہ ہے. تو لہٰذا اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. یلہم العمل اسی طرح انسانوں کی صراط مستقیم سے دوری کا ذریعہ ہوتی ہیں دنیا کی لمبی آرزویں, اور طول عمل کی وجہ سے انسان کا توشہ آخرت برباد ہو جاتا ہے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ آخرت میں انسان کی تہی دامن مفلسوں کلاش ہو کر ایک مجرم کی طرح اللہ کے سامنے پیشی ہوگی. یہ بھی ہم پڑھیں گے اگلے پاروں میں بہت دفعہ. کیا آپ سارا کچھ یہیں جمع کرنا چاہتے ہیں؟ آگے جا کر کچھ نہیں چاہیے. یہ ہے طول العمل. اللہ سب ادھر ہی دے دے. ربنا آتینا فی الدنیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری کی روایت ہے 6569, جنت میں جو بھی داخل ہوگا اسے اسے جہنم کا ٹھکانہ بھی دکھایا جائے گا کہ اگر نافرمانی کی ہوتی تو وہاں اسے جگہ ملتی تاکہ وہ اور زیادہ شکر کرے, اور جو بھی جہنم میں داخل ہوگا اسے اس کا جنت کا ٹھکانہ بھی دکھایا جائے گا کہ اگر اچھے عمل کیے ہوتے تو وہاں جگہ ملتی تاکہ اس کے لیے حسرت اور افسوس کا باعث ہو. چند سیکنڈ کے لیے اپنے لیے سوچیں, کیونکہ ہم مسلمان بھی آج اسی پہ چلے گئے. آج ہم نے بھی اسی دنیا کے لیے اپنے آپ کو کھپا دیا. سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. کیا آپ اور میں اس بات کو محسوس کر سکتے ہیں؟ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان تو اپنی مرضیوں سے کر رہا ہے, غیر مسلم یعنی انکار کرنے والا یہ حسرت کب کرے گا کہ لو کانو مسلمین, یعنی دنیا میں جو اسلام کے نام پہ کیچڑ اجالیں, کل کہاں کھڑے ہو کر یہ حسرت کریں گے, یہ خواہش کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے. تو اس کو نوٹ کیجئے گا, کہاں پہ کریں گے؟ پہلی بات ہے کہ زندگی میں مسلمانوں کا سکون اور اطمینان دیکھ کر. اور سچ بات یہی ہے, وہ وقت گزر گیا مسلمانوں کے دور میں سے کہ جب دنیا میں مسلمان کامیاب تھے تو دوسرے دیکھ کر مسلمان ہوتے تھے اور کہتے تھے ہائے یہ اتنے خوش کیوں ہیں. آج اگر آپ اور میں ناشکری چھوڑ دیں اور یہ وہ ساری چیزیں جو ہم نے شروع میں ڈسکس کر لی ان کے شکر گزار بن جائیں نا, تو آج غیر مسلم آپ کو دیکھ کر کہیں گے وائی یو آر سو پیسفل, آئی فیل سم تھنگ ان جو. اس طرح کی باتیں تو اپنے اندر سکون اور اطمینان لانا ہے تاکہ دوسرے لوگ کل جو حسرت کرنی آج اس سے فائدہ اٹھا لیں. پھر اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے عہد میں اسلام کی بہت ترقی اور عروج ہوگی, اس کو دیکھ کر بھی حسرت ہو سکتی ہے. اسی طرح کہتے ہیں کہ موت کے وقت ہر منکر یہ حسرت کرتا ہے کیونکہ اب موت کا وقت آ گیا, غیب کے پردے کھل گئے. لیکن جیسے فرعون نے کہہ دیا تھا آمن تو, یہ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن حسرت. اسی طرح حوض کوثر سے مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے پانی پیتا دیکھ کر حسرت کریں گے, اور جب جہنم میں چلے جائیں گے اور جہنم کی آگ کو دیکھ کر और सबके दलाइल मौजूद है, ये ऐसी नहीं बातें बना के आपको दी जाती, इनमें से हर एक के पीछे अल्हम्दुलिल्लाह कोई ना कोई चीज मौजूद होती है। जब जहन्नमी मुसलमान सजा भुगत कर जहन्नम से आजाद होंगे, और हदीस से पता चलता है कि जिसके दिल में एक राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा, बिल आखिर उसको जहन्नम से निकाला जाएगा। कुछ लोग जहन्नम में डाले जाएंगे, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश से निकाले जाएंगे। अब इमेजिन कीजिए, जेल में सभी फंसे में और घबराहट और गंदगी, और एक का नाम लेकर कहा जाता है आ जाइए जी, इनकी सिफारिश आ गई, तो बाकी क्या करेंगे। रुबमा यवद्दुल्लज़ीना कफरू लौ कानू मुस्लिमीन। मेरे दिल में बड़ा दर्द है दावा के लिए, खास तौर पे मैं ये कहने की इजाज़त चाहूंगी कि अपने इर्द गिर्द के गैर मुस्लिमों को इस हसरत से बचाइए, अपनी मेट्स को और अपने कुलीग्स और बच्चों के दोस्तों को। दुनिया में इस्लाम का बेहतरीन अमली और कौली फेली नमूना बनिए ताकि वो इस हसरत से बच सके। और याद रखिए कि जब एक इंसान न शुक्रापन का इजहार करता है ना, तो उससे ना सिर्फ यह कि उसको नुकसान होता है बल्कि दूसरों को भी। तो अभी तक जो आयतें पढ़ी उसके अंदर से एक बात नोट कीजिए कि ना शुक्रे इंसान के अमूमन तीन रवैये होते हैं। पहली बात है कि वो ऑफकोर्स ना शुक्रापन करता है, लंबी आरजुएं और ख्वाहिशात उसका मुकद्दर बन जाती हैं। हम अपने आप को इस आईने में चेक कर सकते हैं कि मैं शुक्रगुजार हूँ कि ना शुक्री हूँ, और फिर आखिरत के मतलब गैर संजीदा रवैया देखेंगे। बस बात ना करें, नहीं नहीं अभी नहीं, ना ना मुझे फिर डिप्रेशन होता है, नहीं डॉक्टर ने कहा था ऐसी ऐसी बातें नहीं करनी, नहीं कोई फौत हो गया मुझे नहीं जाना, कब्रिस्तान से नहीं गुजरना, यानी फिर ऐसा इंसान आखिरत की बात सुनना ही नहीं चाहता, और नतीजा देख लीजिए नाकामी है। और यहाँ बार बार अल्लज़ीना कफरू आ रहा है, तो ये भी नोट कीजिए कि काफिर क्यों कहते हैं ऐसे शख्स को। काफिर कफरा से है, किसान को भी कहते हैं, लफ्जी माना इसको होता है छुपाना। जैसे आप देखिए कफारा देते हैं ना हम कई चीजों का, ये कफारा है, तो कफारा क्या होता है कि उस जुर्म को छुपा देता है। मसलन फकफारा तो इतआमु मसाकीन, कसम तोड़ के अगर कफारा दें, तो आप पढ़ चुके हैं 7वें पारे के बिल्कुल शुरू में। तो इसी तरह से काफिर कौन होता है, छुपाने वाला, किसको, अल्लाह की नेमतों को ना शुक्रा। जिसको पता चल गया, जिसके पैगाम पहुंच गया, जिसकी अक्ल खुली थी, जिसका दिमाग खुला था, जिसका वादा अल्लाह जिंदा था, और फिर वो मान दे तो वो ना शुक्र है, तो इंसान नाकदरी वाला बन जाता है। किस किस चीज की नाकदरी करता है ऐसा काफिर। नंबर एक, नेमते दीन की, फिर नेमते हिदायत की, नेमते रसूल की, और नेमते जिक्र की, और नेमते मोहलते अमल की। तो आज ये मोहलत मौजूद है, आप और मैं इसको ले चले। और यही मक्का वालों के हाल पे था कि अल्लाह के नबी तो वहां खुद मौजूद थे, फिर ना माने तो बाद में क्या मानते और क्या मुतालबे करते थे। अब नोट कीजिएगा, नशुक्री से भरे हुए मुतालबे, मोजज़े मांगते थे। लव माताती नबिल मलाइका, अगर तू सच्चा है तो हमारे पास फरिश्तों को क्यों नहीं लाता, हम फरिश्तों को हक के साथ ही उतारते हैं, और इस वक्त वो मोहलत दिए गए नहीं होते। हमने ही इस कुरान को नाजिल फरमाया और हम ही इसके मुहाफिज हैं। ये है आयत जिसके ऊपर आप नियत करें कि हमने इस किताब को सीनों में छुपाना है, कुछ ना कुछ हिस्सा कुरान का हिफ्ज करेंगे इंशाल्लाह। हमने आपसे पहले अगली उम्मतों में भी रसूल बराबर भेजे। ये वाहिद किताब है जो लफ्ज़ बलफ्ज़ याद हो जाती है, बच्चा भी याद करता है, 7-8 साल का हाफिज तरावियां पढ़ा रहा होता है। कभी आपने दुनिया में किसी बड़ी से बड़ी किताब और छोटी से छोटी किताब को कभी देखा, और क्या हकीकत में आप और मैं इन सारी चीजों पे गौर व फिक्र करते हैं। जरूरत है इस बात की कि इसको हम महसूस कर सके। आगे भी आयत आएगी, फरमाए और लेकिन जो भी रसूल आता है वो इसका मजाक उड़ाते, गुनाहगारों के दिलों में हम इसी तरह ये रचा दिया करते हैं, वो इस पर ईमान नहीं लाते, और यकीनन अगलों का तरीका गुजरा है। और अगर हम इन पर आसमान का दरवाजा भी खोल दें और ये वहां चढ़ने भी लग जाएं, तब भी यही कहेंगे हमारी नजरबंदी कर दी गई, बल्कि हम लोगों पर जादू कर दिया गया। यानी आज मोजज़े मांगते हैं, मोजज़े मिल भी गए, नहीं मानेंगे। याद रखिए कि मोजज़ों से ईमान नहीं आता। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने कौन सा मोजज़ा मांगा था, हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने अल्लाह के नबी से कौन सी कोई शोबदाबाजी देखी थी, नाउसु बिल्ला, ऐसा कुछ भी नहीं। हक की तलब रखने वाले को सिर्फ इतना ही बहुत काफी होता है कि मेरे सामने हक आ गया, मैं इसको कबूल कर लूं, तो अल्लाह ताला ने इस किताब को आपके मेरे सामने रख दिया, अब इसके बाद तो कोई हुज्जत नहीं। यकीनन हमने आसमान में बुर्ज बनाए और देखने वालों के लिए इसे सजा दिया गया, और इसे हर मर्दू शैतान से महफूज रखा है। हाँ मगर जो चोरी छुपे सुनने की कोशिश करे, इसके पीछे दहकता हुआ खुला शोला लगता है, वही की हिफाजत हो रही है। जैसे कोई बहुत बड़ी वीआईपी शख्सियत ने गुजरना हो तो रोड्स ब्लॉक हो जाती है ना, तो सितारों पे जाकर कमंदे डालने वाले सुन लें कि आसमान पर सितारे क्यों बनाए गए। सितारे बनाने के 3 मकासिद हैं, نمبر ایک زینت، زین السماء الدنيا بمصابيح، سورت ملک میں رات کو پڑھتے ہیں، آسمان کی خوبصورتی ہے. دیکھیں دن میں آسمان کتنا پیارا بلو ہوتا ہے، اور اسپیشلی آپ دیکھیے کہ یورپ میں جو آسمان اور کھلی جگہ جہاں پولوشن کم ہے وہاں دیکھیے صحیح بلو کلر کا آسمان ہے، اس پہ سفید بادل ڈال دیے کیونکہ اسکائی بلو پہ وائٹ کلر بہت جچتا ہے. رات کو جب یہ ملگجا ہوتے ہوتے ڈارک جٹ بلیک میں آتا ہے تو سلور کلر کے ستارے لگا دیے. اللہ کتنا خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، کیونکہ ان اللہ جمیل یحب الجمال. پھر اسی طرح دیکھیے راستے دکھانا، آج بھی بحری اور بری سفر میں جہازوں میں اور بحری جہازوں میں ستاروں سے ہی نیویگیشن لی جاتی ہے، ڈائریکشنز ہیں، سمتیں ہیں. تیسرا یہ کام ہے جس کا یہاں ذکر ہے، شیطانوں کو مارنا. یہ آپ جو کہتے ہیں نا ستارہ ٹوٹا ہے، نہیں یہ شیطانوں کو مارا جاتا ہے. وحی الہی کے سلسلے کو لینے کے لیے شیطان آسمانوں پہ اچکتے تھے، پہلے ان کی اجازت تھی لیکن جب قرآن پاک نازل ہونا شروع ہوا تو اب منع کر دی. یعنی سیکیورٹی ہوتی ہے، حفاظت ہے کہ آپ اچک لے جائیں کسی چیز کو اور اس کو جا کر آپ مس یوز کر دیں تو کیا بنے گا. تو انشاءاللہ یہ چیز بھی ہم آگے پڑھیں گے. تو پہرے تھے، سورج جن میں اس کی ڈیٹیل آئے گی کہ اب تو ہمیں وہاں پہرے لگے ہوئے دکھ رہے ہیں، یعنی انہوں نے اس کو چھپا دیا. تو اس ساروں کے علاوہ اگر کوئی ستاروں سے کوئی اور کام لیتا ہے، مثلاً پامسٹری، ستاروں کا اثر، ستارے گردش میں ہیں، میرے اسے ستارے نہیں ملتے، اس کے مجھ سے نہیں ملتے، یہ سب جملے کہہ لیجئے کہ شرکیہ بھی کہہ دیجئے، نہیں تو کم از کم نہ شکری والے جملے تو ہیں. تو زمین کا حسن شکر گزار انسان، آسمان کا حسن ستارے، یہ جم بنا دیجئے تو پھر آپ اگر شکر کریں گے تو آپ اس زمین کو خوبصورت کریں گے. تو کیا دیکھا ہم نے پہلی آیات میں، یعنی 18 تک، انسان ناشکرا ہے، حق دکھانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے، قرآن جیسی نعمت کو پسے پشت ڈال دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو آسمان کی زینت بنایا اور انسان نے ان سے قسمتوں کا حال جاننا شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ اپنی کچھ اور نعمتیں آپ کو مجھے دکھاتے ہیں کہ ان پہ غور و فکر کر لو تو تمہیں انشاءاللہ ضرور سمجھ آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ کائنات کتنی خوبصورت ہے، جس کو دیکھ کر دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر پھوٹتا ہے. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا ہے اور اس پر اٹل پہاڑ ڈال دیے، اور اس میں ہم نے ہر چیز کے لیے معین مقدار سے اگا دی، اور اسی میں ہم نے تمہیں تمہاری روزیاں بنا دی ہیں، اور جنہیں تم روزی دینے والے نہیں ہو. کون چیونٹیوں کو روزی دیتا ہے؟ کون جا کر مینڈکوں کو کھلاتا ہے؟ اور کس کو کھلاتے ہیں؟ اپنے بچوں کو کھلا لیں تو بڑی بات ہے، تو کائنات کو کون کھلا رہا ہے؟ رب العالمین کھلا رہا ہے. اور جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے خزانے ہمارے پاس ہیں، یعنی مین کنٹرول ہمارے ہاتھ میں. آپ دیکھ لیجئے بارش اتنی برستی ہے جتنی چاہیے، اس لیے فرمایا اور ہم ہر چیز کو اس کے مقرر اندازے سے اتارتے ہیں. ہم ہوتے کہتے ساری بارش کٹھی ہو جائے، سارا سونا اللہ پہلے ہی دے دے، نہیں، تھوڑی جتنی جب جہاں ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اتنا دیتے ہیں. تو کیا پتہ چلا ان آیات میں اللہ کا شکر کرنے کی وجہ بتائی گئی ہے. پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سارے خزانے ہیں اور اللہ تعالیٰ رزق اور ہر چیز مقرر اندازے سے دیتا ہے. دیکھیے اگر اندازے سے زیادہ دے نا تو یہ دنیا رہنے کے قابل نہ ہو جائے. اس وقت بس اتنا ہی بتا دوں، سائنس کی زبان سے اگر آپ اس آیت کو سنیں، اتنی آکسیجن جتنی چاہیے. کائنات میں آپ دیکھیے کہ فضا میں نائٹروجن بھی، آکسیجن بھی، کاربن بھی ہے، اگر ذرا کم و بیش کر دی جائے نا تو جل جائے دنیا. اور اگر ذرا سب H2O کی ریشو کو بدل دیا جائے تو پانی پتہ نہیں کیا 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 بن جائے. تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، تو پھر نوٹ کیجیے آپ کو مجھے اس نے کیا غلطی سے دے دیے کچھ، یا اگر آپ کو مجھے کچھ مل ہی نہیں رہا جو میں چاہتی ہوں اور میں نہ شکرے پن پہ ہوں، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں؟ تو کیا آپ اللہ کی نظر میں نہیں ہے؟ اس جملے کو ہائی لائٹ کر کے اپنی زندگی میں لکھ لیجئے، اگر آپ کو لگتا ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ گاڈ از ناٹ فیئر ود می. بعض لوگ کہتے ہیں بیٹا ہی نہیں دے رہا اللہ تعالیٰ، تو شکر کیجئے بیٹی تو دی، ایک ہی بیٹا دیا تو ایک تو دیا. تو یاد رکھیے کہ اللہ کے اندازوں پہ نظریں رکھنا یہی ہے تقدیر، تقدیر اللہ تعالیٰ کا اندازہ ہے. اور ہم بھیجتے ہیں بوجھل ہوائیں اور پھر آسمان سے پانی برسا کر وہ تمہیں پلاتے ہیں اور تم اس کا ذخیرہ کرنے والے نہیں ہو، کتنا کو کریں گے؟ آپ دیکھیں کہ ایک گیلن پانی کہیں سے اٹھا کر لائیں تو انسان ہانپ جائے، ایک ٹینکر آتا ہے تو شاید آج 1000 سے بھی زائد کا ہوگا. کہاں رکھتے اتنا پانی؟ ساری زمین بھیگ جاتی ہے اگر سارا پانی پیچھے آ جاتا. اور اگر آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ کر کے دیکھیں کتنا خرچہ آتا ہے ٹرانسپورٹیشن کا. اور آپ اگر بادلوں کا بل دینے لگ جائیں نا، سمندروں سے اٹھا کر بادلوں کو اللہ تعالیٰ تھل کے علاقے تک میں لے جا کے برسائے، میرا لے پانی سے زیادہ صرف ٹرانسپورٹیشن کا خرچہ ہو جو آپ نے میں نے آج تک نہیں دیا، لیکن دیں گے کیسے؟ جملہ نوٹ کیجئے گا، شکر گزاری نعمتوں کا بل ہے. ناشکرہ بندہ وہ ہے جس کے اوپر پینڈنگ پیمنٹس ہیں. اور آج دنیا کا جو موجودہ نظام ہے, کچھ ملکوں میں آپ ایک پیمنٹ نہ دیں وہ خوش ہوں گے, کیونکہ اگلے ہفتے آپ اس کے اوپر وہ 10 روپے لگا کر اور بھیجیں گے اور وہ تو خوش ہیں. یہ سارا بینکنگ کا نظام اور کریڈٹ کارڈ نظام صرف اس اصول پہ چل رہا ہے کہ اللہ کرے کہ آپ وقت پہ پے نہ کریں تاکہ ہم آپ سے ایکسٹرا لیں. آپ وقت پہ پے کر دیں آپ ان کو اچھے نہیں لگیں گے. تو کیا آپ نے میں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی پیمنٹ دے دی ہے؟ یہ خود سے ایک کوڈ ورڈ رکھ لیں آج کے بعد. صبح اٹھتے ہی پوچھا کریں آج کون کون سی پیمنٹ میرے ذمہ ہے, کیا کیا نعمت لے کے اٹھی ہوں, اور سونے سے پہلے ایک کاپی میں لکھتے جائیے کہ آج کون سی پیمنٹ دی کون سی نہیں دی اور کیا کیسے پے کرنا ہے. اور نعمتوں کی قیمتیں ہم پیسے اور روپے اور ڈالر اور پاؤنڈ سے نہیں دے سکتے, اس کو ہم نے بندگی اور عاجزی اور اللہ کے دین کی خدمت سے دینا ہے انشاءاللہ. ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی بالآخر وارث ہیں. یہ ہے دنیا کی سب سے بڑی حقیقت. ساری زندگی مال مال مال, میرا مال, اس کا وارث. اللہ ایک وارث دے دے, اللہ اس جائیداد کا وارث دے, اس گھر کا دے دے. بچے ورثے پہ لڑتے جھگڑتے دنیا سے چلے جاتے, اس کو ہائی لائٹ کیجیے. وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ, سب کے بعد, سارے وارثوں کے بعد وارث کون ہوگا؟ اللہ ہوگا. اللہ تعالیٰ کے اس نام کو بھی آپ سن سکتے ہیں الوارث. مجھے آج بھی یاد ہے جب میں نے اس کو پڑھایا تھا تو مجھے نئے رنگ دکھے تھے. کبھی ایسے ہم نے سوچا بھی نہیں کہ اللہ وارث ہے. بڑے لوگ کہا کرتے تھے جاؤ پھر اللہ وارث, یعنی آگے تو میرے نہ آئے تو اللہ کے. اور تم میں سے آگے بڑھنے والے اور پیچھے ہٹنے والے بھی ہمارے علم میں ہیں. یہ کون ہے بھائی؟ اپنا نام پوچھیے اس میں, کیا میں آگے بڑھ رہی ہوں دن بدن یا پیچھے جا رہی ہوں؟ نماز وقت پہ پڑھتی ہوں یا ڈیلی ڈیلی؟ شروع کا مس کرتی ہوں یا اینڈ کا چھوڑ کے اٹھ جاتی ہوں؟ ہر نیکی کے اندر اپنا حصہ دیکھا کریں کہ میری نیکی پوری ہے کہ کم ہے. نیکیوں میں آگے بڑھ رہی ہوں کہ گناہوں میں ہوں؟ نیکیوں سے پیچھے ہٹ رہی ہوں یا گناہوں سے بڑھ رہی ہوں؟ اللہ کہتے ہیں آپ سب میری نظروں میں ہیں. آپ کا رب سب لوگوں کو جمع کرے گا, یقیناً وہ بڑی حکمتوں والا اور بڑے علم والا ہے. کیا بنے گا اس دن؟ یہاں انجام بتایا تو اب ابتدا بتائی جا رہی ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ, یقیناً ہم نے انسان کو خشک مٹی سے اور جو کہ سڑے ہوئے گارے کی تھی پیدا فرمایا. اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا. اور جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک انسان کو کالی اور سڑی ہوئی کھن کھناتی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں. معذرت کے ساتھ یہ ہے میرا آپ کا انٹروڈکشن. کوئی بھی چیز بنتی ہے نا آپ کہتے ہیں بنی کیسے. آج آپ دیکھیں ایک سویٹر بھی لے آتے ہیں نا اچھی کمپنی کا تو اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے اس میں پیور وول ہے, اس میں پولیسٹر ہے. انگریڈینٹس پڑھ کے کھاتے ہیں. آپ کے میرے انگریڈینٹس یہ ہیں. اللہ چاہتا تو میں سونے چاندی کا بھی بنا دیتا لیکن پھر سر سجدے میں کون رکھتا؟ ہم تو پاؤں زمین پہ رکھتے کہ ہم تو سونے چاندی کے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کے میرے سامنے کردار پیش کر رہے ہیں کہ تمہیں حق ہے نا شکرے ہونے کا. اللہ نے تمہیں کالی اور سڑی ہوئی کھن کھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا. تو جب میں اسے پورا بنا چکوں اور میں اس میں اپنی روح پھونک دوں, یہ ہے آپ کی میری قیمتی چیز. لکھیے گا مٹی کو سونا بنانے والی چیز یہ روح ہے. اور کس کی ہے؟ میں اس میں اپنی روح پھونک دوں. اس کو ہائی لائٹ کیجیے گا. قیمتی چیز روح تھی. ہم جسم کے تقاضے نبھا کر دنیا سے جانے لگے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, آپ کی میری ویلیو اصل میں میری روح کی ویلیو کے ساتھ ہے. پچھلا پارا یاد کر لیجئے, نفس امارہ. جب روح کو نفس امارہ میں ڈال دیتے ہیں نا پر میں گناہ کر کر آ کے تو ہماری 2 ٹکے کی قیمت نہیں رہتی اللہ کے ہاں. اور جب اس روح کو قرآن کے پانی سے جوڑ جوڑ کر نفس مطمئنہ بناتے ہیں تو یہ وہ روح ہے کہ جس کے آگے فرشتوں کو سجدہ کرایا گیا. پہلے مٹی کا بنا ہوا تو ختم, لیکن اب جب روح پھوک گئی تو تم سب اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا. ایک چھوٹی سی مثال دوں گی, شاید کسی کو اس سے فائدہ. اور یہ بھی بہت پیارا جم ہے جو بہت سارے لوگوں کے کانسیپٹس کو چینج کر گیا الحمدللہ. آپ دیکھیے کہ آپ کو ایک بڑا خوبصورت گفٹ بیگ ملتا ہے. خوبصورت بیگ ہے, دیکھتے ہیں اندر ایک بڑا پیارا باکس بھی ہے. آپ کہتے ہیں میں تو کھولوں گی نہیں, اتنا اچھا ہے پھر خراب ہو جائے گا. کب تک صبر کریں؟ تھوڑی دیر گزرے گی پھر آپ آرام سے وہ بیگ کھولیں گے, پھر باکس نکلے گا, اس پہ ریبن ہے, بڑے پیار سے ریبن اتاریں گے, پھر ریپنگ پیپر نکلے گا, پھر اس کے اندر ایک باکس نکلے گا. اب صبر ہی نہیں ہو رہا, کرتے کرتے جب تہیں کھلتی جائیں گی, اینڈ پہ ایک چھوٹی سی ڈبیا جس میں پر لگی ہوئی ایک رنگ, کوئی سونا چاندی جو عورتوں کو پسند ہے یا مردوں کی کو پسند کی چیز ہے. جب وہ ملتی ہے اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ فوراً اس موتی کو پکڑتے ہیں اور اپنی انگلی میں پہن لیتے ہیں. تھوڑی دیر تو وہ ڈبیاں ڈبے سنبھال لیں گے اور جب گھر میں جگہ نہیں ہوگی تو وہ سارا ریپنگ مٹیریل ڈمپ کر دیں گے جا کر کچرے میں. یہ ہے اصل میں آپ کا میرا جسم اور روح. نوٹ کیجیے گا, रूह है मोती, रिंग, गोल्ड, डायमंड, जो असल गिफ्ट अल्लाह ने आपको मुझे देना था। ये जो मेरा आपका जिस्म है ना, ये रैपिंग पेपर्स हैं। अल्लाह ने आपकी मेरी रूह को रैप करके भेजा, किसी की ब्लैक, किसी की ब्राउन, किसी की वाइटिश, किसी की पिंपल स्किन, किसी के स्टेन्स हैं, यानी आपका मेरा जो स्किन कलर या हमारे ऊपर जो स्किन की क्लैरिटी है, ये सब डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ रैपिंग पेपर है। इसकी हैसियत सिर्फ रैपिंग पेपर है जिसको एंड पे डंप होना है। हम रैपिंग पेपर के पीछे जिंदगी गुजारते हैं, ये है नशुक्री। और वो रूह फीकी प्यासी, ये जितना डिप्रेशन है, जितने आप दुखी हैं, जितने आप ना शुक्रे हैं, आप कहते हैं मेरी जिंदगी में खुशी होती तो मिलती क्यों नहीं। हमारी रूहें एनेमिक हैं, ब्लड की कमी है उनमें, येलो हैं, पेलिश हैं, हमारी रूहों को डायरिया हुआ हुआ है, हमारी रूहें इस वक्त झटके खा रही हैं, समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। सिर्फ एक बंदा आज भी मुतमईन है और वो है नफ्से मुतमईना, और अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, पीछे पढ़ के आए हैं। मोमिन की रूह से ज्यादा खूबसूरत रूह किसी की नहीं, ना दुनिया में ना आखरत में। उसको हक है कि दुनिया में भी अल्लाह की रजा के साथ शुक्रगुजारियों से जिए और आखरत में पहाड़ गुजर जाए ऊपर से, वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह। और आप अपनी ही गलतियों की सजा भुगते हैं और आप कहते हैं मैं नहीं अल्लाह से बोलती, ना बोलिए। तो फिर अपने लिए एक सवाल कीजिए ताकि हम आगे चलें, क्या मैं रैपिंग पेपर के पीछे खपती हूँ, तपती हूँ? ठीक है ना, सारी दुनिया के स्टोर्स, मुझे अमेरिका के आज भी याद है क्योंकि वहाँ सब बहुत गुजरा। फॉलीज एक बहुत मारूफ स्टोर है वहाँ का, बेड एंड बाथ है, फिर इसी तरह सैम्स क्लब है, वॉलमार्ट क्लब है, ऑल ग्रोसरी स्टोर्स, ऑल फर्नीचर स्टोर्स, ऑल क्लोथिंग स्टोर्स, जो आपके इर्द गिर्द है। ये किसको सर्व कर रहे हैं? जिस्म को, बॉडी को, कंफर्ट है, गद्दे नरम, खाओ पियो। हम चारों तरफ अपने इन्हीं चीज़ों को देखते हैं, लेकिन रूह को कौन सर्व करेगा, इसको फिर और समझिए। देखिए, बदन चूंकि मिट्टी की चीज़ों से बनता है ना, जो भी आप खाते हैं या तो डायरेक्टली आप खुद मिट्टी से निकालते हैं, मसलन गाजर, मूली, आलू, प्याज, और कुछ इनडायरेक्टली आप निकालते हैं, मसलन दूध, डेयरी आइटम। वो भैंस ने चारा मिट्टी से आया हुआ खाया तो उसने दे दिया। चूंकि मिट्टी से बना हुआ जिसम मिट्टी की चीज़ों में खुश होता है ना, ये ऐसी है जैसे आपको कहीं भी दुनिया में चले जाए ना तो अपने देसी खाने बहुत अच्छे लगते हैं। आपको परदेश में भी जब जलेबियां मिलती हैं तो आप उसको पकड़ लेते हैं। इसके बरक्स हमारी रूह आई है आसमान से, ये अल्लाह ने आसमान का तोहफा भेजा हुआ है। अब इसको क्या चाहिए? अपने मदर टाउन की खुराक चाहिए, और वो क्या है? इन्ना अंज़लना फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, कुरान। ये जो कुरान सुनते वक्त दिल पर एक वजद की कैफियत आती है ना, और कभी कभी तो आप भूल ही जाते होंगे क्या बैठे कहाँ हैं, ये उस रूह को खाना मिल रहा होता है। और जिस्म को खाना मिलता है तो नींद आती है, ऐसे ही होता है ना, दोपहर के खाने से पहले और बाद को देख ले, और कुछ नहीं है तो आजकल इफ्तारी से पहले और बाद की अपनी कैफियत नोट करें, तो वो सोना चाहता है। जब रूह को खाना मिलता है ना तो कुछ तो फौरन ही अमल करते हैं, वहीं वहीं बैठे सो रहे हैं। इस वक्त भी हो सकता है आप में कुछ एक दो ढोंका लगा चुके हों, या अभी भी सो रहे हो और मेरी ये बात ही ना सुन रहे हो, लेकिन असल में रूह सरशार होती है। तो फिर आपने मैंने रूह के तकाजों को भी निभाना है ना। शुक्री है ये इस रूह की, क्या आप इसको कहें कि मौसीकी रूह की गजा, फिक्शन रूह की गजा, कॉमेडी प्रोग्राम खुशी के लिए, फिल्म देख लो गम भूल जाएगा, ये सिर्फ ठकोसले हैं। असल खुशी तब मिलेगी जब आप इस रूह को अल्लाह से जोड़ेंगे, क्योंकि नफख तो फी ही मिर रूह ही, अल्लाह ने अपनी तरफ निस्बत की और फिर सजदों में गिरा दिया। चुनाचे तमाम फरिश्तों ने सब के सब ने सजदा कर लिया मगर इबलीस के, इबलीस ना कर सका, ना शुक्र था। लिख लीजिए, इबलीस ने क्यों ना किया? कि इसने सजदा करने वालों में शमूलियत करने से साफ इनकार कर दिया। मुनकिर कौन होता है? अभी आपने ऊपर समझा, ना कदरा शख्स होता है। तो शैतान ने ना कदरी की, अल्लाह के हुक्म की भी और अल्लाह ताला के रब होने की भी, और आदम की भी ना कदरी की, और मुनकिर बन गया, ना शुक्रा बन गया। अल्लाह ताला ने उसको क्या कहा होगा वो तो आप बाद में देखें। जरा देखिएगा कि इंसान को अशरफुल मखलूकात का दर्जा क्यों दिया गया, फरिश्तों तक को उसके आगे झुका दिया, और इब्लीस ने उसी इंसान को सजदे से इनकार किया तो अल्लाह ने रांधा दरगाह कर दिया। हालांकि अगर अल्लाह ताला खुद पसंद होते, समझने के लिए देखिएगा, चूंकि कहते कोई बात नहीं मुझे तो सजदे करता ही रहता है ना, ना करे आदम को, नहीं अल्लाह ने कहा तू जा, अल्लाह ताला हमारी तरह नहीं, मेरी तरीफे करते जाओ तो बस दूसरे काम बुरे करो, कोई बात नहीं तुम बड़े अच्छे हो, अल्लाह ताला हक है, अल हक। तो इसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से अल्लामा इकबाल ने पेश किया कि लौह भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब, गुम्बदे आबगीना रंग तेरे मुहीत में हबाब, आलम आबो खाक में तेरे जखूर से फरोग। ज़र्रा रेख को दिया तूने तुलुए आफ्ताब। अब ये स्टूडेंट्स की एक्टिविटी है, बाकी लोगों से मजरत के साथ आप इसका मफहूम ढूंढ कर लाइए, ये आपकी एक्टिविटी में जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला ने फरमाया, इब्लीस तुझे क्या हुआ कि तू सजदा करने वालों में शामिल ना हुआ? वो बोला कि मैं ऐसा नहीं कि इस इंसान को सजदा करूं। देखिए रीजनिंग, ये भी ना शुक्रपन है कि अल्लाह के हुक्म को मानने की बजाय आगे से हुज्जतें की जाएं। उसको सजदा करूं जिसे तूने काली और सड़ी हुई खनखनाती मट्टी से पैदा किया। फरमाया, अब तो बहिश्त से निकल जा क्योंकि तू रौंदा दरगाह है और तुझ पर मेरी फिटकार है क्यामत के दिन तक। अल्लाह को ज्यादा क्वेश्चन आंसर पसंद नहीं है। नहीं मानना तो छोड़ दो, इतने सवाल जवाब क्यों करते हो कि जिसके बाद फिर अमल का वक्त ही खत्म हो जाए? हम सारी जिंदगी सवाल करते रहेंगे तो क्या अमल जाकर जन्नत में या जहन्नुम में या कब्र में करेंगे? तो मानने की खूह पैदा कीजिए। देखिएगा कि इब्लीस ने इंसान को हकीर जाना और सजदे से इनकार किया। आज के इंसान क्या करता है? क्या इब्लीसी रवैये पे है या दूसरे पे, इसको हम देख लेते हैं। आज इंसान इसी का ताबे फरमान बना बैठा है। खुद से पूछिए, अल्लाह का हुक्म सुन के मानती हूँ या सवाल करती हूँ? आज के इंसान अपने दुश्मन की पहचान न कर सका, उसी दुश्मन के गले लगा फिरता है जिसने आपको मुझे जहन्नुम में डालने और डलवाने की नियतें की हुई हैं। अगर कोई इतनी हकारत से हमें ठुकराए तो हम इसे देखना पसंद न करें और शैतान को हमने अपना दोस्त बना लिया। अल्लाह हमारी आंखें खोल दे तो ये ना शुक्रापन है। शैतान की मानना, रहमान की झुठला देना, ये ना शुक्री की बात है। हय्या अलैस सलाह की बात पे नमाज के लिए ना आना और शैतान के कहने पे उसी कामों में खोए रहना, ये ना शुक्रापन है। और हय्या अलल फलाह की पुकार की बजाय टस से मस ना होना कोई फल नेकी के मौके पे और गलत चीजों पे भागे भागे जाना, ये भी ना शुक्रापन है। कहने लगा, मेरे रब मुझे उस दिन तक के लिए ढील दे कि लोग दोबारा खड़ा किए जाएंगे। फरमाया, अच्छा तू इनमें से है जिन्हें मोहलत मिली है रोजे मुकर्रर के वक्त तक की। शैतान ने कहा, मेरे रब, नोट कीजिए, कहता मेरा रब है। अकीदा एक हद तक ठीक था लेकिन अमल बड़े बुरे हो गए चूंकि तूने मुझे गुमराह कर दिया। ये है इसकी सोच, यानी अपनी गलतियों को अल्लाह के नाम डालता है। चूंकि तूने मुझे गुमराह किया है, मुझे भी कसम है कि मैं भी जमीन में इनके लिए गुनाहों को खूबसूरत करूंगा, यानी मासी को मुजयन करूंगा और इन सब को बहकाऊंगा भी। कुछ नहीं हुआ आपको? अगर ऐसी कोई बात हमारे किसी खानदानी रिश्तेदार ने कर दी होती और खास तौर पे वो हो भी ससुराल से, तो हम तो रो रो के बुरे बन जाते। हाय हाय, देखो ये क्या कह रहे हैं मेरे बारे में। काश हमें शैतान की इन बातों पे इतना एतबार तो आ जाए जितना हमें अपने शरीके की बातों पे आता। लेकिन बचेंगे कौन? ये है असल में खूबसूरत बात कि मैं तो पूरी कोशिश करूंगा बहकाने की। इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन قال هذا صراط علي مستقيم। सिवाय तेरे इन बंदों के जो मुंतखब कर लिए गए। इरशाद हुआ कि हाँ यही मुझ तक पहुंचने की सीधी राह है। इखलास के रास्ते पे शैतान ठहर नहीं सकता। जो काम आप मुखलिस होके कर जाएंगे ना, अल्लाह ताला उसको शैतानी हर हमले और वार से बचा लेगा। वरना तो किसी वक्त शैतान ने आपसे ही लात मरवा देनी है अपने ही कामों पे। तो याद रखिए, इखलास लाएंगे तो नेमतों के ऊपर इंशाल्लाह एक स्टैंप लग जाएगी तहफ्फुज़ की। और सिराते मुस्तकीम पे चलने वालों को पकड़ाता, याद कर लीजिए वो सबीलो रुश्त और गई का तकाबुल। अच्छे काम करेंगे तभी तो शैतान आपके पीछे लगेगा, बुरे काम करने वाले को तो दूर से देखे कहते वेरी गुड, वेल डन, गुड, हाई बाय, तुम बिल्कुल वही कर रहे हो जो मैंने कराना था। जब पहली काम कर रहे हो गलत तो मैं तुम्हारे पीछे क्यों हूँ? हम कहते हैं गलत काम करने वालों के पीछे शैतान होता है, नहीं, अच्छे काम करने वालों के पीछे होता है। एक इमाम तो बिस्तरे मर्ग पे भी बेहोशियों में कही जा रहे हैं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। फिर होश आया, पानी डाला, लोगों ने पूछा अभी क्या कह रहे थे आप? कहने लगे कि मेरे पास शैतान आया था। कहने लगा, इमाम मैंने सारी जिंदगी तुझे बहकाने की कोशिश की, तू बच गया। तो मैं कह रहा था कि अभी नहीं बचा क्योंकि अभी सांस की डोरी बंधी हुई है। जब तक सांस ना निकल जाए, तेरे से बच ना जाऊं, मैं अपने ऊपर कोई मान नहीं करता। तो अपने लिए इस चीज को गोल बनाइए, कभी केयर फ्री एटीट्यूड ना रखिए, ना ऐसा बोल बोलिए, ना ऐसी चीज देखिए, ना कोई ऐसा दिल में ख्याल लाइए कि जो आपको शैतान का तरने वाला बना दे। और अल्लाह ने फिर कितने यकीन से ये बात कही होगी, इन्ना इबादी लैस लका अलैहिम सुल्तान। सीधी सी बात है, मेरे बंदों पर तुझे कोई गलबा नहीं। अल्लाह आपको अपने बंदे कह रहा है इखलास की वजह से। लेकिन हाँ, जो गुमराह लोग तेरी पैरवी करें, यकीनन इन सब के वादे की जगह जहन्नुम है जिसके 7 दरवाजे हैं। हर दरवाजे के लिए इनका एक हिस्सा बना हुआ है, 7 डोर। मुफसरीन कहते हैं कि जिस्म के 7 अज़ा हैं अमूमन, जिससे इंसान नेकी बदी कर सकता है, जिसमें ऑफ कोर्स आंख कान हाथ सब कुछ है, और कुछ स्मेल करने की चीजें। तो कहा कि इनमें से हर एक के लिए एक दरवाजा है। आंखों से गुनाह करने वाले उस आंखों के दरवाजे से चले जाएंगे, और इसी तरह सुवान कुछ जुबान के गुनाहों की वजह से होंगे। और कबायर को भी 7 दरवाजे कहा जाता है। अल्लाह ताला हमें किसी एक दरवाजे से बिना गुजरने वाला बना दे। तो किससे आदम और इबलीस हमें क्या सिखाता है, खास तौर पे आयत 42, क्या ना शुक्रे इंसान अपनी असलियत पहचान, है क्या तू सलसाले मिन हम इम मसनून, गली सड़ी काली ठीकरी की तरह की मट्टी। और ये सीखा कि शैतान का वार मुखलसीन पर नहीं चलता, और मुखलसीन ही असल में रब के शुक्रगुजार होते हैं। अल्लाह में मुखलस बना दे। ये मुखलस और मुखलिस क्या, ये आगे जाके आप सीखेंगे इंशाल्लाह, अभी इसको वेट कीजिए। फिर आप देखिए कि अल्लाह ताला का अपने बंदों के बारे में क्या दावा है, बहुत खूबसूरत दावा है। आयत 42 में, मेरे नेक बंदों पर तेरा गलबा नहीं होगा। तो नेक बंदे कौन है, जिनसे गुनाह होते ही नहीं, नहीं, जिनसे गुनाह सरजद हो जाए तो सच्ची तौबा करते हैं, मतलब भूले थे भोले नहीं बन जाते गुनाहों के नाम पे, गुनाह पर इसरार नहीं करते, और दिल में एहसास नदामत रहता है। अल्लाह ताला हमें ऐसे ही लोगों में शामिल कर दे। और जो शैतान के इन वारों से बचते बचाते अपने रब के पास पहुंच जाएंगे, अब उनके पास क्या कुछ नेमतें होंगी। इन्नल मुत्तकीन फी जन्नातिन व उयून, परहेजगार जन्नती लोग बागों और चश्मों में होंगे। इनसे कहा जाएगा सलामती और अमन के साथ इसमें दाखिल हो जाओ। इनके दिलों में जो कुछ रंजिश और कीना था, हम सब कुछ निकाल देंगे। वो भाई भाई बने हुए एक दूसरे के आमने सामने तख्तों पर बैठे होंगे। नाशुक्री की एक बहुत बड़ी चीज कीना है। बस वो साथ काम करने वालों के लिए दिल में खोट होता है, रंजिश कीना, और वो नेकी बर्बाद गुना लाजिम ना बन जाए। बस वो शोहर बीवी में हो जाता है, मुझे अच्छी नहीं लगती, ये मुझे अच्छे नहीं लगते। अल्लाह जन्नत में ले जाने से पहले वो सारी चीजें निकाल देंगे। तो आज दुनिया में दिलों से गिल निकाल दीजिए। अगर किसी की बात अच्छी भी ना लगे तो कोई बात नहीं, मेरे माविन तो है ना, इनकी वजह से मुझे ये मौका तो मिला ना। चले गलत काम करते हैं तो अच्छे काम भी तो कितने करते हैं ना। तो याद रखिए, ये पॉजिटिविटी बीइंग थैंकफुल है। इसके बरक्स किसी की छोटी सी बात पे सर से पांव तक आग लग जाना, और आप अच्छे भले चल रहे होते हैं, जरा सी बात ले जाइए मैं नहीं कर सकती, ये गलत तरीका है। मैं इस वक्त अपने ऊपर लेकर आपको एक बात समझा दूं। देखिए, आप सब इस वक्त अल्लाह की रहमत से मुझे इस किताब को पढ़ाने का मौका दे रहे हैं, मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। बिलीव मी, आप सब जो इस वक्त बैठे हैं पुरसकून अपनी जगहों पे, सुनने वाले और सुनवाने वाले, और इससे पीछे के मराहिल तय करके यहां तक पहुंचाने वाले, मैं दिल दिमाग शऊर के साथ आपकी शुक्रगुजार हूँ। आपने मुझे मौका दिया। मैं नूरुल कुरान प्लेटफॉर्म की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस छोटी सी नेकी का मौका दिया, और आगे जाकर हम सब अगर इस पे अमल कर लेंगे तो ये छोटी सी नेकी बहुत बड़ी नेकी में ढल जाएगी। तो अल्लाह ताला हमें शुक्रगुजार बना दे। जन्नत में क्या कुछ मिलेगा ऐसे लोगों को, ला यमस्सुहुम फीहा नसबुम वमा हुम मिन्हा बिमुखरजीन, ना तो वहां इन्हें कोई तकलीफ छू सकती है, और ना वो वहां से कभी निकाले जाएंगे। मैं इस जुमले को बहुत सोचती हूँ, क्योंकि जिंदगी में सफर बहुत रहा। ये तो पिछले 2-2.5 महीने या पता नहीं 1 महीना गुजरा, कितना लॉकडाउन की वजह से एक ही जगह रहने की आदत हो गई है। और यकीन करे, कोई मुझसे पूछे कि इसमें क्या नेमते हैं, क्या खैर है, अल्लाह खैर के साथ इसको पूरा करे, मैं ये नहीं कहती कि यही रहे। लेकिन जन्नत में जाने के बाद आप परमानेंट होम में आ गए, यकीन कीजिए ऐसी ट्रेवलिंग जिंदगी में की है कि कभी बैग मेरा हाथ से छुटा ही नहीं। जब जाते हैं तब भी पता होता है वापस कितने दिन में आना है, क्योंकि जब मैं पिछला पूरा साल देखूं तो वीक डेज नॉर्वे में हैं तो वीकेंड्स बाहर थे, गर्मियां इधर हैं तो सर्दियां उधर हैं, मेरा हैंड कैरी कभी भी बंद नहीं हुआ, और इस वक्त भी मेरे पीछे है। जरूरत ही नहीं पड़ती, घर में भी उतना ही है जितना बैग में है। और अभी फिर कहीं जाना है, कहाँ पैकिंग की अभी की नहीं, नहीं कोई जरूरत नहीं, बस देखा खोला सीधा किया, वही कपड़े उठाकर ले गए जो पिछले शहर में पहने थे वो दूसरे में पहन लिए, मौसम का कोई फर्क है तो 19-20 किया। मेरे लिए ये एहसास एक वाकई जन्नत नुमा एहसास है। क्या आप किसी अलमारी में अपने कपड़े लगा दें और आप यहां से निकलने नहीं। देखिए, मजा तो इसका अपना है, इसमें कोई शक नहीं। चीजें अपनी जगह पे ना हो, ना खाना पकता है मुझसे, ना मुझसे कोई काम होता है। जिस दिन चीजें सारी ठीक होती हैं, मसला क्या के करूं क्यों, जिस दिन ठीक करनी है उसी दिन फिर अगली पैकिंग करनी है। बोलिए, सुनी हुई है बेसियों बार की हदीस, कुन फि दुनिया का न का गरीब नवा बेरे सबील। अल्लाह के नबी फरमा गए कि दुनिया में इस तरह जियो जैसे तुम अजनबी हो, स्ट्रेंजर, जिसे कोई जानता ही नहीं। क्या करना है अच्छे कपड़े पहन के किसी ने, कोई मुझे जानता ही नहीं। क्या करना है घर में सोफा रख के, कोई आने वाला तो है ही नहीं है। और आप मेरे सबीर ट्रांजिट पैसेंजर, आप अमेरिका से निकले, दुबई में स्टॉप लिया, वहां से आपने इंडिया जाना है, बांग्लादेश जाना है, अपने पाकिस्तान जाना है। कौन दुबई स्टेशन पे बड़े बड़े बैग लेके फिरे, जाने दीजिए। चंद घंटे की बात है, हैंड फ्री रखिए। ये है वो इस दुनिया में खुश रहने की बात। तो अल्लाह ताला ने वहां जुमला बोल दिया, मेरा तो दिल खिल गया इस जुमले पे। आप तो शायद कभी इस पे गौर भी ना करें अगर आपने ट्रैवलिंग ना की हो, कि वो वहां से कभी निकाले ना जाएंगे। किसी मुल्क में जाकर मैंने, जैसे गर्मियों में पिछले 2 साल से पाकिस्तान जाते रहे, तो मैं सोचूं अच्छा यहाँ आप ये इतने दिन रहना है, लेकिन वो भी कहाँ रहना है। आप एक शहर में, आप लाहौर में अभी सामान नहीं खोला तो जोहराबाद के चक्कर शुरू हुए। यकीन करें पिछले साल में जितने लाहौर और जोहराबाद के चक्कर अल्लाह ने लगवाए, रातों के सफर, दिन की क्लासेस, और पूरा पाकिस्तान इधर उधर से बड़े बड़े शहरों में घूमा, फिर वहां भी यही कैफियत थी। किसी जगह जाकर अगर मुझे ये लगे कि मैंने यहाँ 1 वीक रहना है, यकीन करें मुझे ऐसे लगता था कि ये जन्नत है। अच्छा 8 दिन तक अब चीजें मेरी हैं, फिर अब मैं खोल लेती हूँ। तो दुनिया में इस तरह गुजर चाहिए, अल्लाह रियाकारी दिखावे से बचाए। मकसद सिर्फ आपको रग़बत दिलाना था, वरना अपनी ज़ात से तो कुछ भी नहीं है। आज दुनिया में थोड़े से अपसेट हो जाइए, फिर वहां आप कभी नहीं निकालेंगे। उसके ऊपर अपने नाम की प्लेटें लगवाइएगा, दिस इज माई होम, मैं ओनर। जो किरायों पर रहते हैं उनसे ही पूछ लिए, वो भी इसकी बड़ी अच्छी मिसाल दे देंगे। लोग कहते हैं घर अपना घर, ठिकाना अपना होना चाहिए। कौन हर साल घर बदले, अपना घर है, छोटी भी है बड़ी भी है, कोई बात नहीं, कोई झोंपड़ी भी अपनी तो है। तो अल्लाह कहता है ये है तुम्हारा होम लैंड, तुम्हारा मैका, तुम्हारे माँ बाप का घर। और जो रिलैक्सेशन होती है ना इन नामों से, वो आप फील कर रहे होंगे। करें क्या, अल्लाह पे नजरें रखें, और साथ ही साथ देखिए अल्लाह अपने बंदों के फिर लाड क्या देखता है। तुम आ गए हो इधर, देखो मैंने जाने नहीं देना, कोई बहुत प्यार करे ना आपसे तो आते के, तो मैंने तो नहीं अब आपको जाने देना। कब की टिकट कराई है, नहीं, मैंने नहीं जाने देना। हाँ अल्लाह तला कहते मैंने जन्नती हो, अब तुम्हें जन्नत में बुलाने के बाद यहां से जाने नहीं देना। तो अपनी जिंदगी से अल्लाह की बात को ना निकलने दें, तो कल अल्लाह आपको और मुझे भी ये कहेगा। और साथ ही जरा खबर तो सुनिए, हाईलाइट कर लें शायद को अरबी में, नब्बे वादी अन्नी अनल गफूर रहीम। आप तो खुश हो गए, मेरे बंदों को खबर दे दो कि मैं बहुत बख्शने वाला और बड़ा मेहरबान हूं। अंदर से दिल खिला, लेकिन साथ ही एक रोक लग गई, वन आजाबी हुवल अजाबुल अलीम, और साथ ही मेरे अजाब भी बहुत सख्त यानी बहुत दर्दनाक हैं। तो अल्लाह ताला की हर खूबी एक्सट्रीम पे है, अल्लाह हमसे पहले वाला मामला करते। अपने लिए दुआ करें, अपने प्यारों के लिए भी दुआ करें, सभी के लिए कर लें कि अल्लाह तो हमारे लिए गफूर रहीम बनना, हमें अजाबुल अलीम का शिकार ना करना। और अब एक ऐसे मुखलस का जिक्र आ गया, कैसे लगता है कि कोई पारा इस नाम के बगैर पूरा ही नहीं होता। पिछले पारे में तो सूरत पढ़ के आ गए इस नाम की, व नब्बे हुमन दईफ इब्राहिम, इन्हें इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मेहमानों का भी हाल सुना दो। कौन से मेहमान थे, फरिश्ते थे, जो अल्लाह ने अपने खलील के घर में भेजे, और इतने ज्यादा मेहमान नवाज थे कि उनके लिए बछड़ा भूल कर ला रहे हैं। क्या हो रहा है ये तो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ इन आयतों पर जरा सा तवज्जो कर दीजिए। अल्लाह तला की तो दो सिफात है ही ना, बख्शने वाला भी है, रहीम भी, और दर्दनाक अजाब देने वाला। करें क्या, हमसे क्या मतलूब है, दिलों से कीने निकाल दीजिए, रंजिशें निकाल दीजिए, और जन्नत को पाने के लिए नेक अमाल कीजिए। देखिएगा जन्नत दूर नहीं है। अब सुनिए कि फरिश्ते क्या कहते हैं। फरिश्तों का जुमला, कालू ला तउजल इन्ना नुबश्शिरु कभी गुलाम अलीम, कि जब उन्होंने इनके पास आकर सलाम कहा तो उन्होंने कहा हमको तो तुमसे डर लगता है। उन्होंने कहा डरो नहीं, हम तुझे एक साहिब इल्म फरजंद की बशारत देते हैं। अरब लोगों में भी यही रिवाज था कि जब कोई मेहमान खाना न खाता तो या तो वो दुश्मनी की नीयत से आता या बुरी खबर लेकर आता। वही अंदाज इधर इख्तियार किया गया। कहा क्या इस बुढ़ापे के आ जाने के बाद तुम मुझे खुशखबरी देते हो, ये खुशखबरी तुम कैसे दे रहे हो। अनएक्सपेक्टेड खुशी थी। तो क्या पता चला, इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुढ़ापे में खुशी की बात सुनकर शुक्रगुजार बन गए। तो शुक्रगुजार से अल्लाह के क्या वादे हैं, लाइन शकर तुम लाजीदन्नकुम, अल्लाह तला के इनामात की फरावानी होती है ऐसे शख्स पे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शुक्रगुजारी की वजह से अल्लाह तला का इनको मुंतखब करना कि औलाद की खुशखबरी सुनकर एकदम, जिसको कहना चाहिए कि ह्यूमनली बिहेव करते हैं। ये कैसे हो सकता है कि मेरा बच्चा हो और मैं तो ऐसे, और वो कोई अल्लाह ना करे ना शुक्री नहीं थी, लेकिन वो बस एक फौरी फौरी जो रिएक्शन था, तो अल्लाह ताला ने फरमाया फरिश्तों के जरिए, उन्होंने कहा हम आपको बिल्कुल सच्ची खुशखबरी सुनाते हैं, आप मायूस लोगों में शामिल ना हो। कहा अपने रब्बे ताला की रहमत से नाउमीद तो सिर्फ गुमराह और बहके हुए लोग ही होते हैं। पूछा कि अल्लाह के भेजे हुए फरिश्तो, तुम्हारा ऐसा क्या अहम काम है? उन्होंने जवाब दिया, हम मुजरिम कौम की तरफ भेजे गए हैं। यहाँ नोट कीजिएगा, लूतियत के फेल को जुर्म करार दिया गया और लिवातत करने वालों को मुजरिम यानी क्रिमिनल्स कहा गया। तो क्या पता चलता है, आयत 56 से देखिएगा, नाशुक्री का सफर गुमराही का सफर बन जाता है। सबसे पहले एक इंसान नाशुक्रा होता है ही नहीं, मिला ही कुछ नहीं, है ही इच्छा नहीं। उसके बाद अगली स्टेज आती है डिप्रेशन की, जिसको दूसरे लफ्जों में कह दें कि अल्लाह ताला की रहमत से मायूसी है। और फिर उसके बाद ना चाहते हुए भी इंसान गुमराही पे चला जाता है, रास्ते ही गुम जाते हैं नाशुक्रे बंदे से, ना बंदों से खुश ना रब से खुश। इसके बरक्स अंबिया कराम ऐसे नहीं थे, जिनका जिक्र है आगे भी, इल्ला लूत निन्ना लमुनज्जूहुम अजमाइन, मगर खानदाने लूत को हम इनको जरूर बचा लेंगे, सिवाय इसके यानी लूत अलैहिस्सलाम की बीवी के हमने इसे रुकने और बाकी रह जाने वालों में मुकर्रर कर दिया, यानी इस पे भी अजाब आया। जब भेजे हुए फरिश्ते आले लूत के पास पहुंचे, तो उन्होंने लूत अलैहिस्सलाम से कहा, तुम लोग तो कुछ अनजान मालूम हो रहे हो। उन्होंने कहा, नहीं बल्कि हम तेरे पास वो चीज लाए हैं जिसमें ये लोग शुबा कर रहे हैं, हम तेरे पास सरी हक लेकर आ गए हैं और हैं भी बिल्कुल सच्चे। अब तो अपने खानदान समेत इस रात के किसी हिस्से में चल दे और आप इनके पीछे रहना, और खबरदार तुम में से कोई पीछे मुड़कर भी न देखे, और जहां का तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है वहां चले जाना। और हमने उसकी तरफ इस बात का फैसला कर दिया कि सुबह होते होते इन लोगों की जड़ें काट दी जाएंगी। बड़ी तरक्की पे नाज था इनको, बड़े ह्यूमन राइट्स के दावेदार थे, सुबह इनकी जड़ें कट चुकी होंगी। और जब अल्लाह की पकड़ आती है तो ऐसे ही होता है। और शहर वाले खुशियां मनाते हुए आए। लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, ये लोग मेरे मेहमान हैं, अल्लाह ताला से डरो और मुझे रुसवा न करो। वो बोले, क्या हमने तुझे दुनिया भर की ठेकेदारी से मना नहीं कर रखा? यानी इतने नेक बनने की जरूरत नहीं, हम तो अपनी मस्ती में हैं, अपनी ख्वाहिशें तो हम पूरी करेंगे। लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर तुम्हें करना ही है तो ये मेरी बच्चियां मौजूद हैं, क्या करना है? निकाह करना है। तेरी उम्र की कसम, वो तो अपनी बदमस्ती में सरगर्दां थे, पर सूरज निकलते निकलते ने एक बड़े जोर की आवाज ने पकड़ लिया। बिलाखिर हमने इस शहर को ऊपर तले कर दिया। ये चीज नोट करने की है, मोतफिकात बस्तियां उलट गई थी इस कौम की, अप साइड डाउन हो गई और डाउन साइड अप पे चली गई, यानी छत फर्श और फर्श छत बन गया इस कौम का। दूसरी सजा, और इन लोगों पर कंकर वाले पत्थर बरसाए। बिलाशुबा बसीरत वालों के लिए इसमें बहुत सी निशानियां हैं। ये बस्ती ऐसी राह पर है जो बराबर चलती रहती है, मुराद एक आम गुजरगाह है, और इसमें ईमानदारों के लिए बड़ी निशानी है। मक्का वाले अपने तिजारती सफरों में कौमे लूत की बस्तियों के पास से गुजरते थे, इसी की तरफ यहाँ इशारा किया गया। तो क्या बताया गया कि जब ऐसी गंदी और खराब चीजें किसी कौम में आती हैं तो अल्लाह ताला उसको उल्टा देते हैं। मुफस्सरीन इस आयत पे भी यही कहते हैं कि आज भी जो ऐसा गंदा फेल करेगा उसकी अकल भी मारी जाएगी और उसकी जिंदगी का सारा स्टाइल गुम जाएगा। आज भी देखिए, जिन लोगों में ये कुछ है उनकी जिंदगी बिल्कुल बेकार होती है, ना उनको बीवी से सरोकार ना काम से सरोकार, क्योंकि अकल जो उल्टी होगी। आज भी जरा आप सर नीचे और टांगे ऊपर करके देखिए तो आपको क्या नजर आएगा? कल तक तो इस चीज का तसव्वुर नहीं था, आज कवानीन बन गए इनके हक में, लीगलाइज कर दिया गया इसको, मॉरली भी और कानूनी तौर पे भी और मजहबी तौर पे। लोग चर्चेस में जा जाकर ऐसी गलत चीजें करते हैं, कन्फेस करते हैं। तो क्या पता चला कि अल्लाह मत मार देता ऐसा काम करने वालों की। अल्लाह ताला हमारी नस्लों को इससे बचा के रखे। यासी का 78 से 95 में, गफलत में खोई भी कौम और अल्लाह का बार बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देना। मक्का वाले वाकई गफलत में थे। कुरान पाक की हिफाजत का जिम्मा खुद अल्लाह सुबहाना ताला ने लिया। सितारे आसमाने दुनिया की खूबसूरती का जरिया हैं, किस्मत का हाल जानने के लिए नहीं। बुराई को खुशनुमा बनाकर पेश करना शैतान का शैतानी हरबा है। कुरान जैसी अजीम नेमत से फायदा ना उठाना इंसान की बहुत बड़ी नाशुक्री है। इन्हीं कौमों में से एक और कौम की नाशुक्रियों का जिक्र, जिसकी तरफ भी अल्लाह ने नबियों को भेजा और इनको पैगाम दिया गया, वह इन कान असहाबुल अय्कतिल ज़ालिमीन, एका बस्ती के रहने वाले भी बड़े जालिम थे। या जंगल को कहते हैं या बड़े दरख्त को कहते हैं, ये खास बस्ती थी। बाज कहते हैं कि नहीं, ये उन्हीं कौमों में से किसी एक कौम का दूसरा नाम है, जिनसे आखिर हमने इंतकाम ले ही लिया, ये दोनों शहर खुले आम रास्ते पर हैं, यानी अल्लाह ने इनको निशाने इबरत बना दिया। और हिजर वालों ने भी रसूलों को झुटलाया, इस पे सूरत का नाम है, और जिन्हें हमने अपनी निशानियां भी अता फरमाई, लेकिन ताहम वो इनसे रूगरदानी ही करते रहे। ये लोग पहाड़ों को तराश तराश कर घर बनाते थे बेखौफ होकर। आखिर इन्हें भी सुबह होते होते चिंगाड़ ने आ दबोचा, बस इनकी किसी तदबीर और अमल ने इन्हें कोई फायदा ना दिया। ये है नशुक्री कौमें जिनको जमीन से या सफ़े हस्ती से मिटा दिया गया। और अब सूरत के खात्मे में मकसद हयात और इस कायनात की हर चीज पे लगी हुई अल्लाह की मोहर का जिक्र है, क्योंकि जब तक अंदर की आंखें नहीं खुलती तो ये चीजें नहीं दिखती। अल्लाह ताला ने फरमाया, वमा खलकना समावाती वल अर्द वमा बैनहुमा इल्ला बिल हक, हमने आसमान और जमीन और इनके दरमियान की सब चीजों को हक के साथ पैदा फरमाया है, और क्यामत जरूर जरूर आने वाली है, बस तू हुस्न खूबी और अच्छाई से दरगुजर कर ले। किल विद काइंडनेस, दुश्मनों के दिल जीतने का यही तरीका था, आज भी है रहेगा। यकीनन तेरा परवरदिगार ही पैदा करने वाला और जानने वाला है। यकीनन हमने आपको 7 आयतें दे रखी हैं कि वो दोहराई जाती हैं, और अजीम कुरान भी दे रखा है। आप हरगिज अपनी नजरें उस चीज की तरफ ना दौड़ाएं जिससे हमने इनमें से कई किस्म के लोगों को बहरामंद कर रखा है, ना इन पर आप अफसोस करें, और मोमिनों के लिए अपने बाजू झुकाए रखें और कह दीजिए कि मैं तो खुल्लम खुल्ला डराने वाला हूँ, जैसे कि हमने इन तकसीम करने वालों पर उतारा है। यह अल्लाह सुबहाना तआला की तरफ से एक बहुत ही खूबसूरत नसीहत कि दुनिया की चमक दमक और दूसरों की मालूमात से मुतासिर ना होना। फुलां ये सीख गया, फुलां के पास ये डिग्री, तुम्हारे पास कुरान की डिग्री है, तुम्हारे पास सूरह फातिहा की डिग्री है, और यहाँ सबल मसानी सूरत का नाम है। दुनिया का कोई डॉक्यूमेंट इतना नहीं पढ़ा जाता जितनी सूरत अल फातिहा पढ़ी जाती है। कुरान अजीम और सबल मसानी जैसी नेमतों पे गौर करना है, और इन नेमतों की शुक्रगुजारी करनी है, और सूरत फातिहा का तो मजमून ही शुक्रगुजारी है। तो नाशुक्रापन खत्म करने के लिए सूरत फातिहा पे गौर कीजिए, और वहां से शुरू कीजिए कुरान का सफर, और सूरत नास पे पूरा कीजिए। इसके बरक्स कुछ लोग नाकदरी करते हैं इस कुरान की। ये कुरान पाक की नाकदरी की एक किस्म है, जरा सा देखिए कि वो क्या कर देते हैं इस किताब के साथ। सारा कुरान नहीं पढ़ते पढ़ाते, बल्कि अल्लज़ी जालुल कुरान इज़ीन, जिन्होंने इस किताब इलाही के टुकड़े टुकड़े कर दिए। पढ़ते हैं तो सिर्फ पंसूरा या चंद इधर उधर की और चीजें, और अमल करते हैं तो फतूह में नूना विवाद दिल किताब व तकफुरूना विवाद पे, टुकड़ों में बट जाता है वो गिरोह इंसानों का जो पूरी किताब को छोड़कर चंद लोगों की लिखी पढ़ी किताबों को आगे लेके चल पड़े। कसम है तेरे पालने वाले कि हम इन सब से जरूर बाज पुरस करेंगे हर चीज की जो वो करते थे, बस आप इस हुक्म को जो आपको किया जा रहा है खोल कर सुना दीजिए और मुशरिकों से मुंह फेर लीजिए, यानी दीन का पैगाम क्लैरिटी के साथ दीजिए। आपसे जो लोग मसखरापन करते हैं इनकी सजा के लिए हम काफी हैं। जो अल्लाह के साथ दूसरे माबूद मुकर्रर करते हैं इन्हें अनकरीब मालूम हो जाएगा। हमें खूब इल्म है कि इनकी बातों से आपका दिल तंग होता है, कि इनकी बातों से जिनके सामने इतने सच्चे दिल से इतने खूबसूरत अंदाज से अल्लाह का कलाम रखते थे फिर भी नहीं वो मानते थे, फिर भी उनके दिल नहीं खिलते थे, तो दिल तो तंग होना था, बशरियत का तकाजा है। आप अपने परवरदिगार की तस्बीह और हम्द बयान करते रहें और सजदा करने वालों में शामिल हो जाएं, और अपने रब की इबादत करते रहें यहां तक कि आपको मौत आ जाए, यानी आखिरी दम तक इतात, आखिरी वक्त तक इतात। और याद रखिए कि जब लोगों की बातें इतना दुख दें कि दिमाग फटने लगे तो इस सर को जमीन पर रख दीजिए, सारे बोझ गिर जाएंगे। तबलीग दावत या अमली जिंदगी में कोई दुख सतमा इतना सताने लगे कि आपका दिमाग खराब हो रहा है, आपको माइग्रेन हो रहा है, जाके सर जमीन पर रख के रो धो लीजिए, अल्लाह ताला आसान करेंगे। तो देखिएगा आखिरी आयतों में दावत इल्लाह के दौरान आने वाली मुश्किलात पर क्या करना है। हम तो छोटी सी चीज पे इतने स्टबन हो जाते हैं, नहीं मेरा तो दिमाग खोल रहा है, उन्होंने मुझे क्या कह दिया, मुझे क्या समझा, भाई छोड़ दीजिए, आप क्यों इतना अपने आप को परेशान करते हैं इनकी बातों पे। दिल दिमाग सर रब के आगे झुका दीजिए, वो आपको थाम लेगा। तो क्या करना है जरा देखिएगा, तकलीफ दे बातों पे सब्र, अल्लाह की हम तस्बीह और मौत तक बंदगी, हत्ता याती अकल यकीन, बस आखिरी दिन तक अल्लाह के आगे झुके रहें, उसके बाद फिर अल्लाह जाने और उसके बंदे। तो सूरत हिजर आपने देख ही लिया, कितनी खूबसूरत सूरत थी। बज़ाहर मैं समझी कि बहुत जल्दी हो जाएगी क्योंकि इसमें कोई अहकाम नहीं होते अमूमन, लेकिन बात हो अल्लाह की और कायनात पे गौर की और ना शुक्रिया और शुक्र की, तो ये नहीं हो सकता कि इंसान ऐसे ही गुजर जाए। अगली सूरत नहल है, जिसको सूरत नेम भी कहते हैं, नेमतों वाली सूरत। और हर साल ही शायद मैं ये जुमले बोलती हूँ कि इसको पढ़ते वक्त आपको ऐसे लगेगा कि आप एक बड़ी खूबसूरत सी ट्रेन में बैठे हुए हैं और बड़ी सी विंडो में से बाहर मुस्तकिल मंजर बदलते जा रहे हैं। कभी आपने विद इन यूरोप सफर किया हो तो आप मेरी बात को एंजॉय करेंगे। कहीं सब्स पहाड़ है और उस पे सफेद छोटी छोटी शीप फिर रही हैं, और कहीं सब्ज पीले नीले खट्टे कितने रंगों के फल फूल और दरख्त हैं। और इसी तरह से कभी तेज वादियों से गुजरती हुई और कभी बस्तियों से गुजरती हुई, बिल्कुल सूरत नाहल एक टूर है कायनात का। शर्त एक है कि शुक्रगुजारी के ग्लासेस लगा लीजिए आंखों पे, तो इंशाल्लाह ताला आपका दिल गवाही देगा कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ताला एक है, उसी ने कायनात को बनाया है। और इसी पे गौर व फिक्र करते करते हम इंशाल्लाह आगे से आगे बढ़ते ही जाएंगे। आइए इसको देखते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इसका हक अदा करने की तौफीक दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अता अम्रुल्लाहि फला तस्ताजिलूह, सुभानहू व तआला अम्मा युश्रिकून। आप देखेंगे कि इसकी शुरू की 30 आयतों में इबादत में गफलत इंसान की बहुत बड़ी नाशुक्री है। ये चीजें देखिए, ये बोझल तो लगती होंगी आपको, लेकिन इससे आपका फोकस करीब हो जाता है। बस जब हम कहते हैं तर्जमा ही पढ़ा जा रहा है, चले जाके जरा मैं प्याज छील लूं, अच्छा जरा जाके धनिया काट लूं, अच्छा मैं जरा फ्रिज में से गोश्त निकालू, नहीं, ये जो आयतें हम पढ़ने लगे हैं ना, इन आयतों में जो आपने मैंने सीखना है ना, उस पर गौर कीजिए। इबादत में गफलत इंसान की बहुत बड़ी नाशुक्री है। अल्लाह ताला की पैदा करदा नेमतों का इल्म ना रखना एक बहुत बड़ी नाशुक्री है। आबी खजानों यानी समंदरों में छुपे हुए जखीरों से फायदा ना उठाना इंसान की नाशुक्री की दलील है। शिर्क में मुबतला होकर अल्लाह की वाहदानियत से इनकार करना और अल्लाह की नाशुक्री करना है। और कुरान पाक में खैर ही खैर और हिदायत है, कुरान के इल्म से महरूम रहकर इंसान नाशुक्री का शिकार होता है। अब इस फोकस पे रहते हुए इस तर्जमे को सुनिए और अपने लिए दुआएं कीजिए। अता अम्रुल्लाह, जिस बात पे सूरत हिजर खत्म थी उसी पे ये सूरत शुरू होती है। अल्लाह ताला का हुक्म आ पहुंचा, अब इसकी जल्दी न मचाओ, तमाम पाकी उसके लिए है, वो बरतर है इन सब से जिन्हें ये अल्लाह के नजदीक शरीक बतलाते हैं। वही फरिश्तों को अपनी वही देकर अपने हुक्म से अपने बंदों में से जिस पर चाहता है उतारता है कि तुम लोगों को आगाह कर दो कि मेरे सिवा और कोई माबूद नहीं, बस तुम मुझसे डरो। तो किसको रसूल बनाना, नबी बनाना, किससे दीन का काम लेना ना लेना, ये अल्लाह के फैसले हैं बंदे के नहीं। इसी ने आसमान और जमीन को हक के साथ पैदा किया, मकसद हयात वो इससे बरी है जो मुशरिक करते हैं। इसने इंसान को नुतफे से पैदा किया, फिर वो सरीख झगड़ालू बन बैठा। इसी ने चौपाए पैदा किए जिनमें तुम्हारे लिए गर्म लिबास हैं और भी बहुत से नफे वाली चीजें हैं, और बस तुम्हारे खाने के काम आते हैं लैम और सब कुछ, खाने पीने को नोट करते रहे। और इनमें तुम्हारी रौनक भी है, जब चरा कर लाओ तब भी और जब चराने के लिए ले जाओ तब भी, यानी गेजिंग। आप देखिए कितना हसीन वक्त होता है ना, जब जानवरों को निकाला जाता है बाहर, वो पहाड़ों पे जाते हैं और चरते, बिल्कुल आपको वो मंजर दिखाए जा रहे हैं। और वो तुम्हारे बोझ इन शहरों तक उठा ले जाते हैं जहां तुम बगैर आदि जान किए पहुंच ही नहीं सकते थे। आज भी कई जगह ऐसी है जहां सिर्फ खच्चर और घोड़े ही पहुंचते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां वहां नहीं जा सकती। यकीनन तुम्हारा रब बड़ा शफीक और नहायत मेहरबान है। घोड़ों को, खच्चरों को, गधों को इसने पैदा किया कि तुम इनकी सवारी लो, और वो बायस से जीनत भी हैं, और वो और भी बहुत सी ऐसी चीजें पैदा करता है जिनका तुम्हें इल्म नहीं। अल्लाह के नबी के दौर में इस आयत से सहाबा क्या समझे होंगे, पता नहीं क्या होगा, क्योंकि या तो वो ऊंट पे सवार होते थे या घोड़ों पे, और इसी तरह से उनको क्या पता कि मोटरसाइकिल भी एक चीज होती है, गाड़ी, जहाज, हेलीकॉप्टर्स और दिस एंड दैट। तो इसमें आज के दौर की इजादात हैं जिसको इंसान सफर के लिए इस्तेमाल करता है। तो जो ये सब कुछ बना दे तो बताओ क्या फिर उसने हिदायत का रास्ता अपने हाथ में नहीं रखा कि वो तुम्हें बताए? तो कहा और अल्लाह पर सीधी राह का बता देना है, और बस रेडी रहे हैं, और अगर वो चाहता तो तुम सबको राह रास्त पर लगा देता। अल्लाह ताला ने जो काम अपने हाथ में रखे ना, उसमें से एक हिदायत देना भी रखा है। आपको मुझे कभी कोई हिदायत के रास्ते पे चलने ना देता आज तक भी, और ना कल, अगर अल्लाह ना थामता। तभी तो आप कहते हैं दीन सिरातल मुस्तकीम, تو اللہ کے کاموں میں سے ایک بہت بڑا کام اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت جو آپ کے میرے پاس ہے وہ نعمت ہدایت ہے. دعا کیجیے اللہ اس ہدایت کو کبھی نہ چھیننا, اور جتنی اس کی قدر کریں گے, شکر گزاری کریں گے, اتنی یہ سیکیورڈ ہوگی. اور آج چھوڑیے ہدایت, پھر دیکھیے کیا ہوگا. وہاں بندہ گرتا جہاں کبھی سوچا بھی نہیں. وہی تمہارے فائدے کے لیے آسمان سے پانی برساتا ہے جسے تم پیتے بھی ہو, اور اسی سے اگے ہوئے درختوں سے تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو. اسی سے وہ تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے. بے شک ان لوگوں کے لیے تو اس میں بڑی نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں. تو غور و فکر کیجئے. سیر کرنا, واک کرنا, گھومنا پھرنا بہت پیارا عمل ہے, شرط ایک ہے کہ ساتھ غور و فکر ہو. اور اگر ہیڈ فونز پہ کچھ اور ہی سن رہے ہیں اور آنکھیں جو ہیں راستے میں پھر اسکرینوں پہ ہی ہیں, تو آپ باہر بھی نہیں کچھ دیکھیں گے اور اندر سے بھی کچھ نہیں دکھے گا. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ, اسی نے رات دن اور سورج چاند کو تمہارے لیے تابع کر دیا, اور ستارے بھی اسی کے حکم کے ماتحت ہیں. یقیناً اس میں عقل مند لوگوں کے لیے کئی ایک نشانیاں موجود ہیں, اور وہ بھی بہت سی چیزیں طرح طرح کے رنگ روپ کی اس نے تمہارے لیے زمین پر پھیلا رکھی ہے. بے شک نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی بھاری نشانی ہے. غور کر رہے ہیں, تدبر ساتھ ساتھ ہے. ورنہ تو اب دیکھیے, ایک مومن بھی کائنات سے گزرتا ہے اور ایک کافر بھی گزرتا ہے, فرق کیا ہے؟ وہ اسی میں کھو جاتا ہے, لیکن مومن اس سے اوپر اس بنانے والے تک پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ سبحانک ما خلقت ھذا باطلا. اب تھوڑی سی آپ کو دریا کی یا سمندر کی سیر کرائی جا رہی ہے اور سی فوڈز دکھائے جا رہے ہیں. وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا, اور دریا بھی اس نے تمہارے بس میں کر دیے ہیں کہ تم اس سے نکلا ہوا تازہ گوشت کھاؤ اور اس میں سے اپنے پہننے کے زیورات نکال سکو. دیکھیے زیورات پہننے کے ہوتے ہیں. اگر یہ پہن نہیں سکتے تو پھر آپ اس کو کیا کریں گے؟ ہانڈیاں اور توے تو نہیں سونے چاندی کے بنتے. اور اللہ نے کتنے پیار سے ان چیزوں کا ذکر یہاں لا کر بتا دیا کہ فطرت کے ساتھ جینے والا ہی شکر گزار ہے. سب چھوڑ چھاڑ کے بیٹھنے والا بھی نہ شکرا ہوتا ہے کبھی کبھی. اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں پانی چیرتی بھی چلتی ہیں, اور اس لیے بھی کہ تم اس کا فضل تلاش کرو, اور ہو سکتا ہے کہ تم شکر گزاری بھی کرو. بول دیجئے نا, جی اللہ تعالیٰ اب ہم شکر گزاری کریں گے. ہم جب بھی کبھی سیر پہ جائیں گے تو ہم رستے میں نافرمانیاں نہیں کریں گے, غلط چیزیں نہ سنیں گے اور نہ دیکھیں گے, اور ایک ایک چیز کے اوپر آپ کی بتائی ہوئی ہدایات کے مطابق غور و فکر کریں گے. وَالْقَافِلَ الْأَرْضِ رَوَاسِشَ, اور اس نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے تاکہ تمہیں ہلا نہ دے, اور نہریں اور راہیں بنا دیں تاکہ تم منزل مقصود کو پہنچو. سوچیے اگر کائنات بالکل ایک پلین میدان ہوتی, نہ اونچی نہ نیچی, نہ پانی نہ کچھ, تو ہم کدھر ہوتے؟ وانڈر بلائنڈلی نہ ہو جاتے, ادھر سے ادھر کھوئے رہتے اور پتہ نہیں جانا کدھر ہے. یہ راستے بھی کتنی بڑی نعمت ہے, یہ سواریاں بھی کتنی بڑی نعمت ہیں. اس پہ غور و فکر کرنے سے انسان حقیقت میں اپنے آپ کو اللہ کے قریب پاتا ہے. اور بھی بہت سی نشانیاں مقرر فرمائیں, اور ستاروں سے بھی لوگ راہ حاصل کرتے ہیں, تو کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اس جیسا ہے جو پیدا نہیں کر سکتا؟ کیا تم بالکل بھی نہیں سوچتے؟ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو تم اسے نہیں کر سکتے. بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے, اور جو کچھ تم چھپاؤ اور ظاہر کرو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. چلیے ذرا اس آیت پہ غور کرتے ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, سچ بتائیے کیا ہم نعمتوں کو گن سکتے ہیں؟ کاغذ قلم دے کر بٹھا دیا جائے نا لکھو, تو نظر کمزور جس کی ہوگی نا وہ کہے گا ہے ہی کچھ نہیں, بس آنکھیں ہیں کان ہیں, آنکھیں بھی چھوٹی ہیں, کان اتنے بڑے بنا دیے, بندے بھی نہیں اچھے لگتے, ہونٹ اتنے چوڑے کر دیے, اور پلکیں تو میری اتنی چھوٹی. یہ نا شکرا بندہ ہوتا ہے, دیکھے کتنے پمپل ڈال دیے, آئینہ دیکھنے کو دل نہیں کرتا. وہ فلاں کو دیکھے, بہن کو دیکھے, میری دوست کو دیکھے, نہ شکرا پانا ہے. نعمتوں پہ نظر کس کی لگانی ہے؟ شکر کے گلاسز بھری. نعمتوں کی تین اقسام ہے. امام ابن قیم رحمہ اللہ کا ایک قول دیکھے گا, حاصل شدہ نعمت جس کا بندے کو علم بھی ہو, یہ بھی نعمت ہے. اور عموماً ہم جو چیز حاصل کر لیتے ہیں اسی کو نعمت سمجھتے ہیں. پھر ملنے والی نعمت جس کی وہ امید رکھتا ہے, مثلا بچہ بھی آیا نہیں دنیا میں آنے والا, اور وہ نعمت جو موجود ہوتی ہے مگر اس کا اسے شعور نہیں ہوتا. آج اس نعمت کو ڈھونڈیے گا. ایک لسٹ اسٹوڈینٹس کے ساتھ تیار کرنا چاہتی ہوں. آج سے وہ چیزیں نوٹ کیجئے جن کو آپ نے کبھی نوٹ ہی نہیں کیا کہ یہ بھی نعمت ہے. ایک دانت دیکھیے گا آپ کے لیے نعمت ہے. اگر دانت نہ ہوتے تو یہ مزے مزے کے کھانے کیسے کھاتے ہیں. تو نعمت نافرمانی کرنے سے چلی جاتی ہے اور نعمت شکر کرنے پر قید کر دی جاتی ہے. بہت پیارا جملہ ہے عربی کا, اگر آپ دیکھیں, قید کرو نعمتوں کو شکر کے ساتھ. تو اللہ ہماری نعمتوں کو قید کرتے ہیں ہمارے شکر کے ساتھ. اب دنیا کے سب سے بڑے ناشکر انسان کا ذکر ہے کہ جس کی قریب کی بھی نظر کمزور اور دور کی بھی کمزور, کہ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو پکارنے والے. والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون, اور جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں, مردے ہیں زندہ نہیں, انہیں تو یہ شعور تک بھی نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے. تم سب کا معبود صرف اللہ تعالیٰ اکیلا ہے, اور آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل منکر ہیں اور وہ خود تکبر سے بھرے ہوئے ہیں. تو پھر نوٹ کیجئے گا, ناشکرا پن کیا ہے؟ اللہ کی بجائے دوسروں سے مانگنا, اللہ کے در پہ جھکنے کی بجائے غیروں کے دروں پہ جانا, اللہ کے آستانے کو چھوڑ کر غیروں کے آستانے پہ جانا. تو دنیا کا سب سے بڑا ناشکرا انسان کافر, اور اس کے بعد مشرک. ایسے ناشکرے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کیا نصیحت کرتے ہیں آیت 22 میں؟ نعمتیں پا کر شکر گزار بنو, نعمتوں کو گن نہیں سکتے تو گن گن کر پھر نیکیاں بھی نہ کرو, یعنی پھر نعمتیں بھی بے حساب کرو, اور اللہ تعالیٰ کو اس کا حق دو اور شرک نہ کرو. اللہ تعالیٰ ساری انسانیت کو شرک سے پاک کر دے. بے شک و شبہ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کو جسے وہ لوگ چھپاتے ہیں اور جسے ظاہر کرتے ہیں بخوبی جانتا ہے, وہ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. ان سے جب دریافت کیا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل فرمایا ہے, تو جواب دیتے ہیں کہ اگلوں کی کہانیاں, اولڈ ایٹک تھنگس. آج بھی لوگ قرآن کے لیے یہی کہتے ہیں, 1400 سال پرانی کتاب پڑھیں گے آپ خیر سے. تو سن لیجئے پھر, ایسی بات کہنے والوں کا کل انجام کیا ہونے والا ہے؟ لیحمل اوزارہم کاملا, اس کا نتیجہ ہوگا کہ قیامت کے دن یہ لوگ اپنے پورے بوجھ کے ساتھ ہی ان کے بوجھ کے بھی حصے دار ہوں گے جنہیں بے علمی سے گمراہ کرتے رہے. دیکھو تو کیسا برا بوجھ اٹھا رہے ہیں. کلی کو ذہن میں لے آئیے, ٹرین اسٹیشنوں پہ بعض بوڑھے بوڑھے لوگ بہت سا بوجھ لے کر کھڑے ہوتے ہیں. قیامت کا دن ہوگا, کھڑے ہونے کی جگہ پوری مل جائے تو بڑی بات. نفسی نفسی گرمی اور بوجھ اپنے بھی اور دوسروں کے. یہ کن کے بوجھ ہیں؟ جن کو غلط کاموں پہ مائل کیا اور جن کو اپنے ساتھ ناشکرا بنایا. جو ماں ناشکری ہوتی ہے نا, عموماً اس کے بچے بھی ناشکری ہوتے ہیں, الا ماشاء اللہ. باپ کا اثر بھی ہوتا ہے کبھی کبھی, لیکن کم. تو ایک ماں کو ٹھیک کر لیجیے آج, ایک پوری نسل ٹھیک ہو جائے گی. ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی مکر کیا, آخر اللہ تعالیٰ نے ان کے منصوبوں کی عمارتوں کو جڑوں سے اکھیڑ دیا, اور ان کے سروں پر ان کی چھتیں اوپر سے گر پڑی, اور ان کے پاس عذاب وہاں سے آ گیا جہاں کہ انہیں وہم و گمان بھی نہ تھا. یہ بھی اللہ کی ایک سنت ہے. پھر ایسی جگہ سے چوٹ لگتی ہے, مثال کینسر کا مریض ہے, اس کی موت کے منتظر ہوتے ہیں, اور اچانک گھر میں ایک صحت مند بندے کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, وہ مر جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسی چوٹوں سے بچا کے رکھے. تو اللہ جہاں سے جدھر سے مرضی پکڑ لے. یہ آج کا لاک ڈاؤن کبھی زندگی میں آپ نے میں نے دیکھا سنا سوچا؟ کبھی کرونا سے جس طرح آج انسانیت پریشان ہے کبھی دیکھا؟ یہ ہے اصل میں شاید کی تفسیر جو آج کے حالات میں آپ اور میں سمجھ سکتے ہیں. تو اللہ کی قدرت کو پہچانے, کم از کم آج یہ تو لوگ سمجھ گئے نا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. اور ہم مسلمانوں کو تو یہ بات پہلے ہی پتا تھی, بھولے ہوئے تھے. نیت کیجیے, ارادے کیجیے کہ لاک ڈاؤن ختم ہوتے ہی مسجدیں بھریں گی, اسکولس بھریں گے. اگر میں پھر گھر بیٹھ گئی کسی مجبوری کا نام لے کر, تو اللہ نہ کرے میں اللہ کو دعوت دیتی ہوں کہ ایک اور پکڑ لا ہماری. جو استاد سبق پڑھائے اور شاگرد نہ سیکھیں, تو ان شاگردوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ان کو دوبارہ پھر ایک سال لگانا پڑتا ہے, اور جو کامیاب ہو جاتے ہیں ان کو اگلی جگہوں پہ اللہ لے جاتا ہے. تو ہم اللہ کی دیوی ان چیزوں سے سبق نہ سیکھ کر پھر شاید اللہ کو یہ نہ کہہ دیں کہ پھر ایک اور سال ہم پہ لگا ایسا. اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دے. قیامت کا منظر, ایسے مشرق جو ساری زندگی نہ شکریہ کرتے رہے, ان کے ساتھ کیا ہونے والا؟ ثم یوم القیامت یخزیہم ویقول این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہم. پھر قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ انہیں رسوا کرے گا اور فرمائے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم لڑتے جھگڑتے تھے. جنہیں علم دیا گیا تھا وہ پکار اٹھیں گے, آج تو کافروں کو رسوائی اور برائی چمٹ گئی. کون تھے کافر؟ سن لیجئے, وہ جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. فرشتے جب ان کی جان قبض کرنے لگتے ہیں, اس وقت وہ جھک جاتے ہیں, یعنی بڑی بھیگی بلیاں بن جاتے ہیں, کہ ہم برائی نہیں کرتے تھے, یعنی اپنا جرم چھپانا چاہتے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں تاکہ آج ہمیں بچا دیا جائے. क्यों नहीं, अल्लाह ताला खूब जानने वाला जो कुछ तुम करते थे, क्योंकि वलीमुम बिज़ाति सुदूर था, तो क़यामत के दिन कोई बच नहीं सकेगा, मौत के वक्त ही फैसले शुरू हो जाएंगे। बस अब तो हमेशगी के तौर पर तुम जहन्नुम के दरवाजों में दाखिल हो जाओ, बस क्या ही बुरा ठिकाना है गरूर करने वालों का। दूसरा मुकाम है इस बारे में जहां जहन्नुम के दरवाजों का जिक्र है, तो लिखिए एक जुमला, ना शुक्री जहन्नुम का एक दरवाजा। अब आप दाखिल हो जाएं या शुक्र करके तौबा कर लें। तो क्या सीख लिया हमने कि ना शुक्रे नहीं बनना। अब आगे देखिए कि आयत 30 से 64 तक में हम क्या देखेंगे। मोमिनीन और सालेहीन की रूह, फरिश्ते सलामती भेजते हुए कब्ज करते हैं, यानी बड़े प्यार से मोमिन की जान निकलती है, अभी आगे हम देखेंगे। इसी तरह अल्लाह तला की बंदगी का करना और तागूत की बंदगी से बचने का हुक्म देखेंगे। हर नेमत अल्लाह तला ही की अता करता है। मुशरिकीन ने मक्का की बेइंसाफी, अल्लाह तला की रहमत ना होती तो हम तबाह हो जाते। और कुरान की फैसला कुन वजाहत हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, यानी कुरान पाक को हदीस से काट कर पढ़ेंगे तो यह आपकी मर्जी की कोई चीज बन जाएगी, कुरान नहीं रहेगा। आइए जरा सुनते हैं इन्हीं चीजों को सामने रखते हुए। वकील लिल्लज़ीन तक़ू मा अनज़ला रब्बुकुम क़ालू खैरा। अल्लाह हमें ऐसे ही जुमले बोलने वाला बना दे। और परहेजगारों से पूछा जाता है कि तुम्हारे परवरदिगार ने क्या नासिल फरमाया, तो जवाब देते हैं अच्छे से अच्छा। यानी इस कुरान को पढ़ने के बाद जब बाहर जाते हैं तो लोग पूछते हैं आज क्या पढ़ के आए, तो आज आपने ये जुमला नोट करना है, खैरी खैर समेटी है हमने इधर से, ये है कुरान खैर। जिन लोगों ने भलाई की इनके लिए इस दुनिया में भलाई, और यकीनन आखिरत का घर तो बहुत ही बेहतर है, और क्या ही खूब परहेजगारों का घर है। हमेशगी वाले बागात जहाँ वो जाएंगे जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, जो कुछ ये तलब करेंगे। जरा अपनी लिस्ट तो बनाइए वहां जाके, जो मांगना है अपने अल्लाह की बना। और बेगमात की लिस्टें मर्द ना बेचारे पूरी कर सकें कि सिर्फ अल्लाह ही पूरी करेगा, बनाया करें, कोई बुरी बात भी नहीं है। जो चीज़ जहाँ अच्छी लगे अल्लाह के वहां लूंगी। इधर ऑर्डर कर दीजिए, डिलीवरी उधर के नाम की डाल दीजिए, एड्रेस चेंज कर लें अपनी ख्वाहिशों का, वहां इनके लिए मौजूद होगी। जाएंगे तो आपके नाम की मेल पड़ी होगी इंशाल्लाह जन्नत के घर में। परहेजगारों को अल्लाह तआला इसी तरह बदले अता फरमाता है, अल्लाह हमें परहेजगार बना दे। हम आखिरी से भी दुआ करते हैं अल्लाह ये अता कर दे, तो अल्लाह कहते पहले परहेजगार तो बनो, इस दुनिया से परहेज तो करो, फिर वहां जाकर तुम्हें मिलेगी। तुम इन्हीं में खो जाते हो इसीलिए तुम्हारे पास वक्त नहीं। तो जरा मौत का वक्त तो देखो, अच्छे और बुरे शख्स की मौत का वक्त। अल्लज़ीन ततवफ्फाहुमुल मलाइका, वो जिनकी जाने फरिश्ते इस हाल में कब्ज करते हैं कि वो पाक साफ हों, किस चीज से, शिर्क से, बिदत से, गंदगी से, फहाशी से, उरियानी से, कीने और अनाद और बुगज से पाक हों। यानी तस्किया किए हुए लोगों की मौत जब आती है, फरिश्ते क्या कहते हैं, तुम्हारे लिए सलामती ही सलामती है जो जन्नत में अपने इन अमाल के बदले जो तुम करते थे। नोट कीजिएगा, अमाल के बदले जन्नत मिल रही है, दुआओं और ख्वाहिशों से नहीं, क्योंकि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। क्या ये इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि इनके पास फरिश्ते आ जाएं या तेरे रब का हुक्म आ जाए? ऐसा ही इन लोगों ने भी किया था जो इनसे पहले थे, इन पर अल्लाह तआला ने कोई जुल्म नहीं किया, बल्कि वो खुद अपनी जानों पे जुल्म करते रहे। कैसे? नाशुक्री करके, शिर्क करके, कुफर करके। बस इनके बुरे अमाल के नतीजे इन्हें मिल गए, और जिसकी हंसी उड़ाते थे इसने इनको घेर लिया। मुशरिक लोगों ने कहा अगर अल्लाह चाहता तो हम और हमारे बाप दादा इसके सिवा किसी और की इबादत ही ना करते, ना इसके फरमान के बगैर किसी चीज को हराम करते, यही फेल इनसे पहले लोगों का रहा। तो रसूलों पर सिर्फ खुल्लम खुल्ला पैगाम पहुंचा देना है। देखिए ये है सबसे बड़ी नाशुक्री, कि अपने शिर्क जैसे कभी फेल को भी अल्लाह के जिम्मे लगाते हैं। आज भी लोग यही कहते हैं, अच्छा अल्लाह चाहे तो हमें रोक ले। भाई आप खड़े हैं तो अल्लाह आपको क्यों रोके? याद रखिए जब तक आप नहीं चाहेंगे अल्लाह नहीं चाहेगा। और हमें ऐसे लोगों तक पैगाम पहुंचाना है, खुल्लम खुल्ला पैगाम है ये, इसको पहुंचा दीजिए, क्योंकि फहल अल रसूल बलागुल मुबीन, तो आपके मेरे जिम्मे पहुंचाना फर्ज है, पहुंचाइए, फिर वो माने ना माने ये उनका नसीब। हमने हर उम्मत में रसूल भेजा के लोगों सिर्फ अल्लाह की इबादत करो और इसके सिवा तमाम माबूदों से बचो, फिर बास लोगों को तो अल्लाह ने हिदायत दी और बास पर गुमराही साबित हो गई। यानी पैगाम पहुंचने के बाद भी ना माने तो फिर इनको इनके हाल पे छोड़ दो। बस तुम खुद जमीन में चल फिर कर देख लो झुटलाने वालों का अंजाम क्या हुआ। जरा जाकर बड़ी बड़ी तहजीबों को देखो, मोहनजोदड़ो को देखो, हड़प्पा को देखो, इंटीरियर सिंध की खुदाइयों को करके देखो, बुतों से भरी हुई चीजें। जितनी खुदाई होती है आप देखें अंदर से बुत निकलते हैं। तो अल्लाह ने उस दौर में न जाने कैसी आफत तोड़ी, लोग तो उस वक्त भी कुछ और ही कहते होंगे कि ये तो मदर नेचर है, लेकिन असल में वो अल्लाह की पकड़ थी। गो आप इनकी हिदायत के ख्वाहिशमंद रहे हैं, लेकिन अल्लाह तरह से हिदायत नहीं देता जिसे गुमराह कर दे, और ना इनका कोई मददगार होता है। अल्लाह हमारे लिए हिदायत का फैसला कर दे। वक्समु बिल्लाहि जहदा ईमानिहिम, वो लोग बड़ी सख्त कस्में खाकर कहते हैं मुर्दों को अल्लाह जिंदा नहीं करेगा। देखे गलत बिलीफ पे भी कितने स्टबन है, क्यों नहीं जरूर जिंदा करेगा, ये इसका बरहक लाजमी वादा है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। अकीदा या आखरत या मरने के बाद जीने का अकीदा बिल्कुल उस कौम से खत्म हो चुका था। सवाल पैदा होता है, वो तो जुबान से ये कहते थे, क्या आज मुसलमानों का ये गुमान है? अपने अमल को देख लीजिए, अगर मरने के बाद की ज्यादा फिक्र है, यानी इल्मे आखरत फिक्रे आखरत में ढल चुका है, तो इंशाल्लाह फिर हम इस कैटेगरी में नहीं आते। और जो दुनिया के लिए जिए और आखरत को सिर्फ एक रिस्क पे और चांस के टिकट पे रख दें, फिर उनके लिए कोई गारंटी नहीं कि उनको जन्नत की फ्लाइट मिलेगी कि नहीं। इसलिए फरमाया, क्यों नहीं जरूर जिंदा करेगा, ये इसका बरहक लाजमी वादा है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। और यहाँ नोट कीजिए, अक्सरियत ठीक सोच नहीं रखती, इसलिए भी कि ये लोग जिस चीज में इख्तलाफ करते थे इसे अल्लाह ताला साफ बयान कर दे, और इसलिए भी कि खुद काफिर अपना झूठा होना जान ले। हम जब किसी चीज का इरादा करते हैं तो सिर्फ हमारा ये कह देना होता है कि हो जा, बस वो हो जाती है। इन्नमा कौलुना लिशय्यिन इज़ा अरदनाहु अन नक़ूला लहू कुन फ़यकून, तो अल्लाह सब सुनने वालों की दुआओं पे कुन कहते कबूलियत का, बीमारों की बीमारी पे सेहत का कुन कह दे, और अल्लाह हमारे अपने माँ बाप वालदैन भाई बहनों को सेहत और आफियत अता फरमा। जिन लोगों ने जुल्म बर्दाश्त करने के बाद अल्लाह की राह में तर के वतन किया है, हम इन्हें बेहतर से बेहतर ठिकाना दुनिया में अता फरमाएंगे, और आखरत का सवाब तो बहुत ही बड़ा है। काश के लोग इससे वाकफियत रखते। कितना अल्लाह ताला का देखिए इरादा है कि लोग इस दुनिया में रहते हुए आखरत को देखने लग जाएं, लेकिन नजर कमजोर हो तो दूर दिखता भी नहीं है। वो जिन्होंने दामने सबर ना छोड़ा और अपने पालने वाले पर भरोसा करते रहे, आपसे पहले भी हम मर्दों को ही भेजते रहे जिनकी जानी वही उतारा करते थे, बस अगर तुम नहीं जानते तो अहले इल्म से दरियाफ्त कर लो। अब यहाँ देखिए कि ये जो चीजें आप और मैं पढ़ रहे हैं ना, ये है असल में हमारे शौर को खोलने वाली। अगली आयत में हिजरत का जिक्र आने लगा है, तो जरा सा पहले देखिए फिर उस नजर से पढ़िएगा। दो तरह की हिजरतें होती हैं, एक है जहनी हिजरत और एक है जमीनी हिजरत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जमीनी हिजरतें हुई, हबशा में गए लोग, मक्का से मदीना में आए, और फतेह मक्का के बाद ऐसी हिजरत फिर पूरी भी हो गई। आज के दौर में अगर आप और मैं सोचते हैं, लोग तो छोटी छोटी बात पे हिजरत का लफ्ज बोल देते हैं, ऐसा नहीं है। दीनी और दुनियावी मकासद के लिए वाकई अगर आप कोई ऐसी जगह छोड़े जहां के फवायद भी हों, बेनिफिट्स भी हों, रिलैक्सेशन भी हो, लग्जरियस लाइफ भी हो, लेकिन दीन कमजोर है, बिगड़ रहा है, आपको खुद अपने और अपने बच्चों के बिगाड़ का खतरा है, तो इंशाल्लाह आपको अजर तो जरूर देगा अल्लाह। लेकिन जो सबसे पहली हिजरत, जो जमीनी हिजरत के रास्ते आसान करती है ना, वो जहनी हिजरत है, और वो है गुनाहों और नापसंदीदा आदात से हिजरत करना। तो हिजरत करने वाले दो चीजों के लिए तैयार हैं, मुश्किलात आएंगी, और मुश्किलात में से सब्र और तवक्कुल का दामन पकड़ें, और दूसरी बात ये याद रखें कि बाद में हालात बेहतर हो जाएंगे। जिसको ये असूल और कुलिया पता है, वो इस रास्ते में जितना आगे जाएगा अल्लाह ताला उसको उतने ही मराग़मन कसीरन देंगे। फिर फरमाया, बिल बय्यिनाति वज़्ज़ुबुर, दलीलों और किताबों के साथ ये जिक्र यानी किताब हमने आपकी तरफ उतारा है। आप नोट कीजिए, इस सूरत में और बल्कि इस पारे में ही कुरान पाक के लिए लफ्ज़ जिक्र आता है, और जिक्र का लफ्ज़ ना रिमाइंडर, हमारी बैक ऑफ दी माइंड यानी हमारी मेमोरी में अल्लाह की तौहीद का जो वादा अलस्त था ना, वो मौजूद था। अंबिया कराम और ये किताबें उस भूली हुई बात और उस वादे को याद दिलाने के लिए आते हैं, इसलिए इसको जिक्र कहा जाता है। तो फरमाया, ये जिक्र हमने आपकी तरफ उतारा है कि लोगों की जानिब जो नाजिल फरमाया गया है, इसे आप खोल खोल कर बयान कर दें, शायद कि वो गौर व फिक्र करें। बदतरीन दाव पेच करने वाले क्या इस बात से बेखौफ है? ये आयतें हथौड़े हैं दिमाग के, आज के हालात में मुस्तकिल सुनेंगे तो फिर आप इसको महसूस करें, बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि आसमान से एक आवाज आती है और कहा जा रहा है, बदतरीन दाव पेच करने वाले क्या इस बात से बेखौफ हो गए हैं कि अल्लाह ताला इन्हें जमीन में धंसा दे, या इनके पास ऐसी जगह से अजाब आ जाए जहां का इन्हें वहमो गुमान भी ना हो। सच बात है ना, वहमो गुमान भी ना था। या इन्हें चलते फिरते पकड़ ले, यानी स्टॉप हेयर, रुक जाओ, स्टे होम, बी सेफ। ये किसी सूरत में अल्लाह को आजिज नहीं कर सकते, यानी इनकी पावर इसी हद तक थी बस, इससे ज्यादा ये सुपर नहीं हो सकते। इनके ऊपर एक सुप्रीम पावर है जो सारी तरक्की करती हुई दुनिया को एक हाथ दे के रोक ले। जैसे ट्रैफिक कांस्टेबल एक हाथ देता है ना तो गाड़ियां रुकने लगती हैं, अल्लाह के लिए तो कोई मिसाल भी नहीं है। या इन्हें डरा धमका कर पकड़ ले, फियर, खौफ, कितना खौफ है लोगों को आज मरने का। बस यकीनन तुम्हारा परवरदिगार आला शफकत और इंतहाई रहम वाला है, क्या उन्होंने अल्लाह की मखलूक में से किसी को भी नहीं देखा? किसके साए दाएं बाएं झुक झुक कर अल्लाह ताला के सामने सर बसजूद होते हैं और आजजी करते हैं? यानी मखलूक से ही सीख लो झुकना, अभी भी सजदों की तौफीक नहीं मिली तो फिर कब करोगे? और आजजी का इजहार करते हैं, अगर अभी भी आजजी नहीं करनी तो कब करेंगे? यकीनन आसमानों जमीन के कुल जानदार और तमाम फरिश्ते अल्लाह ताला के सामने सजदे करते हैं और जरा भी तकब्बुर नहीं करते। तो ना शुक्र इंसान, तू भी तकब्बुर छोड़ के रब के आगे सर लगा दे। माथा टेकना है तो सिर्फ एक हस्ती के सामने, और वो मालिकल मुल्क है। और अपने रब से जो इनके ऊपर है कप कपाते रहते हैं, और जो हुक्म मिल जाए इसकी तामील करते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमा चुका कि दो माबूद ना बनाओ, माबूद तो सिर्फ वही अकेला है, बस तुम सब मेरा ही डर खौफ रखो। देखिए मिसाल अच्छी नहीं है लेकिन फायदे की खातिर दूंगी। बस लोग कहते हैं कि ये बुजुर्ग अल्लाह के बड़े पहुंचे हुए थे, अल्लाह के प्यारे थे। यही अकीदा बुत को पूजने वाले का भी होता है कि देखो ना ये अल्लाह के प्यारे हैं, तो अगर हम इनको सजदा कर लेते हैं तो फिर क्या फर्क पड़ता है। तो माजरत के साथ शौहर इजाजत देता है बीवी को कि मेरे प्यारों के साथ तुम भी थोड़ा वक्त गुजार लो। कोई बात नहीं, मेरा भाई है ना, मेरे दोस्त ही है ना, तो वहां तो गैरत उठ जाए। तो अल्लाह के साथ गैरत क्यों नहीं आती हमें, जब हम अल्लाह के सामने ना शुक्रे बनकर दूसरों के ही नियाजमंद रहते हैं। आसमान और जमीन में जो कुछ है सब इसी का है और इसी की इबादत लाजिम है, क्या फिर तुम इसके सिवा औरों से डरते हो? ये क्वेश्चन मार्क्स हैं अब आपके सामने, इसको लिखिए सोल सर्चिंग क्वेश्चन। सवालिया अंदाज है आयतों में, तुम्हारे पास जितनी भी नेमतें हैं सब उसी की दी हुई हैं। कोई झुटला सकता है इस बात को? अब भी जब तुम्हें कोई मुसीबत आ जाए तो इसी की तरफ नालो फरियाद करते हो? अब क्यों नहीं दूसरों के पास जाते? किधर गए वो सारे तुम्हारे करनी कराने वाले? तजरून का लफ्ज है, जानवर जब डकारता है ना उसके लिए ये लफ्ज आता है डिक्शनरी में। अब तो चीखते हो पुकारते हो, जब बीमारियां आती हैं, जब मौत दरवाजे पे खड़ी है, अपने प्यारे दुनिया से जा रहे होते हैं तो डकारते हो ना, तो फिर आम हालात में उसको क्यों भूल जाते हो? इसलिए कि तुम ना शुक्री के रवैये इख्तियार करते हो। सुम्मा इज़ा कशफ़त दुर्रानकुम, और जहां इसने वो मुसीबत तुमसे दूर कर दी, कुछ लोग अपने रब के साथ शिर्क करने लग जाते हैं। कौन से शिर्क? या तो दूसरों के नाम पे मंसूब कर देंगे, या हाँ डॉक्टर ने दवा दी सेहत हो गई, कोई नहीं कहता कि शिफा अल्लाह ने दी। मुसीबत टली ऐसे लगते हैं दूसरों को, और कुछ नहीं तो जाकर बुजुर्गों को ही उसका क्रेडिट देने लगते हो। अल्लाह तला के तली यकफुरु बीमा आते ही ना हो। तुम ऐसा इसलिए कर रहे हो कि अल्लाह के साथ शिर करने लग जाओ? यानी देखिए डांट का अंदाज है बिल्कुल, इसलिए कि हमारी दी हुई नेमतों की ना शुक्री करें। अच्छा कुछ फायदा उठा लो, आखिरकार तुम्हें मालूम हो ही जाएगा। और जिसे जानते बूझते भी नहीं इसका हिस्सा हमारी दी हुई रोजी में मुकर्रर करते हैं, यानी जो बुजुर्गों और बुतों के नाम पर चीजें लगाते हो तुम्हें तो पता भी नहीं उनकी असल क्या है, वो तो हो सकता है सिर्फ मिथ हो, और हमारी दी हुई चीजें दूसरे के नाम पे लगाते हैं। देखिए आज अखलाकन, तहजीबन और इवन बास बाहर के मुल्कों में कानूनन किसी की चीज के ऊपर आप अपना नाम लिख दें कैसा लगता है? किसी के घर पे जाकर आप नेम प्लेट अपनी लगाएं और कब्जा कर ले जेल, तो अल्लाह के साथ क्या हम यही नहीं करते? ना शुक्री क्या है? अल्लाह की दी हुई चीजों पे दूसरों के नाम की मोहर लगा देना। अच्छा कुछ फायदा उठा लो, आखिरकार तुम्हें मालूम हो ही जाएगा। और जिसे जानते बूझते भी नहीं इसका हिस्सा हमारी दीवी रोजी में से मुकर्रर करते हैं, वल्लाह ही तुम्हारे इस बख्तान का सवाल तुमसे जरूर किया जाएगा। और वल्लाह सुबहानहू व तआला के लिए लड़कियां मुकर्रर करते हैं, और अपने लिए वो जो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक हो, यानी बेटा। इनमें से जब किसी को लड़की होने की खबर दी जाए तो इसका चेहरा स्याह हो जाता है और दिल ही दिल में घटने लगता है। इस बुरी खबर की वजह से लोगों से छुपता छुपाता फिरता है, सोचता है क्या इसको जिल्लत के साथ लिए हुए ही रहे या इसे मिट्टी में दबा दे। आह क्या ही बुरे फैसले करते हैं। आखरत पर ईमान न रखने वालों के लिए एक बुरी मिसाल है, अल्लाह के लिए तो बहुत ही बुलंद सिफत है, वो बड़ा गालिब और बा हिकमत है। अरब लोगों में से कुछ कबीले बेटियों को पैदा होते ही जिंदा दरगोर कर देते, और कुछ ऐसे गिरोह थे जो अल्लाह की बेटियां करार देते। फरिश्तों को दोनों को यहां जमा कर दिया गया कि अल्लाह की बेटियां करार देते और अपना हाल यह कि बेटी पैदा हो तो तुम परेशान होते हो, और जब खास तौर पे फिर कह लीजिए कि अल्ट्रासाउंड इजाद हो गया तो तुमने तो पहली बेटियों को अबॉर्ट कराना शुरू कर दिया। एक ऐसा भी दौर गुजरा कि अल्ट्रासाउंड बैन कर दिया गया दुनिया के एक मुल्क में, सिर्फ इस वजह से कि प्रेग्नेंट औरतें जब पता चल जाता कि बेटी है तो अबॉर्ट करवाती। आज कितनी डॉक्टर बहनें हैं जो इस जुर्म का शिकार हो जाती हैं, कितनी मिडवाइफ्स हैं, कितनी ऐसी नर्सेज हैं। आप जाके खबरें तो पढ़िए ऐसे मुल्कों की कि जहां बेटी को एक बोझ समझा जाता है। याद रखिए कि मुशरिक मुआशरा दुख्तर कुश मुआशरा होता है। आज की औरत कहती है इस्लाम ने मुझे क्या दिया, अल्लाह के नबी ने मुझे क्या दिया, सिर्फ पाबंदियां चादर और चार दीवारी कैद कर दिया। तो एक जुमला लिख लीजिए, आज से शायद 10-15 साल पहले एक दर्स दिया था खवातीन के हकूक, इस्लाम की नजर में पहला जुमला ही शायद उसका यह था कि इस्लाम ने पहला हक जो खवातीन को दिया वो जीने का दिया। आप तो पैदा ही ना हो चुके होते, मैं तो होती ना अगर इस्लाम ना आता। पैदा होती बेटियों को आजाद कराना, ये तो एक बड़ा ही सेंसिटिव टॉपिक है। इन आयतों की डिटेल जाके सुन लीजिए, आपको बहुत कुछ मिलेगा, रोएंगे। एक साहबी थे, वो अल्लाह के नबी की महफिल में जब बैठे होते बैठे बैठे बेहोश हो जाते। पूछा क्या हुआ, कहा वो बेटियां याद आ जाती हैं जिनको अपने हाथ से जिंदा दरगोर किया। इसी तरह खुद भी मारते थे, कई दफा दूसरों से हेल्प लेते। एक साहबी गालिबन 70 से 80 बेटियों के कत्ल करने के गवाह थे कि मैंने अपनी और दूसरों की इतनी बेटियों को घड़ों में डाला। और एक साहबी तो रोते कहते मुझे अपनी वो बच्ची याद आ जाती है कि मेरे साथ जब चलने की उम्र की हुई तो मैंने सोचा कि अब इसका काम खत्म कर दूं, और वो मेरे पीछे पीछे, मैंने कुदाल लिया जंगल की तरफ गया, वो बच्ची मेरे पीछे, अब्बा किधर जाना है, अब्बा अब्बा करती आई। मैं मिट्टी खोदने लग गया और वो भी अपने छोटे छोटे हाथों से मिट्टी खोदने लगी, और जब वो एक घड़ा बना तो मैंने उसको उसमें धक्का दिया और ऊपर मिट्टी डाल दी। आखिरी लफ्ज जो उसके मेरे कानों में थे वो था अब्बा अब्बा मुझे क्यों भार रहे हो, यानी जो भी वो कह रही होगी। उसके बाद अल्लाह के नबी भी रो रहे थे और वो साहबी भी रो रहे थे। आज की औरत को इतनी नाशुक्री नहीं बनना। आप देखिए इस्लाम माँ बनकर भी इज्जत देता है, बेटी बनाकर, बहन, हर रिश्ते में तो इस्लाम ने औरत को इज्जत दी। कानूनी लिहाज से बाप का हक ज्यादा है लेकिन अखलाकी लिहाज से माँ का है। और आज ये जो जहेज है असल में यही अकीदा है कि बेटी चूंकि हकीर थी तो चलो इसको कुछ पैसे दे दिला कर साथ जहेज दे दें। ये बारात आती क्यों है जाती क्यों नहीं, इस्लाम में तो ऐसी कोई बातें नहीं। यानी हर रस्म के पीछे याद रखिए ये मिथ है कि लड़की और लड़की वाले हकीर। ये लड़के की माँ और लड़के की माँ का फर्क क्या है, ये लड़के की बाप की पगड़ी या पग जो किसी के पाँव में क्यों पड़ी रहती है, ये सब इसी आयत के ऊपर अमल ना करने की दलीलें हैं। तो याद रखिएगा कि चेंज लानी पड़ेगी। आज इसी ने तो हमारी कुरान क्लासेस को तबाह कर दिया, या अपनी शादियां या बच्चों की। आप मेरी एक शादी के लिए आप अमेरिका से पाकिस्तान आते हैं माजरत के साथ, कभी आपने दीन के इल्म के लिए भी इतना सफर करना चाहा, और एक शादी की तैयारी पे 6 महीने लग जाएं और शायद 10-15-20 लाख के तो सिर्फ कपड़े बनने लगें। तो याद रखिए ये मजाक कब तक चलेगा। अल्लाह ताला आपको मुझे अपनी और अपने माशरों की इसलाह का गम लगा दे, ये गम नहीं है ना तो हम नहीं बचेंगे। इसीलिए अल्लाह ताला इतने गुनाहों को देखने के बावजूद सब्र करते हैं, क्यों करते हैं उसका जवाब 61 में, वलो युआखिज़ुल्लाहुन्नासा बिज़ुल्मिहिम मा तरक अलैहा मिन दाब्बा। अगर लोगों के गुनाह पर अल्लाह ताला इनकी गिरफ्त करता तो रूए जमीन पर एक भी जानदार बाकी ना रहता। यानी तुम्हें जीने का हक नहीं है, तुम सिर्फ मेरे तहम्मुल की वजह से जी रहे हो, ऐ ना शुक्रे इंसानों। लेकिन वो तो इन्हें एक वक्त मुकर्रर तक ढील देता है, जब इनका वो वक्त आ जाता है तो वो एक साथ न पीछे रह सकते हैं और ना आगे बढ़ सकते हैं, और वो अपने लिए जो ना पसंद रखते हैं अल्लाह के लिए साबित करते हैं। आज ऐसे ही नहीं, जो चीज़ अच्छी नहीं अल्लाह वास्ते दे दो, जो खाना खराब है ये अल्लाह वास्ते दे दो, अपनी दावतों में क्या पकाते हैं और अल्लाह के नाम पे क्या देते हैं। और इनकी जुबानें झूठी बात बयान करती हैं कि इनके लिए खूबी है, नहीं नहीं दरअसल इनके लिए आग है, और ये दोस्तियों के पेश रहे। यानी सब गलत काम करके भी कहते हैं देखना आखिरत में हमारा बड़ा प्यारा अंजाम होगा, अल्लाह रिजेक्ट करते हैं उनके इस क्लेम को कि तुम्हारा ये क्लेम रिजेक्टेड। वल्लाही हमने तुझसे पहले की उम्मतों की तरफ भी अपने रसूल भेजे लेकिन शैतान ने इनके आमाले बद इनकी नजरों में या इनकी निगाहों में आरास्ता कर दिए। आज क्या हमारे साथ ये नहीं है, सच बताइए। हाँ बात पीछे शादी की बच्चियों की हुई सच बताइए कि कौन शादी की रस्मों को बुरा कहता है, कौन मेहंदी टप्पे और ऐसी फहाशी के लड़के लड़कियों के हाथों में हाथ दिए नाचते देखे, कहते हैं क्या फर्क पड़ता है, खुशी का मौका है, भाई बहन ही तो हैं, और वहीं से सारे अगले रोमांस शुरू हो जाते हैं। एक शादी में अगली कितनी शादियां जो है वो प्लान होनी शुरू होती हैं। अमाले बद नजरों में खूबसूरत लड़के भी वही कपड़े पहनते, लड़कियां भी वही पहनती। क्या हमारी एक शादी न शुक्री का टाइटल नहीं बन चुकी आज के दौर में? वो शैतान आज भी इनका रफीक बना हुआ है और इनके लिए दर्दनाक अजाब है। इस किताब को हमने आप पर इसलिए उतारा है। अब आप जरा फिर उसी जुमले को ले जाएं ताकि बेटी की शादी पे सर पे रखो, कसम खा लो, फाल निकालो। नहीं, हमने तो यही किया, अल्लाह हमें माफ कर दे। क्यों उतारा? क्या आप इनके लिए हर उस चीज को वाज़ेह कर दें जिसमें वो इख्तलाफ कर रहे हैं, और ईमानदारों के लिए रहनुमाई और रहमत है? और फिर मुझसे कोई पूछे तो ये कुरान इसलिए नहीं उतरा कि शादी से एक हफ्ता पहले कुरान खानी रखवा ले और उसमें लंबी सी दुआ करा ले, छोटा सा दर्स लंबी सी दुआ करा ले, ताकि खैर से अब शादी की रस्में शुरू होने वाली हैं तो बरकत हो। और ये इसलिए नहीं उतरा कि सुबह में आप कुरान खानियां करें और रात को उसी पार्टी को आप मेहंदी और नाच गाने की पार्टी में बदल दें। और इससे ये भी पता चलता है कि कुरान पढ़ाने वालों को अगर उनको किसी जगह पता है कोई ऐसा प्रोग्राम हो रहा है दोस्तों में साथियों में, कम से कम 6 महीने पहले जाकर ये साफ साफ पैगाम बता दें ताकि वो बेचारे तैयारियां शुरू ना करें। वरना इन पे कहते हैं हाँ क्या करें, बस मजबूर है, अब हो गया ना, असल में डिपॉजिट दे दिया है, बच्चे की खुशी, बेटी को फोटो सेशन चाहिए और बेटे को ये करना और ये वो, बस चुप कर जाए, अब ना करें कुछ। तो अल्लाह क्या करें, आप इनको वाजे पहले से बता दें जिसमें वो इख्तलाफ कर रहे। इख्तलाफ तो लोग करेंगे, कहेंगे आप खुशी नहीं होता देख सकते हमें, और ये ईमानदारों के लिए रहनुमाई और रहमत है। ये जुमला कहाँ जाएगा कुरान का, आज के मुसलमानों को देखकर उनके हालात पे नजर डालते हुए? तो फिर बात क्या है, हम समझ गए हैं कि नशुक्री जिंदगी जहन्नुम की राह है। अब आगे देखिए आयत 65 से 78 में क्या कुछ आने वाला। अल्लाह की नेमत चार मशरूबात की सूरत में भी सामने आएगी मेरे आपके। आप कहेंगे हम तो रोजे से हैं, कोई बात नहीं रख लीजिए बाद में पी लीजिएगा। जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, यानी कोरोना वायरस के खौफ का शिकार इंसान ये जान ले कि बीमारियों से मौत नहीं आती, अल्लाह के हुक्म से आती है। इसलिए ऐसे सारे फिगर सुनना सुनाना छोड़ दीजिए कि कहाँ कितने मर गए। अल्लाह के एहसानात और बंदों की नाशुक्री की बातें हैं और अल्लाह की मिसाल कदरें और नेमतें और ईमान लाने वालों के लिए अल्लाह तआला की बहुत सी निशानियों का जिक्र है। हमारे लिए एक खूबसूरत चीज कुरान है। नेमते कुरान पर ईमान लाना और इसके मुताबिक अमल करना ही असल शुक्रगुजारी है। तो क्या कहेंगे आप नज़ूले कुरान का मकसद? नंबर एक, हिदायत पाना, गाइडेंस, नेविगेटर है ये आपका मेरा, रोड मैप है ये। फिर इख्तलाफात दूर करना, बिखरी हुई उम्मत जो इस वक्त इख्तलाफात का शिकार है इसको किसी की फिक्र नहीं चेंज कर सकती, सिर्फ ये कुरान है जो वहदत उम्मत की दलील है हदीस की रोशनी में। और इसी तरह ये कुरान रहमत बनकर दुनिया में आता है, वो रहमत आप अपनी जिंदगियों में देख ही रहे हैं इससे ताल्लुक जोड़ने के बाद। फिर अब सुनिएगा जरा आगे जो मिसालें आने लगी हैं। वल्लाहु अनज़ला मिनस समाई ईमान, और अल्लाह ताला आसमान से पानी बरसाकर इससे जमीन को इसकी मौत के बाद जिंदा कर देता है, यकीनन इसमें इन लोगों के लिए निशानी है जो सुने। आपकी तरह प्यारे लोग जो सुन रहे हैं और जो सुन सुन के सुन हो जाए, सिर्फ बैकग्राउंड में आवाज चले। किसी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि उन्होंने शुरू के 2-3 दौरे कुरान चलते फिरते सुने, ये सोच करके घर में खामोशी और बस मैं चला लूंगी और साथ किचन में काम करूं, लेकिन दिल नहीं खुबरा। जाहिर है कहीं तड़का लगा होगा, कहीं कोई शोर होगा, कहीं प्रेशर कुकर चला होगा। फिर एक दिन सोच में पड़ गई कि मुझे इस साल दौरे कुरान में मजा क्यों नहीं आ रहा। उससे अगले दिन उन्होंने बैठ के सुनना शुरू किया और अब रो रो के सुनती हैं। तो ये काम बाद में हो जाएंगे, करवा देगा कोई आपका मददगार। इस वक्त बैठ कर सुनिए, लिखिए। अगर आप लिख नहीं रहे तो आप अमानत पूरी नहीं कर रहे, इस किताब की कदरदानी नहीं कर रहे। मैं भी इस वक्त पढ़ाने के दौरान प्याज ना छील लूं, आपको कौन सी स्मेल आएगी? लहसुन छील लूं, आवाज भी नहीं आएगी आपको। लेकिन मैं आपको पता नहीं क्या से क्या बता जाऊंगी। अल्लाह ताला मुझे कभी इस तरह की डिस्ट्रेक्शन के साथ इस किताब को सुनने और सुनाने वाला ना बना दे। और अल्लाह ताला आसमान से पानी बरसाकर इससे जमीन को इसकी मौत के बाद जिंदा कर देता है, यकीनन इसमें इन लोगों के लिए निशानी है जो सुने। तुम्हारे लिए तो चुपायों में भी बड़ी इबरत है, हम तुम्हें इसके पेट में से जो कुछ है इसी में से गोबर और लहू के दरमियान से खालिस दूध पिलाते हैं जो पीने वालों के लिए सहता पचता है, यानी डाइजेस्टेबल, हजम हो जाता है। कोई कहता है मुझे तो कोई उस्ताद ही नहीं मिला, किससे सीखता? तो कहा जा सकता है क्यामत के दिन कि तेरे लिए तो उस्ताद दूध का एक गिलास भी था। काली भैंस में से जिसके पेट में खून की भी नालियां और पेशाब की भी, सफेद निखरा हुआ साफ सुथरा दूध कौन पिलाता था? ना खून का रंग आया ना पेशाब की बू आई, बस वो था तेरा रब। तो तुझे तो उस्ताद घर में मिल गया, लेकिन असल बात है कितनी दफा दूध पीते पिलाते बनाते खिलाते पिलाते इससे बनी हुई चीजें ये बात सोचते हैं। और खजूर और अंगूर के दरख्तों के फलों से तुम शराब बना लेते हो, यानी कितनी ना कदरी कितनी बड़ी ना शुक्री। देखिए शराब बनाने वाले से बड़ा दुनिया में कोई ना कदरा और ना शुक्रा नहीं होगा। साफ सुथरे ग्रेप्स को गंदा करके खाते हो। और उम्दा रोजी भी, ये शराब की हुरमत की पहली आयत थी जिससे जहन साजी की गई, फिर वो सारी मदनी दौर की जो पीछे हम पढ़ चुके। मक्की दौर में इशारे मिलने शुरू हो गए थे कि शराब नजस है, क्योंकि उम्दा रोजी का जिक्र अलग से कर दिया गया, गोया के शराब पाक चीज नहीं नापाक चीज है। तत्तखिज़ूना मिन्हु सकरन व रिज़्क़न हसना, जो लोग अकल रखते हैं इनके लिए तो इसमें बड़ी निशानी है। और अब है शहद की मक्खी बाजी बेबी है, जिसके नाम पे सूरत नहल है। कुरान में दो मक्खियों का जिक्र है, एक यहाँ आ रहा है एक सूरत हज में आएगा। आइए दोनों की जिंदगी का फर्क देखें। यहाँ समझ लीजिए कि शहद की मक्खी शुक्र गुजार मक्खी है, जो अल्लाह की दी हुई जिंदगी और उसकी नेमतों और उसकी स्किल्स का सही इस्तेमाल करके शहद जैसी खूबसूरत चीज दुनिया को दे के जाती है जिसमें शिफा भी है। आए सुनते हैं। वह रब्बुका इलन नहली, आपके रब ने शहद की मक्खी के दिल में ये बात डाल दी। अब उसका दिल कितना को होगा जरा सोचिए। प्रोग्रामिंग कर दी वो मालिक, उसको पता है कैसे किसी मखलूक से काम लेना है। लोगों से काम लेना भी बड़ी बात है, और इसमें आपको टीम वर्क के इशारे मिलेंगे। अभी मुझे ज्यादा अरसा नहीं हुआ इस पे, हमने एक पूरा सेशन किया, मुझे अब याद नहीं है कि शहद की मक्खी पे एक सेशन हुआ था जो मेरा ख्याल है कि ज़ादुल खैर में हुआ था। उससे फायदा उठा लीजिए। टीम वर्क इज ड्रीम वर्क, बड़े काम बड़े बड़े लोगों के साथ होते हैं। मुझसे किसी ने कहा कि ये स्लाइड कौन बनाता है, तो मैं हंसती। मैंने कहा आपको उनकी गिनती गिना सकती हूँ कितने लोग हैं? ये शहद की मक्खियों वाला काम है, एक बंदा ऐसा काम कर नहीं सकता, और किसी एक का हक ना देना जुल्म होगा। अगर मैं इस वक्त कह दूं ये मेरी चीजें हैं, याद रखिएगा, बड़े काम करने हैं तो आपको किसी टीम का हिस्सा बनना पड़ेगा, और फिर सर डाल के इताअत करनी पड़ेगी, तो आपका एक नुक्ता एक क्लिक भी सारे लोगों में चला जाएगा। बात लंबी हो जाती है, लेकिन एक दफा कहते हैं कि हारून रशीद थे तो उन्होंने नियत की कि मैंने एक मस्जिद खुद बनानी है। मस्जिद बनवाई, ख्वाब में अल्लाह ताला ने एक महल दिखाया जन्नत का, और उसके साथ पहलू में एक और घर था। समझ गए कि जो हदीस है कि मन बना लिल्लाहि बैतन, जो अल्लाह के लिए दुनिया में मस्जिद या घर बनाएगा अल्लाह उसको जन्नत में घर देगा। लेकिन दिल में खटक लग गई कि मेरे जैसा एक घर और साथ किसका है। मजदूरों को मिस्त्रियों को बुलाया, कहने लगे मैंने तुम्हें कहा था कि इस मस्जिद को बनाते हुए किसी और से मदद नहीं लेनी, वन मैन शो। खैर तुमने कुछ गड़बड़ की है, क्योंकि अल्लाह ने मुझे दो घर दिखाए हैं। अब वो कस्में खाने लगे, रोने धोने लगे, क्या करें कैसे, हमने वाकई किसी से पैसा नहीं लिया कुछ नहीं खाया। कहने लगे नहीं सोचो सोचो। कहा हाँ याद आ गया, वो जिस दिन इस मस्जिद का लेंटर डाल रहे थे ना, छतें डल रही थी तो आसमान पे बादलों का एक साया हुआ, तो हमें खतरा ये था कि आज रात बारिश ना हो, और हम उसके लिए तैयार नहीं थे, क्या करें। एक मजदूर तो उसने कहा ठहरो मैं आता हूँ। वो घर गया, उसने एक लोहे का पीपा सा लिया, उसको मोड़ा, हमने उसको एक परनाला सा बना के छत पे फिक्स कर दिया कि बिलफर्ज अगर रात को बारिश हुई तो पानी छत पे ठहरे ना गिर जाए। कहने लगे बस फिर अल्लाह ने उसे पीपे को देने वाले को भी उतना ही बड़ा घर दे दिया जितना मुझे दिया। वो बहुत बड़ी हस्ती है, वो आपको इतना दे सकता है कि आप ले नहीं सकते उतना। तो लिहाजा टीम वर्क का हिस्सा बन जाइए, आपकी नेकियां मल्टीप्लाई नहीं मल्टीपल मल्टीप्लाई होंगी। अल्लाह ताला हमें अपने साथियों की कदर की तौफीक अता फरमाए। नून में नुकता अच्छा नहीं लगता। आपके रब ने शहद की मक्खी के दिल में ये बात डाल दी कि पहाड़ों में दरख्तों में और लोगों की बनाई हुई ऊंची ऊंची छतों में अपने घर छत्ते बना दो, और हर तरह के मेवे खा और अपने रब की आसान राहों में चलती फिरती रह। इनके पेट से रंग बिरंग का मशरूब निकलता है जिसके रंग मुख्तलिफ हैं, और जिसमें लोगों के लिए शिफा है, गौर व फिक्र करने वालों के लिए इसमें बहुत बड़ी निशानी है। तो जरा तकाबुल कीजिए शहद की मक्खी का शुक्र गुजार बंदा मोमिन से। शहद की मक्खी शहद बनाने के लिए मेहनत करती है, शुक्र गुजार बंदा मोमिन दीन सीखने और फैलाने के लिए मेहनत करता है। मलका मक्खी के अहकामात की पैरवी करते हैं, यानी एक क्वीन होती है बाकी सब वर्कर्स होती हैं। एक मक्खी के ऑर्डर यानी एक ही हुक्म को लेकर चलने वाले ही काम सही होते हैं, और मोमिन अल्लाह के अहकामात और शरीयत की पैरवी करता है, उसका भी एक ही कमांडर है ला इलाहा इल्लल्लाह और अतीउल्लाह और अतीउर रसूल। پھر اسی طرح دیکھیں شہد کی مکھی پھولوں سے رس چوستی ہے، اور شکر گزار مومن علماء اور کائنات سے علم حاصل کرتا ہے، یعنی ایک طرف علم والوں سے علم لیتا ہے اور دوسری طرف کائنات سے غور و فکر کر کے معرفت کی غذا لیتا ہے. پھر اسی طرح دیکھیں شہد کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے کوششیں کرتی ہیں مکھیاں، اور شکر گزار مومن بندہ قرآن میں بدعت اور ملاوٹ نہ ہو اس کے لیے کھپ جاتا ہے، کوششیں کرتا ہے اور اللہ میں اس میں کھپا دے. ہم نے اس قرآن میں کچھ بھی ایڈ ہونے نہیں دینا انشاءاللہ، اور اس کے لیے علم کو عام کرنا ہے. پھر اسی طرح شہد کی مکھی اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پر چلتی ہے، 50,000 میل کا سفر ایک مکھی اپنی زندگی میں طے کرتی ہے، اور شکر گزار بندہ مومن قرآن اور شریعت کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے. شہد کی مکھی شہد کے لیے سفر کرتی ہے، شکر گزار بندہ مومن علم کے لیے سفر کرتا ہے. دونوں کی خوبیاں ہیں انتھک محنت، عاجزی، دوسروں کو نفع دینا، اجتماعیت، آپس میں محبت اور پیار، اور دشمن سے سخت مقابلہ. سورت فتح میں آپ دیکھیں گے یہ آخری خوبیاں کا ذکر کس رنگ میں آیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین کے کام کرنے والا بنا دے. آج ہم دین کا کام بھی ایسے طریقے سے کرتے ہیں کہ جس سے نیکی برباد، گناہ لازم. اللہ خلقکم ثم یتوفاکم، اللہ ہی نے تم سب کو پیدا کیا پھر وہی تم کو فوت کرے گا. تم میں سے ایسے بھی ہیں جو بدترین عمر کی طرف لوٹائے جاتے ہیں کہ سب کچھ جانتے بوجھنے کے بعد بھی نہ جانے. بے شک اللہ تعالیٰ دانا اور توانا ہے. اگر گھر میں کوئی بوڑھا ہے نا تو اس کو دیکھیے گا، کوئی 70s اور 80s سے اوپر شخص ہے نا تو دیکھیے گا کیسے بچے بن جاتے ہیں. ایک سسٹر نے شیئر کیا کہ میرے گھر میں سسر بھی ہیں اور میرا بچہ بھی ہے، تو میرے سسر چپکے سے جب ہم سب سو جائیں تو اکیلے میں میرے بچے کے کھلونوں سے کھیلتے ہیں. یہ ہے اس آیت میں، بچہ اور بوڑھا ایک برابر. وہ بھی بات بات پہ روتے ہیں، یہ بھی روتے ہیں، وہ بھی ضد کرتے ہیں، یہ بھی روتے ہیں. بعض دفعہ ان کی بھی گندگی کپڑوں میں نکل جاتی ہے، ان کی بھی. یہ ہے آپ کا میرا اینڈ. اگر ہم نے اپنی عقل کو صحیح نہ استعمال کیا تو آخری عمر بڑی بری ہوگی. اللہ معاف کر دے. اللہ تعالیٰ ہی نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر اسی میں زیادتی دے رکھی ہے. یعنی کیوں حسد کرتے ہو دوسروں کی نعمتوں پہ؟ دعا دیا کرو کسی کی نیکی کو دیکھ کے خوش ہوں. بعض لوگ یہ نہیں کہتے اس کی نیکی اچھی ہے چلو ہم دوسروں سے شیئر کریں، کہتے ہم بھی اسی کو کر لیتے ہیں. کوئی بات نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے مومن کا دل بڑا صاف اور خوبصورت ہوتا ہے. کسی کی بڑی گاڑی دیکھی، الحمدللہ اللہ میرے بھائی کو نصیب کرے. کسی کی بڑی کوٹھی دیکھی، اللہ اس بہن کو نصیب کرے. دیٹس اٹ، یہ مراد ہے ادھر. بس جنہیں زیادتی دی گئی ہو وہ اپنی روزی اپنے ماتحت غلاموں کو تو نہیں دیتے کہ وہ اور یہ اس میں برابر ہو جائیں. تو کیا یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کے منکر ہو رہے ہیں؟ یعنی آپ اپنے بینک اکاؤنٹ میں اپنے ملازم کا نام ڈالتے کہ چلو کبھی کبھی یہ بھی چیک سائن کر دے، تو اللہ کے بارے میں یہ کہتے ہو کہ اللہ نے فلان ایک بندے کو اپنے حقوق دے دیے، نعوذ باللہ، کہ شاید میں تو مصروف ہوں اور تم ان کو بیٹے اور بیٹیاں دیتے رہو. شرک کا مٹھ مارا جا رہا ہے نا تمہیں. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تم ہی سے تمہاری بیویاں پیدا کی اور تمہاری بیویوں سے تمہارے بیٹے اور پوتے پیدا کیے. جو پوتوں پوتیوں کو دیکھ کے لوگوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں وہ شاید کبھی بچوں کو دیکھ کے بھی نہیں ہوتے. تو نہ شکری نہ کیجیے ان رشتوں کی. اور تمہیں اچھی اچھی چیزیں کھانے کو دیں، کیا پھر بھی لوگ باطل پر ایمان لائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی نہ شکری کریں گے؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ صحیح ٹاپک چوز ہوا ہے اس بارے کا؟ جی، نہ شکری. بغیر غور کیے جاتے تو شاید 20 منٹ میں پارا پورا ہو چکا ہوتا. اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو آسمان اور زمین سے انہیں کچھ بھی روزی نہیں دے سکتے اور نہ قدرت رکھتے ہیں. پس اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں مت بیان کرو. اللہ تعالیٰ خوب جانتا اور تم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کرتا ہے. اب سنیے، یہ بھی شرک اور توحید کا فرق بتانے کے لیے بہت ہی خوبصورت مثال ہے. ایک غلام ہے دوسرے کی ملکیت کا، جو کسی بات کا اختیار نہیں رکھتا، اور ایک وہ شخص ہے جسے ہم نے اپنے پاس سے معقول روزی دے رکھی ہے. یعنی ایک جاب کرتا ہے، ملازم ہے، سروس کرتا ہے، اور دوسرا اپنا بزنس کرتا ہے. یہ فرق لے لیجئے، جس میں سے وہ کھلے چھپے خرچ کرتا ہے. کیا یہ سب برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سب تعریف ہے، بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے. تو جاب جاب ہے، بزنس بزنس ہے. اللہ کے نبیوں نے کبھی جابس نہیں کی تھی، بزنس کیے تھے. اور تجارت کرنا نبیوں کی سنت ہے. اگر وہ جاب جو آپ کو نماز روزے سے روکتی اور آپ کو کمپرومائزنگ کرتی ہے اس کو چھوڑ دیجئے. اور مسلمان بچوں کو کبھی جاب پہ نہیں لگانا چاہیے، ان کو ہمیشہ اپنے کام کرنے کی رغبت دیجئے، کیونکہ اس سے آزادی کا احساس ہوتا ہے. لیکن وہی بات ہے کہ اکثر نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ ایک اور مثال بیان کرتا ہے، اس کو تمثیلی انداز کہتے ہیں، اور قرآن پاک میں ایسی آیتیں بہت سی ہیں. دو شخصوں کی جن میں ایک تو گونگا ہے اور کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا، بلکہ وہ اپنے مالک پر بوجھ ہے، کہیں بھی اسے بھیج دو کوئی بھلائی نہیں لاتا. یعنی بدو قسم کا کوئی ملازم. کیا یہ اور وہ جو عدل کا حکم دیتا ہے اور ہے بھی سیدھی راہ پر برابر ہو سکتے ہیں؟ مراد ہے کہ مشرک اور مومن کبھی برابر نہیں ہو سکتے، شکر گزار اور ناشکر انسان کبھی برابر نہیں ہو سکتے. آسمان اور زمین کا غیب صرف اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، اور قیامت کا امر تو ایسا ہی ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا، قلم ہل بسر، بلنک آف آئی. اتنی قریب ہے قیامت، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تو کیا سیکھا آپ نے؟ میں نے شکر کرنا ہے. اور اب آگے کیا سیکھیں گے دیکھیے گا. 79 سے 91 میں گھر کو جنت بنانے والی ماں کی ناقدری. انسان اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلائے گا؟ معاشرتی زندگی کے 3 احکام، عدل، احسان اور صلہ رحمی، اور برائیوں سے روکنے کا حکم، فحشا، منکر اور بغی. اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری چیزوں پہ منوان عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ذرا ماؤں کا حق تو ادا کرنا دیکھیں، کیا انہوں نے آپ کے میرے لیے کیا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا ہے، کس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. یاد ہے آپ کو اپنا وہ وقت؟ اتنے انٹلیکچوئل تھے آپ، اتنی دلیلیں دیتے تھے، آگے سے باتیں کرتے تھے، کچھ بھی نہیں، رو رو کے بتاتے تھے کہ پیٹ میں درد ہے یا بھوک لگی ہے. اسی نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم شکر گزاری کرو، لعلکم تشکرون. آج تو شکر گزاری انشاءاللہ بننا ہی ہے. کیا ان لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا جو تابع فرما ہو کر فضا میں ہیں، جنہیں سوائے اللہ کے کوئی اور نہیں تھامے ہوئے؟ بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. تو شکر کیسے ادا کریں؟ دو طرح سے، ایک اللہ کا شکر ادا کرنا اور ایک مخلوق کا. اللہ کا شکر کیسے ادا ہوگا؟ اللہ کی اطاعت کریں، اس کی نافرمانی سے گریز کریں، یعنی اوائڈ دا ڈس اوبیڈینس آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اس کے برعکس آپ دیکھیے گا کہ مخلوق کا شکر کیسے ادا کرنا. اپنے سے برابر والے کا شکر، اپنے سے کم اہم شخص کا شکر، اور اسی طرح سے احسان کا بدلہ دینا. جزا اور بدلہ دیجئے لوگوں کو ان کے اچھے کاموں کا، اور احسان کا معاملہ کریں گے تو انشاءاللہ شکر گزار ہوں گے. اب نعمتوں میں سے ایک نعمت گھر، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے گھروں میں سکونت کی جگہ بنا دی ہے. سوچیے اگر ہوم لیس ہوتے تو کیا ہوتا. اور اسی نے تمہارے لیے چوپایوں کی کھالوں کے گھر بنا دیے ہیں جنہیں تم ہلکا پھلکا پاتے ہو. ٹینٹس، اپنے گھروں کو ذرا اس سے مثال سے دیکھیے، ہمارے گھر ہلکے پھلکے ہیں. ہلکا کر دیجئے اس کو، تبھی بھاگیں گے انشاءاللہ اللہ کے رستوں میں. اپنے کوچ کے دن اور اپنے ٹھہرنے کے دن بھی، اور ان کی اون اور روحوں اور بالوں سے بھی، اس نے بہت سے سامان اور ایک وقت مقررہ تک کے لیے فائدے کی چیزیں بنائی. یعنی چند دن کی بات ہے، اب لاک ڈاؤن میں چونکہ کہیں جاتے ہی نہیں، تو کیا آپ کو وہ کپڑے چبھتے نہیں ہیں جو پارٹی ویئرس تھے شادیوں والے؟ اور اگر لاک ڈاؤن ہی زندگی کا حصہ بن گیا تو اتنا بوجھ اور اتنا مال جو لگا دیا اور اتنی سوچ لگ گئی، وہ نکل جائے گی نا. اللہ ہی نے تمہارے لیے اپنی پیدا کردہ چیزوں میں سے سائے بنائے ہیں. ایسے لگتا ہے اللہ تعالیٰ ہر نعمت پہ پوائنٹر رکھ کے دکھا رہے ہیں اس صورت میں. اور اسی نے تمہارے لیے پہاڑوں میں غار بنائے ہیں، اور اسی نے تمہارے لیے کرتے بنائے ہیں جو تمہیں گرمی سے بچائیں، اور ایسے کرتے بھی جو تمہیں لڑائی کے وقت کام آئے، شیلڈز، زرہ. اور وہ اسی طرح اپنی پوری پوری نعمتیں دے رہا ہے کہ تم حکم بردار بن جاؤ، یعنی اتنے پتلے کرتے نہ پہنو کہ نہ شکرے بن جاؤ. اللہ کی دیوی خوبصورتی کو ان کرتوں سے چھپائیے، اتنے تنگ چھوٹے پتلے کرتے نہ ہوں کہ آپ کا جسم بھی جھلکنے لگے. نہ شکرا پن ہے یہ بھی. صحیح بخاری کی روایت ہے 1130، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر تک کھڑے ہو کر نماز پڑھتے رہے کہ آپ کے قدم یا پھر آپ کی پنڈلیوں پہ ورم آ جاتا. جب آپ سے اس کے بارے میں کہا جاتا کہ آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں، تو فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنا لے. پھر بھی اگر یہ منہ موڑے رہیں تو آپ پر صرف کھول کر تبلیغ کر دینا ہے. یہ اللہ کی نعمتیں جانتے بوجھتے بھی اس کے منکر ہو رہے ہیں، یعنی نہ شکرے ہو رہے ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر ہیں ہی نہ شکرے. پتہ نہیں کن کی باتیں ہو رہی ہیں، اللہ نہ کرے کہ یہ ہماری باتیں ہوں. نعمتوں میں سر سے پاؤں تک ڈوبے ہوتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس. تو یاد رکھیے گا، عام لوگوں کا شکر کھانے پینے، لباس اور جسموں کی قوت پر ہوتا ہے. خاص لوگوں کا شکر توحید کی دولت، ہدایت کی دولت، ایمان کی دولت اور نعمت دین اور دلوں کی قوتوں پر ہوتا ہے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کن لوگوں میں خاص ہیں کہ عام ہیں. درست رویہ کیا کہ نعمتیں پا کر شکر گزاری اور فرما برداری کیجئے، اور غلط رویہ کیا ہے کہ نعمتیں پا کر نہ شکری اور کفر کرنا سیکھ لیں. اللہ تعالیٰ آپ کی میری بہترین تربیت کر رہے ان آیتوں میں. پھر اسی طرح دیکھیے کہ بار بار لفظ کافر آ رہا ہے ان صورتوں میں، تو کافر اصل میں کون ہے؟ ایک ہوتا ہے جو اللہ کا انکار کرے، اس کو ایتھیسٹ کہتے ہیں، منکر، دہریہ. پھر اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنے والا، یہ اگنوسٹک ہے، کہتا ہے کچھ نہیں اللہ نے دیا اور دنیا ایسے ہی ہے، بس سیریز آف چانسز. اسی طرح اللہ کی نعمتوں میں دوسروں کو شریک بنانے والے اس کو مشرک کہتے ہیں، اور نعمتوں کا اقرار کر کے بھی اطاعت نہ کرنے والے کو آج کا مسلمان کہتے ہیں، اور وہ بھی ناشکرہ. اللہ ہمیں ان لوگوں میں نہ شامل کرے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ ناشکری کا فتنہ کیوں آتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ نمبر ایک، نعمتوں کے بارے میں جہالت ہے اور لا علمی ہے، کسی نے سوچنا ہی نہیں سکھایا، صرف فاتحہ پڑھ لی لیکن نعمتوں پہ غور کرنا نہیں سیکھا، قرآن سنت سے دوری ہے، تقدیر پہ راضی نہیں رہتے، قناعت اور تقویٰ کی کمی ہے، اور دنیا کی رغبت بہت ہے، نفسانی خواہشات بہت سی ہیں، تدبر اور غور و فکر کی عادت نہیں ہے، اور اہل غفلت کی صحبت ہے. تو اپنی دوستیوں کا معیار بدلنا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کے احسان جب ہم پہ آتے ہیں تو پھر اس کو ہم پیچھے نہ ڈالیں. اور اب قیامت کا ایک منظر دیکھیے گا، آیت 84، اور جس دن ہم ہر امت میں سے گواہ کھڑا کریں گے، پھر کافروں کو نہ اجازت دی جائے گی اور نہ ان سے توبہ کرنے کو کہا جائے گا، کیونکہ وقت ختم، مہلت مدت ختم ہو چکی. اور جب یہ ظالم عذاب دیکھ لیں گے، پھر نہ تو ان سے ہلکا کیا جائے گا اور نہ وہ ڈھیل دیے جائیں گے. اور جب مشرکین اپنے شریکوں کو دیکھ لیں گے تو کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، یہی ہیں وہ ہمارے شریک جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے. بس وہ انہیں جواب دیں گے، تم بالکل جھوٹے ہو. ذرا سا اس کو غور سے سنیے گا، کیا لڑائیاں ہو رہی ہیں قیامت کے دن. اللہ کو چھوڑ کر نہ شکری کر کے دوسروں کو پکارنے والوں کا یہی انجام ہے. اس دن وہ سب عاجز ہو کر اللہ کے سامنے اطاعت کا اقرار پیش کریں گے، اور جو بختان بازی کیا کرتے تھے وہ سب ان سے گم جائے گی. جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، ہم انہیں عذاب پر عذاب بڑھاتے جائیں گے. یہ بدلہ ہوگا ان کی فتنہ بردازیوں کا. اور جس دن ہم ہر امت میں انہی میں سے ان کے مقابل گواہ کھڑا کریں گے، اور تجھے ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے. یہ ہے جواب دہی کا احساس دلانے والی آیتیں. اور ہم نے تجھ پر یہ کتاب نازل فرمائی جس میں سے ہر چیز کا شافی بیان ہے، اور ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ عدل کا اور بھلائی اور قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی کے کاموں، ناشائستہ حرکتوں اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے. وہ خود تمہیں نصیحتیں کر رہا ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو. جوامع نصیحت ہے اس میں، تین چیزوں کا کرنا، تین کا روکنا. اور اس کو جمعے کے خطبے میں پڑھا جاتا ہے، لیکن امت کا حال کیا ہے اس آیت سے شاید بہت مختلف. اور اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم آپس میں قول و اقرار کرو، اور قسموں کو ان کی پختگی کے بعد مت توڑو، حالانکہ تم اللہ تعالیٰ کو اپنا ضامن ٹھہرا چکے ہو. تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو بخوبی جان رہا ہے. تو کیا ہے آیت 92 سے 106 میں؟ قسمیں دھوکا کھانے کا ذریعہ نہیں بنانی. چند روزہ زندگی کے لیے اللہ سے عہد بندگی توڑ کر دنیاوی آقاؤں کی فرما برداری نہیں کرنی. قرآن پاک پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنی ہے. اور قرآن پاک کی طرف آنے والوں پر شیطان کے مختلف وار کیسے ہوتے ہیں؟ قرآن مجید پر اعتراضات کا جواب کیا ہے؟ اور قیامت کے دن کا عذاب. ایک عورت کو سمبل بنایا جا رہا ہے کہ کی کرائی پہ پانی نہ ڈالو، کیونکہ ایسا حال ہونا جائے کہیں. ولا تکون کلتی، اور اس عورت کی مانت مت ہو جاؤ جس نے اپنا سوت مضبوط کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ ڈالا، کہ تم اپنی قسموں کا آپس کے مکر کا باعث ٹھہرو. مراد یہ ہے کہ اپنی محنتوں پہ خود ہی پانی نہ ڈالو، کی کرائی کو ضائع نہ کرو نہ شکریہ کر کے، اس لیے کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے بڑا چڑا ہو جائے. بات صرف یہی ہے کہ صحت سے اللہ تعالیٰ تمہیں آزما رہا ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے لیے قیامت کے دن ہر اس چیز کو کھول کر بیان کر دے گا جس میں تم اختلاف کر رہے تھے. ساری زندگی فرکشن میں گزر جاتی ہے نہ شکرے بندے کی. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی گروہ بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے ہدایت دیتا ہے. یقیناً تم جو کچھ کر رہے ہو اس کے بارے میں باز پرس کی جانے والی ہے. اور تم اپنی قسموں کا آپس کی دغا بازی کا بہانہ نہ بناؤ، پھر تو تمہارے قدم اپنی مضبوطی کے بعد ڈگمگا جائیں گے، اور تمہیں سخت سزا برداشت کرنا پڑے گی، کیونکہ تم نے اللہ کی راہ سے روک دیا اور تمہیں بڑا سخت عذاب ہوگا. تم اللہ کے عہد کو تھوڑے مول کے بدلے نہ بیچ دو، یعنی کلمے کے تقاضے پورے کرو. یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کے پاس کی چیز ہی تمہارے لیے بہتر ہے، بشرطے کہ تم میں علم ہو، یعنی جنت اور اس کی رضا. تمہارے پاس جو کچھ ہے سب فانی ہے، اور اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ باقی ہے. تو باقی رہنے والے کے ہاتھ میں ان فانی چیزوں کو دے دو، یہ مراد ہے، یہ ہے شکر گزاری. اور صبر کرنے والے کو ہم بھلے اعمال کا بہترین بدلہ ضرور عطا فرمائیں گے. وہ کون ہے؟ جو شخص نیک عمل کرے، اور مرد ہو یا عورت، لیکن با ایمان ہو، تو ہم اسے یقینا نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے، اور ان کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور ضرور دیں گے. यह है शुक्र गुजार की जिंदगी, पुरसकून जिंदगी। फलनु ही यन्नहु हयातन तैयबा। कुरान पढ़ने के वक्त रांधे हुए शैतान से अल्लाह की पनाह तलब करो। इसीलिए हम कुरान पाक की तिलावत के शुरू में आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़ते हैं। ईमान वालों और अपने परवरदिगार पर भरोसा रखने वालों पर इसका जोर मुतलकन नहीं चलता, बिल्कुल नहीं चलता। हाँ, इसका गलबा तो इन पर यकीनन है जो इसी से दोस्ती करें और इसे अल्लाह का शरीक ठहराएं। और जब हम एक आयत की जगह दूसरी आयत को बदल देते हैं और जो कुछ अल्लाह ताला नाजिल फरमाता है इसे वो खूब जानता है, तो ये कहते हैं कि तू तो बड़ा बोहतानबाज है, यानी कुरान में नासिख और मनसूख पे एतराज करते थे। बच्चे इनमें से अक्सर जानते ही नहीं, यानी बेइल्म है। कह दीजिए कि इसे आपके रब की तरफ से जिब्राइल हक के साथ लेकर आए हैं। ये कुरान जहाँ पर मैं पढ़ रहे इसकी बात है। एक वक्त तक ये जिब्राइल के थ्रू अल्लाह के नबी के पास आ रहा था, आज आपके मेरे पास आ गया, ताकि ईमान वालों को अल्लाह ताला इस्तकामत अता फरमाए और मुसलमानों की रहनुमाई और बशारत हो। इस्तकामत की जरूरत है। आप देखिए, कभी आपने तार पे फैले हुए कपड़ों को चुटकियां लगी हुई देखा? हवाएं चले, आंधियां चले, कपड़े इधर से उधर उड़ते हैं लेकिन गिरते नहीं। ये है इस्तकामत। चिपक जाइए इस किताब के साथ इस तरह जैसे चुटकी बन जाते हैं, ताकि आप मुश्किलों की आंधियों में और खुशियों में कभी भी अल्लाह के दीन से ना हटें। हमें बखूबी इल्म है कि ये काफिर कहते हैं इसे तो एक आदमी सिखाता है। इसकी जुबान जिसकी तरफ ये निस्बत कर रहे हैं आजमी है, और ये कुरान तो साफ अरबी जुबान में। कैसे उन्होंने अल्लाह के नबी पर इतराजात की और इल्जाम लगाए? जो लोग अल्लाह तला की आयतों पर ईमान नहीं रखते, इन्हें अल्लाह की तरफ से भी रहनुमाई नहीं होती और इनके लिए अलमनाक अजाब है। झूठ इफ्तरा तो वही बांधते हैं जिन्हें अल्लाह की आयतों पर ईमान नहीं होता, यही लोग झूठे हैं। और जो शख्स अपने ईमान के बाद अल्लाह से कुफर करे बजुज इसके जिस पे जबर किया जाए और उसका दिल ईमान पर बरकरार हो, मगर जो लोग खुले दिल से कुफर करें तो इन पर अल्लाह ताला का गजब है और इन्हीं के लिए बहुत बड़ा अजाब है। अम्मार बिन यासिर की मिसाल है इसमें, और अल्लाह ताला की नाशुक्री की बात है कि लोग अल्लाह ताला की नाकदरी करते हैं। आगे देखिएगा 107 से 128 में क्या कुछ आने वाला है। क्यामत के दिन की नफसा नफसी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मुती और फरमाबरदार बंदा होना, शुक्रगुजार बंदों को अल्लाह चुन लेता है, दाई दीन के लिए हिदायत और सबर और तकवा की अहमियत और कसमें धोखा देने का जरिया न बनाओ। अब बिल्कुल कह लीजिए कि आखिरी बातें हैं जो पारे कैंट तक आपको मुझे शुक्रगुजार बनना सिखाएंगी, कि कैसे अल्लाह के शुक्रगुजार बनते हैं। इसके लिए कुछ चीज़ों से मुंह मोड़ना पड़ता है लेकिन लोग मोड़ नहीं पाते। कैसे? ज़ालिका बिअन्नहु मुस्तहब्बुल हयात अद्दुनिया लिल आखिरा। ये इसलिए कि इन्होंने दुनिया की जिंदगी को आखिरत से ज्यादा महबूब रखा। यकीनन अल्लाह ताला काफिर लोगों को राह रास्त नहीं दिखाता। ये वो लोग हैं जिनके दिलों पर और जिनके कानों पर और जिनकी आंखों पर अल्लाह ने मोहर लगा दी, और यही लोग गाफिल हैं। कुछ शक नहीं कि यही लोग आखिरत में सख्त नुकसान उठाने वाले हैं। अल्लाह दिलों के कुफल तोड़ दे, हमें खैर की चाबियां और शर के ताले बना दे। जिन लोगों में फितनों में डाले जाने के बाद हिजरत की, फिर जिहाद की और सब्र का सबूत दिया, तेरा परवरदिगार इन बातों के बाद इन्हें बख्शने वाला और मेहरबानियां करने वाला है। जिस दिन हर शख्स अपनी जात के लिए लड़ता झगड़ता आएगा, नोट कीजिएगा इसको, नफसी नफसी यौम यफिर्रुल मरु मिन अखीहि व उम्मीहि व अबीहि। कौन किसके मुकदमे उस दिन जोगे? वो तो अपनी फिक्रों में पड़े हुए। अल्लाह हमें उस दिन के लिए आज फिक्र लगा दे। हर शख्स को इसके अपने किए हुए अमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और लोगों पर बिल्कुल जुल्म न किया जाएगा। अल्लाह ताला इस बस्ती की मिसाल बयान फरमाता है जो पूरे अमन और इत्मीनान से थी। इसकी रोजी इसके पास बाफरागत हर जगह से चली आ रही थी। फिर इसने अल्लाह ताला की नेमतों का कुफर किया तो अल्लाह ताला ने इसे भूख और डर का मजा चखाया, जो बदला था इनके करतूतों का। थीम आयत में हम बात कर चुके। तो क्या पता चलता है? इंसान जब आजमाइशों में आ जाता है, परेशानियों में, तो क्या होता है उसकी वजह? नंबर एक, ईमान की कमी होती है। फिर नेमतें एक एक करके उठने लगती है, यानी नाशुक्री के ये समरात है। बेचैनी और इस्तराब पैदा होता है, आजमाइश और फितने आते हैं, और अजाब का नजूल होता है। अमन की जगह खौफ और अय्याशी, खुशहाली की जगह भूख और अफलास आती है। आज हमारे अपने मुसलमान मुल्क कई जगह इसकी मिसाल बने बैठे हैं। अल्लाह ताला हमें शुक्रगुजार बंदों में शामिल कर दे। इनके पास इन्हीं में से रसूल पहुंचे। कौन? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो सबसे बड़ी नेमत थी। फिर भी इन्होंने इसे जुटलाया, आपस इन्हें अजाब ने आदबोचा और वो थे ही जालिम। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाकदरी के अंदर इसको लिख लीजिएगा। आयतों को सॉर्ट आउट करें तो पूरे पारे में आपके पास वो पूरे मैप में जो शुरू में दिए चीजें फिट हो जाएंगी। जो कुछ हलाल और पाकीज़ा रोज़ी हमने आपको दे रखी है इसे खाइए और अल्लाह की नेमत का शुक्र कीजिए अगर तुम इसकी इबादत करते हो। अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे। और दीन में क्या हराम है, क्यों शोर मचाते हो कि इस्लाम में बहुत पाबंदियां, हालांकि तुम पर सिर्फ मुर्दार और खून और सुअर का गोश्त और जिस चीज़ पर अल्लाह के सिवा दूसरे का नाम पुकारा जाए हराम है। फिर अगर कोई बेबस कर दिया जाए, ना वो ख्वाहिशमंद हो ना हद से गुजर जाने वाला हो, तो यकीनन अल्लाह ताला बख्शने वाला और रहम करने वाला। यानी फिर इतनी थोड़ी हराम चीजों में फिर अगर तुम टेस्ट की खातिर गलत चीजें खा लो तो ये ना शुक्रिया। किसी चीज को अपनी जुबान से झूठ मूठ ना कह दिया करो कि ये हलाल है और ये हराम है, कि अल्लाह ताला पर झूठ बोहतान बांध लो। यानी हलाल हराम अपने हाथ में ना रखो, समझ लो कि अल्लाह ताला पर बोहतानबाजी करने वाले कामयाबी से महरूम ही रहते हैं, इन्हें बहुत मामूली फायदा मिलता है और इनके लिए वही दर्दनाक अजाब है। पिछली कौमों ने भी ऐसी ही ना शुक्रिया की। और यहूद पर जो कुछ हमने हराम किया था इसे हम पहले ही आपको सुना चुके हैं, कहाँ सूरत अलनाम में आप पढ़ चुके हैं। हमने इन पर जुल्म नहीं किया बल्कि वो खुद अपनी जानों पर जुल्म करते रहे। जो कोई जहालत से बुरे अमल करे फिर तौबा कर ले और इस्लाह भी कर ले तो फिर आपका रब बिला शक को शुबा बड़ी बख्शिश करने वाला और नहायत ही मेहरबान है हर उस साथी के लिए जो पहली दफा कुरान में सुन रहा है कि गैर जबीहा हलाल नहीं होता, रेगुलर स्टोर्स का चिकन हलाल नहीं और फुलां हलाल नहीं। कोई बात नहीं, आज तौबा कीजिए, अल्लाह पिछला मुआफ करेगा। और अगर मुश्किल लगता है मुशरिक माहौल में खुद को अल्लाह का बनाना, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को याद कीजिए जिनको अल्लाह ताला ने ऐसे माहौल में खड़ा किया कि इर्द गिर्द का माहौल बिल्कुल नाशुक्रियों का था। तो इन्ना इब्राहिम काना उम्मतन कानिता लिल्लाहि हनीफा, बेशक इब्राहिम अलैहिस्सलाम पेशवा यानी लीडर और अल्लाह ताला के फरमाबरदार और यक तरफा मुखलिस थे, वो मुशरिकों में से न थे। कैसे? शाकिर लियानुमिही, अपने लिए रोल मॉडल बनाइएगा पारे के थीम के साथ, अल्लाह की नेमतों के शुक्र गुजार थे। हम होते तो रोते ही रहते, अल्लाह मुशरिक घर में पैदा क्यों किया तूने, अब मैं क्या करूं। नहीं, अल्लाह ने इन्हें अपना बरगजीदा कर लिया यानी चुन लिया। अल्लाह हमें भी चुन ले और इन्हें राह रास सुझा दी। हमने इसे दुनिया में भी बेहतरी दी थी और बेशक वो आखरत में भी नेकोकारों में से हैं। फिर हमने आपकी जाने वही भेजी कि आप मिल्लत इब्राहिम हनीफ की पैरवी करें जो मुशरिकों में से न थे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खूबियां देखिएगा ताकि हम अपने अंदर लाने की कोशिश करें और अपने बच्चों में ये खूबियां कूट कूट के भर दीजिए। पहली बात है नेमतों के शुक्र गुजार थे। शुक्र गुजारी का फायदा क्या हुआ? अल्लाह के फरमाबरदार बन गए, हनीफ हो गए, चुने हुए बंदे बने और सीधे रास्ते पे रहे, तो शुक्र बंदे को सीधा कर देता है। हफ्ते के दिन की अजमत तो सिर्फ इन लोगों के जिम्मे ही जरूरी थी जिन्होंने इसमें इख्तलाफ किया था। बात यह कि आपका परवरदिगार खुद ही इनमें इनके इख्तलाफ का फैसला क्यामत के दिन करेगा। अपने रब की राह की तरफ लोगों को हिकमत और बेहतरीन नसीहत के साथ बुलाइए और इनसे बेहतरीन गुफ्तगू कीजिए। यकीनन आपका रब अपनी राह से बहकने वालों को भी बखूबी जानता है और वो राह याफ्ता लोगों से पूरा वाकिफ है। तबलीग के खूबसूरत नुक्ते हैं। इसमें हमने पूरा 10 दिन का कोर्स किया था लंदन में स्टूडेंट्स के साथ, कि दाई लल्लाह के औसाफ। अल्लाह ताला में फायदे उठाने वाला बना दे। और अगर बदला लो तो भी बिल्कुल इतना ही ना सदमा तुम्हें पहुंचाया गया हो, और अगर सब्र कर लो तो बेशक साबिरों के लिए यही बेहतर है। आप सब्र कीजिए, बगैर तौफीक इलाही के आप सब्र कर ही नहीं सकते। और इनके हाल पर रंजीदा न हो जो मकरो फरेब ये करते हैं, इनसे दिल तंग न हो। यकीन मानिए कि अल्लाह ताला परहेजकारों और नेक लोगों के साथ है। कितना रिएक्शन सहा हमारे नबी ने इस दीन को पहुंचाने में, लेकिन शुक्र के साथ चलते गए। तो क्या सूरत के आखिर में सीखा? दावत और तबलीग के 3 असूल। नंबर 1, बिल हिक्मा। कुरान और हदीस की बात से ज्यादा कोई बात पर हिकमत नहीं, तो इसका दामन ना छोड़िए दावत के दौरान। फिर मौइज़तिल हसना, वाज दिल में उतरने वाली बात को कहते हैं। तहदीद व वईद जो कुरान करीम में अल्लाह के नाफरमानों के लिए बयान की गई, यानी दिल पजीरी का अंदाज हो। और फिर कभी नौबत आ जाए तो जिदाल बिल अहसन, बहस और मुनाजरे की सूरत में नरमी और मोहब्बत से काम लिया जाए, तानो तशनी से बचा जाए। लोगों को दीनी अहकाम की तालीम देना और इनमें दीन की बसीरत पैदा करना ताकि लोग अपने रब की इबादत करें। और यही असूल बच्चों को दीन सिखाने के और बीवी और शोहर से और फैमिली से मामला करने के हैं। अल्लाह ताला हमें इस पे अमल की तौफीक दे। कुछ जेम्स गोल्डन वर्ड्स जो इस बारे में से हम लेते हैं नेमतों की शुक्रगुजारी के नाते से। पहली बात है कि मुशरिक और काफिर ना शुक्र इंसान का फर्क हम देखते हैं शुक्रगुजार से। नेमतों के बारे में गौर व तदब्बुर की दावत मिली हमें इस बारे में। तकवा नेमतों का एहसास का दूसरा नाम है। कुरान और सबुल मसानी दो नेमते हैं, यानी सूरत फातह और कुरान आ गया तब दूसरी चीजों पे नजरें लंबी ना करो اور نعمت دین اور ہدایت کا بہترین شکر دعویٰ کرو. تبلیغ اور ناشکری کے نقصانات دیکھے اور پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. حل لے لیجئے سلیوشن, ناشکری کے فتنے کو پہچاننا اور اپنا محاسبہ کرنا, رب العالمین اور قرآن سے تعلق مضبوط کرنا, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف, اللہ تعالیٰ کی حمد اور دل اور زبان اور اعضاء سے شکر ادا کرنا, ہر قسم کے حالات میں شکوے شکایتیں نہیں کرنے اور تقدیر پر راضی رہنا ہے. بہترین شکر گزار بندہ بنتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے اور عمل صالح کرنے. شیطان کا ہدف ہمیں ناشکرا بنانا ہے, یہ سوچتے ہوئے شیطان کی پیروی نہیں کرنی. اہل غفلت سے میل ملاپ شکر کو بھلا دیتا ہے اور نعمتوں پر غور و فکر کرنے سے روک دیتا ہے. یہ سوچتے ہوئے ان کی صحبت سے دور رہنا ہے, پچھلی غلطیوں پہ توبہ اور آئندہ زندگی میں شکر گزاری کے لیے مسنون دعائیں پڑھنی ہیں. ناشکری کے نقصانات کا علم حاصل کرتے ہوئے فتنے سے خود کو بچانا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے قبول کرے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہ تعالیٰ ہم سے قبول کرے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک وتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.